आपका शुक्रिया भाई नेवल। आए आप थोड़ी देर के लिए अपने कदमों पर खड़े होते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं। अगर आपकी कोई दरख्वास्त है जो आप खुदा के सामने रखना चाहते हैं तो बस हाथ उठाएं और कहें, मैं, आप जो कुछ भी आप उससे मांगना चाहते हैं अपने जेन में रख लें और अपने पूरे दिल से उस पर ईमान रखें जबकि मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। ऐ आसमानी बाप, हमारे लिए इस उदासी भरे दिन में खुदावंद के घर में आना शर्फ की बात है और खुदा के बेटे की रोशनी हासिल कर रहे हैं और रूल कुछ लोगों में से होकर गा रहा है और वो लोगों से बात कर रहा है। एक छोटा सा झुंड है ये जिसमें नूर समाया हुआ है। हमारे दिलों में ये जो आसमानी रोशनी चमक रही है इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। किस तरह हम इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करें। अब वो बतेरे लोगों ने इस जमात में अपने हाथों को उठाया हुआ है कि उनकी मनाजातें जिसकी वो तमन्ना कर रहे हैं आज सुबह आप उनको जवाब दें। और ऐ बाप, मैं दुआ करता हूँ कि आप इनमें से हर एक की अर्ज को कबूल कर लें। यहाँ मेज के ऊपर बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है और हर तरफ बहुत सी दरखास्तें हैं। लोग बीमार हैं, परेशान हैं, दूर दूर से। एक दिन में तकरीबन 50 फोन आते हैं। ऐ खुदा, हम क्या करें? खुदावन, आप फक्त हमारी रहनुमाई करें। हम नहीं जानते किधर जाएं या क्या करें, मगर आप हमारी इन बातों में रहनुमाई कर सकते हैं और हम दुआ करते हैं कि आप हमें ये अता करें, क्योंकि यही हमारी तमन्ना है। खुदावन, जो जिंदगी हम जमीन पर गुजार रहे हैं ये आपकी दी हुई है और हम चाहते हैं कि अपनी जिंदगी से आपकी ताज़ीम करें। अब ऐ बाप, इन सब बातों में आप हमारी रहनुमाई करें। खुदावन, आज हम यहाँ आपके कलाम को सुनने, गीत गाने और दुआ करने के लिए जमा हुए हैं, तो आप हमें बरकत दें, हमारी दुआओं को सुने और हमारे गीतों में हमारे साथ खुशी करें और हमसे कलाम करें। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। मैं नहीं जानता कि कोई ऐसा मकाम हो सकता है जहां खड़ा होकर मैं अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझ सकूं जितना कि इस पुलपिट पर खड़ा होना है, क्योंकि जिंदगी की रोटी टूटने के इंतजार में भूखे और प्यासे लोग यहां मौजूद हैं और ये एक एजाज है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि राइट के घराने से यहां कोई है? हैटी या आरवल या कोई और? हैटी है क्या? आरवल के साथ बैठी है? खैर, अगर वो घर से आया है तो उससे जल्दी से पूछें, इसलिए कि आप जानती हैं मैंने उससे कहा था। इसके बाद उसे कहना घर से होता हुआ जाए। अगर वो आ सकता है तो घर आ जाए। उसके पास एक छोटा सा कुत्ता है। आज सुबह उसके लिए कुछ लाना था जो मैं भूल गया हूँ। बस मैं जब आप जाने लगे तो आप जरूर इबादत के बाद घर से होते जाए। और अब हैटी की बहन एडिथ को लें। उसके बारे में हमें पता है कि वो बचपन ही में माजूर हो गई थी और अब वो एक औरत की सूरत इख्तियार कर चुकी है और बहुत बुरी हालत में है। हाल ही में तकरीबन एक साल पहले मैं वहाँ गया था जब उसे पहला ही दौरा पड़ा था और फिर खुदा के फजल से मैंने फौरन जान लिया कि उसके साथ क्या मसला है। अब गौर करें कि उस बच्ची को क्या बीमारी है। उसके बदन के अज़ा जुड़ चुके हैं और वो इन्हें हिला जुला नहीं सकती है और ऐसा खतरनाक हद तक नशों में दबाव आ जाने के बाइस हुआ है और बस वो बैठी रहती है। लेकिन क्या है कि बच्ची में बदनी तौर पर कोई कमी नहीं है। तकरीबन जब वो 6 माह की थी तो तब उसे बच्चों वाला फालिज हुआ था। अब से लेकर जब तक हमने उसके लिए दुआ नहीं की थी, बस वो रोती और चिल्लाती रहती थी और फिर तब से लेकर एक साल पहले तक वो खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। और अब ये वाकई सन्यास है, दूसरे लफ्जों में उसकी जिंदगी की तब्दीली है और उसकी नसें एक बुरी हालत में हैं और वो खातून अपने मन में ये सोचने लगी कि वो मर रही है। वो सोच रही थी कि वो एक आधे घंटे की मेहमान है और जिंदा ना रहेगी। और आप जानते हैं सेहतमंद और मजबूत औरतें भी इस मुश्किल वक्त से गुजरती हैं। कभी कभी उन्हें अस्पताल जाना पड़ता है और हार्मोन की कमी को पूरा करवाना पड़ता है और कभी कभी इस दौरान उन्हें बिजली का झटका भी लेना पड़ता है। इंसान की जिंदगी में दो तब्दीलियाँ होती हैं, जब वो एक लड़के से एक आदमी में तब्दील होता है और एक औरत, बल्कि जब एक लड़की औरत में तब्दील होती है। तकरीबन जब ये 16-17 साल के होते हैं तो तितलियों के झुंड की तरह उड़ते फिरते हैं और इस उम्र में आप उनकी बर्दाश्त करते हैं। इसी उम्र की मेरी बेटी रिबेका है, आप उसके लिए दुआ करना। और बिली भी है। ओ, हम में से हर एक ऐसी ही जज्बाती उम्र में से गुजरा है और ये जानते हुए कि इन्हें ऐसे हालात से गुजरना ही है तो इनकी बर्दाश्त करनी चाहिए। और अब एडिथ अपनी 7 साल तब्दीली में से गुजर रही है। हर एक 7 साल के बाद आपकी जिंदगी तब्दील होती है, बस जिंदगी में 7 मरतबा आपकी जिंदगी में तब्दीली आती है, समझे? और इस हालत को बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये मुकम्मल तब्दीली होती है और ये औरतों के लिए तकलीफ देह होता है। आदमी तो ऐसे वक्त में मौज मस्ती के मूड में होता है और कभी कभी तो अपनी बीवियों को भी छोड़ देते हैं, मगर औरतें इसके बाद जरखेज नहीं रहती हैं। हम सब ऐसी हालत से गुजर चुके हैं, हमें याद रखना चाहिए ये सारी बातें होती हैं, इसलिए हमें एक दूसरे की बर्दाश्त करनी चाहिए और इन बातों को समझना चाहिए। और छोटी ईद भी ऐसी ही हालत से गुजर रही है और बहुत कमजोर हो गई है और अच्छी दिखाई नहीं दे रही। और मैं आपसे कहता हूँ, किसी रात उसके घर जाएं, मगर सब इकट्ठे नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए जाएं। वो दिन रात उसके लिए दुआ करते हैं, और कुछ इस टैबरनेकल से और कुछ दूसरे टैबरनेकल से और कुछ यहाँ बहनों के टैबरनेकल से वहाँ जाएं। आप में से कुछ राइट खानदान से जाकर मिले, मुझे यकीन है वो आपको सराहेंगे। बस उनके घर जाएं और थोड़ी देर उनके साथ बैठें, उनसे बातचीत करें, उनसे हाथ मिलाएं और एक दोस्ताना मुलाकात करके आएं। आप जानते हैं, इस तरह की बात हम बड़ी आसानी से भूल जाते हैं, और जब ऐसा हमारे घर में होता है तो हम आने वाले को सराहते हैं, और हमें जरूर याद रखना चाहिए दूसरे भी इसी तरह सराहते हैं। और मुझे यकीन है कि राइट फैमिली भी इसकी कदर करेगी। मुझे मालूम है, अगर आपको इस हालत का पता होता तो आप जरूर उनके घर गए होते, मगर चूंकि आपको ये मालूम नहीं था, बस इसलिए आज सुबह मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जाएं और राइट फैमिली से मुलाकात करें और ईद को खुश करने की कोशिश करें। अब उसे मत कहना वो अच्छी नजर नहीं आ रही, बल्कि कहना वो अच्छी लग रही है, वो ठीक होने जा रही है। बस अगर हम उसे हौसला देते रहे तो वो ठीक हो जाएगी, और ऐसा करना हमारा काम है और वो हमारी बहन है, और ऐसे वक्त में हम उस बच्ची के लिए ईमान को थामे रहें। ठीक वैसे ही जब परेशानियों से गुजरता हूँ तो किसी से कहता हूँ मेरे लिए दुआ करें, और ऐसा ही आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई दुआ करे। और राइट खानदान एक काफी अरसे से पुराने आने वालों में से सबसे पुराने इस जमात के रुकन हैं, और उन्हीं के साथ मेरा ख्याल है भाई रॉय स्लॉटर और बहन स्लॉटर भी हैं। मैंने कुछ ही लम्हे पहले उन्हें देखा था, उन्होंने हाथ लहराया था जब वो अंदर आ रहे थे। जब मैं उस कोने में कार से उतरा था तो मैं सोच रहा था, कितने बरसों से मैं भाई और बहन स्लॉटर को इस चर्च में आते देख रहा हूँ। जिंदगी के कितने ही अतराव चढ़ाव आए, मगर वो अभी तक चल रहे हैं, और राइट खानदान भी और इसी तरह और भी लोग हैं जिन्हें आप सराहते हैं, इसलिए आप समझ गए हैं, और हमें उनकी हौसला अफजाई करते रहना चाहिए। अब आज मेरे पास एक लंबा पैगाम है, और वो है फर्द जुर्म। और फिर आज रात मैंने सुना है कि पाक ईशा और इस तरह पांव धोने की रस्म भी होनी है। बस हमारे पास्टर कलाम की मुनादी करेंगे और हम सभी आएंगे, हम सब यहाँ होंगे, और अगर आप यहीं कहीं हो तो जरूर आए और खुदावंद की तरफ से पास्टर साहब से पैगाम सुने और लुत्फंदोज हों। और फिर आज रात पाक ईशा और पांव धोने में भी शरीक हों। आज की रात एक बहुत ही मारूफ रात होगी। बस अगर आप कहीं और नहीं जाना चाहते तो यहाँ आए, हमें आपको यहाँ पाकर खुशी होगी। और हम भाई डॉन रेडर की हौसला अफजाई करते हैं, और दूसरे भाइयों और भाई जैक्सन की भी, और वो भी हमारे भाई और बहनें हैं जो दूसरे चर्च से मुंसलिक हैं। यहाँ पर भाई जैक पॉमर भी हैं जो जॉर्जिया की कलीसिया को देखते हैं, और हम इन भाइयों की दिल से हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि जब वक्तन फवक्तन हमारे यहाँ इबादत होती है और मैं यहाँ आता हूँ तो ये सभी लोग हमें मिलने के लिए आते हैं, और हम इसके लिए इनकी हौसला अफजाई करते हैं। और आज सुबह मैंने अपने अच्छे दोस्त डॉक्टर ली विली और उसकी बीवी को देखा था। सबसे पहले मैंने बहन विली को देखा तो और पहचान लिया, और फिर मैं चारों तरफ देख रहा था कि भाई ली कहाँ है। और अगर मैं पुरानी जनूबी कहावत में कहूँ तो कोई काम नहीं था, सिर्फ कौं कौं करनी थी, समझे। जो ही मैंने उसे पा लिया, कन्वेंशन के दौरान मैं उसे हर रोज ढूंढता था ताकि वो मेरी मदद करे, और मैं कहता था अच्छा अगर ली आ जाए तो उसे कलाम पेश करने दे, मैं बस बीमारों के लिए दुआ करूंगा। और हम उसे हर तरफ ढूंढते रहते थे, मगर वो नहीं मिलता था। बस मैं जब मैं उसे पा लेता था तो उसे झगड़ा करता था और बातचीत करता था। आज सुबह यहाँ भाई और बहन वेली को पाकर मैं खुश हूँ, और हो सकता है यहाँ और भी बहुत से लोग हो जिन्हें हम पहचान नहीं पा रहे। यहाँ एक बहन बैठी है, मेरा ख्याल है वो शिकागो से हैं, और मैं यहाँ एक और ग्रुप बैठा हुआ है जिनको मैं जानता हूँ, मगर उनके नाम दुरुस्त नहीं बता सकता, लिहाजा हम आप सबकी और उनकी भी हौसला अफजाई करते हैं। और मैं यहाँ पर दो जवान भाइयों को देख रहा हूँ, वो कम से कम अभी खिदमत में छोटे ही है, जो कि आज मखसूस किए जाएंगे। हमारे दो सियाफम भाई यहाँ न्यूयॉर्क से हैं, जिन्होंने हाल ही में फिलाडेल्फिया चर्च से इस्नाद हासिल की है, और उन्होंने इस चर्च को कागजात दिए हैं कि वो कहाँ से आए हैं, और हम उन पर हाथ रखेंगे ताकि खुदा उनकी खिदमत को न्यूयॉर्क में बाबरकत कर दे। मेरा ख्याल है हमारी वहाँ दो या तीन छोटी छोटी कलीसियाएं हैं, उनमें से छोटा गल्ला भाई मलिनो का है, और हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं, और ये दोनों भी वहाँ पर लोगों के दरमियान इबादत शुरू करने जा रहे हैं, और हम इन सब बातों के लिए इनकी हौसला अफजाई करते हैं। खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे। मैं यहाँ बहुत सारे चेहरे चारों तरफ देख रहा हूँ, मगर आप उनमें से सबके नाम नहीं पुकार सकते, मगर मैं जानता हूँ खुदा उन सबको जानता है। अब मैं चाहूंगा कि पियानो बजाने वाली बहन या उनमें से कोई आकर ये गीत हमारे लिए बजाए। जब जलते हुए अंगारे ने नबी को छू लिया, उसे इतना पाक कर दिया जितना कि हो सकता था, और जब कलामे खुदा की आवाज आई और कहा हमारी तरफ से कौन जाएगा, तब उसने जवाब दिया मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। अब हम इन खादमों पर हाथ रखकर इन्हें मखसूस करेंगे। और अब हम जानते हैं बाइबल में खादम को मखसूस करने का तरीका यही है कि उस पर हाथ रखे जाए। और मैं जानता हूँ इसी बात पर हमारे लेटर रेन भाई या बेटल फोर्ड के लोगों ने गड़बड़ कर दी थी और वगैरह वगैरह, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि हाथ रखने से रूहानी नेमते मिलती है। अब हम इस बात पर ईमान नहीं रखते कि हाथ रखने से नेमते मिलती है। हम ईमान रखते हैं कि हाथ रखने से मुराद इस बात की तस्दीक है कि जो कुछ उसमें है हम देख चुके हैं, समझे? ये आमीन करना है, समझे? अब देखें, उन्होंने तमोतियस और दूसरे भाइयों पर हाथ रखे, उन्होंने देख लिया था कि उन आदमियों में नेमते मौजूद थी। और याद रख, उस नेमत को चमका दे जो तुझे मिली थी, जो तेरी नानी लोइस की तरफ से मिली थी, और उन्होंने ये तमोतियस में देख लिया था, और इसलिए बुजुर्गों ने तमोतियस पर हाथ रखकर उसे मखसूस किया था। ऐसा नहीं था कि किसी ऐसे आदमी पर हाथ रख दिए जाते थे जिसने कभी कुछ जाहिर ही ना किया हो, आप समझे? और उन्होंने सिर्फ बरकत मांगी, और हम सब इस पर ईमान रखते हैं। बस हम रूहानी नेमते नहीं देते, हम सिर्फ उन्हें पहचानते हैं और उन पर हाथ रखते हैं ताकि वो उन्हें चमका दे। हम ईमान रखते हैं कि रूहानी नेमते खुदा ही देता है। आज सुबह मैंने देखा था कि पीछे भाई मकेनी बैठे हुए थे, मेरा ख्याल है उनका नाम केनी या मिक केनी है, जो यहाँ पीछे बैठे हुए थे, वो मेथोडिस्ट के खादम थे। उनको भी हाल ही में मेरा ख्याल है ठीक इसी प्लेटफॉर्म से मखसूस किया गया था, क्योंकि उन्हें वहाँ ओहायो में भाई डाक और बहन डाक के साथ और ओहायो के ग्रुप के साथ खिदमत करनी थी। ओ, जब हम सब इकट्ठे होते हैं और ये छोटे छोटे ग्रुप मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बहुत शानदार वक्त होता है। कोई तंजीम नहीं, कोई बंधन नहीं, मगर सिर्फ यीशु मसीह है, यही सब कुछ है, समझे? फक्त सभी मिलकर आसमानी मुकामों में बैठे हुए हैं। ठीक है बहन, आप पियानो शुरू करें। आए हम सब इस गीत की पहली लाइन को गाते हैं, जब जलते हुए अंगारे ने नबी को छू लिया। आए अब मिलकर गाते हैं। जब जलते हुए अंगारे ने नबी को छू लिया, उसे इतना पाक कर दिया जितना वो हो सकता था। जब खुदा की आवाज ने कहा हमारी तरफ से कौन जाएगा, तब उसने जवाब दिया मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज दे। खुदावंद बोल, मेरे खुदावंद बोल। अब भाई अगर आप चाहते हैं तो आगे आ जाएं और मैं जल्द जवाब दूंगा। अब वो खादम भाई आगे आ जाएं, अगर वो चाहते हैं कि उन पर हाथ रखे जाएं। मेरे खुदाया, इस टैबरनेकल के साथ ही भाई रेडल, भाई लैम और दूसरे आगे आ जाएं। अगर आप चाहते हैं तो ठीक यहाँ आ जाएं। और मैं जवाब दूंगा खुदावन मुझे भेज। ब्राय मेहरबानी आहिस्ता आहिस्ता कहें। ओ लाखों अब गुनाह और शर्मिंदगी में मर रहे हैं, उनके दुख और दर्द की पुकार सुन ले भाई, उन्हें बचाने के लिए जल्दी और जल्दी करे, जल्दी जवाब दे मालिक मैं हाजिर हूँ। मेरे खुदावन बोल, मेरे खुदावन बोल, बोल और मैं तुझे जल्दी जवाब दूंगा। मेरे खुदावन बोल, मेरे खुदावन बोल, बोल और मैं तुझे जवाब दूंगा, खुदावंद मुझे भेज। भाई आपका नाम क्या है? भाई ऑरलैंडो हेंट, जो कि न्यूयॉर्क से आए हैं, क्या ये ठीक है? और दूसरे भाई जोसेफ कोलमैन। अब मेरे भाइयों आप सामीन की तरफ देखें। भाई हेंट और भाई कोलमैन के दिलों में खुदा की बुलाहट है, और जैसे कि हमने अभी वो गीत गाया, लाखों लोग शर्म और गुनाह में अब मर रहे हैं। इन लोगों ने दुख और दर्द की पुकार सुनी है, और हम इनसे कह रहे हैं भाइयों जल्दी करो, उनको बचाने में जल्दी करो, समझे? फौरन जवाब आया मालिक मैं हाजिर हूँ। ये भाई इस तरह आज सुबह जवाब दे रहे हैं। और हम जो इस चर्च में और इस झुंड के भाई हैं, हम अपने हाथ इन पर रखकर तस्दीक करते हैं और अपना दाहिना हाथ रफाकत के लिए बढ़ाते हैं। हमारी मदद इनके लिए है ताकि ये यीशु मसीह के गवाह बने। हम हर बात में इनके साथ हैं, जो अंजील के लिए दुरुस्त और काबिले तहजीम है। हमारी दुआएं मुसलसल इन आदमियों के साथ रहेंगी। खुदा इन्हें अपनी ताजीम के लिए इस्तेमाल करे, और काश इनकी खिदमत न्यूयॉर्क में बहुत अजीम हो। काश इनके जीवन खुदा की खिदमत से भरे रहें और कीमती पूले बादशाही के लिए इकट्ठे किए जाएं। काश ये लंबी जिंदगी और खुशहाल जिंदगी पाएं। काश खुदावंद खुदा इन्हें अपनी अब्दी हजूरी से मजबूत करता रहे और इन्हें मोहब्बत और कुव्वत देता रहे और इन्हें तब तक खिदमत में लगाए रखे जब तक यीशु मसीह इन्हें आसमान पर सुकून के लिए अब्दी घर में बुला न ले। जब हम खादम इन पर हाथ रखने जा रहे हैं तो आए अब ये जमात, बल्कि हम सब मिलकर अपने सरों को झुकाते हैं। हमारे आसमानी बाप, हम भाई हंट पर खुदावन यीशु मसीह के नाम में अपने हाथ रखते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी इस भाई के बारे में जानते हैं खुदावन वो दुरुस्त है, और हम तेरे इस जिंदगी की खिदमत की बलाहट के लिए शुक्रगुजार हैं। खुदावन इस भाई के वसीले से बोले, रूहों को जीते। खुदावन जो गुलामी में है उन्हें छुटकारा दे। बीमारी और जहनी बीमारी में है, रूहानी और जिस्मानी दोनों बीमारियों में है, खुदावन इसे हकीकी खिदमत से नवाज दे, ताकि ये इस रास्ते के इख्तिताम पर अपने पीछे एक लंबी कतार को देख सके और देख सके कि खुदा के फजल से हर दुश्मन को बांध दिया गया है। अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से हम ये मांगते हैं, आमीन। खुदावन, भाई कोलमैन के ऊपर भी हम अपने हाथों को बतौरे गवाह रखते हैं और इसकी बुलाहट की तस्दीक करते हैं, और हम और ये चर्च और ये लोगों की जमात इस बात का यकीन करती है कि ये मसीह का खादम है, और हम इसके लिए बरकत मांगते हैं, और तू इसे एक अजीम कुवत बरी खिदमत दे, ताकि खुदावंद ये तेरे लिए रूहों को जीत सके और गुलामों को आजाद कर सके और शैतान की कुवत उन लोगों से निकाल सके जिनसे ये जुड़ा हुआ है। खुदावंद इस भाई को फलदार जिंदगी दे और अच्छी सेहत और कुवत दे, और जब भी ये इस रास्ते के इख्तिताम पर पहुंचे, ऐ खुदा होने दे कि ये भी पीछे मुड़कर लंबी कतार को देख सके। यीशु मसीह के फजल से दुश्मन की सारी बेड़ियों को खुदा के जलाल के लिए ये तोड़ने के काबिल हो सके। आसमानी बाप, काश ये भाई इस तरह की जिंदगी जीकर खुदा के खेत में काम करें। काश तेरी बरकत इन पर उस वक्त तक ठहरी रहे जब तक हम सब इकट्ठे अजीम मालिक के कदमों में जमा न हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में हम ये मांगते हैं, आमीन। भाई हेंट, खुदा आपको बरकत दे और एक फलदार खिदमत से नवाजे। भाई आपको भी खुदा बरकत दे और एक फलदार खिदमत से नवाजे। भाई कोलमैन, खुदा आपको बरकत दे। एक बार फिर से गाए, जब जलते हुए अंगारे ने नबी को छू लिया, उसे इतना पाक कर दिया जितना हो सकता था। जब खुदा की आवाज ने पूछा, मेरे लिए कौन जाएगा, तब उसने जवाब दिया, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज दे। हो मेरे खुदा बोल, काश वो बहुत से नौजवानों से बोले, मेरे खुदावंद बोल, खुदा के बुलाए हुए, मैं तुझे जल्दी जवाब दूंगा। खुदावंद मुझसे बोल, खुदावंद मुझसे बोल, मुझसे बोल और मैं तुझे जरूर जवाब दूंगा। खुदावंद मुझे भेज। आज सुबह हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि इस कलीसिया को ये शर्फ मिला कि इस आखिरी जमाने के खेत में इन खादमों को भेजने की गवाह बन सके। मेरे भाइयों, खुदा का फजल आपके साथ जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको दुनिया भर में और गैर ममालिक के खेतों में भेज रहा है, ताकि यीशु मसीह के बेशकीमत खजानों की मुनादी की जाए, जहाँ इसकी बहुत जरूरत है। आज दुनिया को इसकी बहुत जरूरत है। अब आज सुबह की इबादत में हमने बहुत सारी अच्छी बातों की तरतीब हासिल की है, जो फक्त कुछ यहाँ से और कुछ वहाँ से ली है, और अब आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं एक ऐसे उन्वान पर बोलने जा रहा हूँ। मैं कभी कभी इन होलनाक वक्तों के बारे में बताना इतना पसंद नहीं करता, अब पिछले इतवार आप में से कुछ यहाँ नहीं थे और तीसरे खरूज पर पैगाम सुनाया गया था, और अगर आप टेप लेना चाहें तो मेरा ईमान है आप इस तीसरे खरूज के पैगाम को सुनकर बरकत पा सकते हैं। यहाँ क्या है, एक बीमार लड़का या कुछ और? ओ, एक छोटा सा लंगड़ा लड़का है। जी हाँ, खुदा इसे बरकत दे। ठीक है, आप जानते हैं कि फक्त इबादत के इख्तिताम पर हम हर हालत में बीमारों के लिए दुआ करते हैं, ये दुरुस्त है। लिहाजा अब हम चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हो सकता है आपने तीसरे खुरूज के पैगाम को हासिल किया हो। तीसरी मर्तबा वो रोशनी, खुदावंद के फरिश्ते ने लोगों को एक खुरूज के लिए पुकारा है और जाहिरी तौर पर जमीन पर एक खुरूज के लिए अपने आप को अया किया है, समझे? मेरा ख्याल है कि ये तीसरा खुरूज हकीकतन मुझ पर वाजिबुल अदा है। अगर मैं अपना कोट उतार दूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? यहाँ पर आज सुबह इस टैबरनेकल में बहुत ज्यादा गर्मी है और एयर कंडीशनर की जगह हमारे पास पंखे हैं, जो आप कर सकते हैं। आपको इसे चलाने के लिए अपनी ही ताकत इस्तेमाल करनी होगी। बस हम इस पर मनसूबा बंदी कर रहे हैं कि हम जल्द अज जल्द चीजों को मुकर्रर कर सकें और यहाँ ठंड का सिलसिला हो सके। अब अगर आप तीसरे खुरूज का पैगाम सुनना पसंद करेंगे तो हमें खुशी होगी। अब हमारे पास बहुत सारे खुरूज थे, लेकिन हम यकीनी तौर पर तीन खुरूज के मकाम और वक्त पर अपने हाथ रख सके हैं कि खुदा आग के सतून के रूप में नीचे आया और लोगों को बुलाया और अलग किया, और अब भी लोगों को अलग कर रहा है। और हम देख सकते हैं कि तब उसने अपने पहले खुरूज को बुलाया तो वो एक आग के सतून में उनके आगे आगे चला और उनकी रहनुमाई की, उनकी रहनुमाई उस सरजमीन तक की जहां बाद में वो उनके सामने एक इंसान की शक्ल में जाहिर हुआ, जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं। वो खुदा से आया और खुदा के पास ही गया, उसे रद्द कर दिया गया था, और फिर वो लोगों को दुनियावी हालत से बाहर बुलाने के लिए आ गया जिसमें वो चले गए थे। ये हालत वैसी थी जब वो मिस्र में थे और मिस्रियों की राहों पर चले और गुनाह में दंस गए, तब खुदा ने उन्हें फिर बुलाया। और अब हम दूसरी बार देखते हैं कि वो रोमी सल्तनत की गुलामी में थे और वो अकीदों में फंस गए और हकीकी इबादत की मुनादी से दूर हो गए, और तब खुदा ने एक और खुरूज भेजा, फिर वो खुद इंसान के रूप में आ गया और इंसान की रहनुमाई की। पहले खुरूज में वो आग का सतून था, फिर जब वो जमीन पर उस सरजमीन में आया तो उन्हें कहाँ ले गया? क्या ही खूबसूरत हजार साला बादशाही होगी जहाँ वो अब अपनी कलीसिया को लेकर जा रहा है। हम उसे वैसे ही देखेंगे जैसा वो है, और हमारे पास भी वैसा ही बदन होगा जैसा उसका जलाली बदन था। और आज अंजील की रोशनी उस एक रोशनी की अकासी है, और आग का स्तून हमारे दरमियान जाहिर हुआ है। साइंस ने इसे देखा है और मैगजीन में ये छपा है और पूरी दुनिया में ये जा चुका है, और ये दोनों साइंसी तरीके से और रूहानी तरीके से साबित हो चुका है कि ये वही आग का स्तून है। इसके वसीले वही निशान और वही काम जो हमेशा वो किया करता था जाहिर हुए हैं। और अब ऐसे दिनों में जबकि बहुत ज्यादा पागलपन है और दूसरी बातें चल रही हैं, तो भी खुदा हमेशा अपनी शनाख्त खुद करवाता है। अब हम देखते हैं, और उसको जानना क्या ही खूबसूरत बात है। और किसी रोज ये जमीनी खैमा, ये पुराना बसीदा दुख और दर्द से भरा हुआ बदन जिसमें हम रह रहे हैं बदल जाएगा और उसके अपने जलाली बदन की तरह हो जाएगा। तब हम उसे देखेंगे जैसा वो है और उसके साथ उस देश में जाएंगे जिसकी आज हम आस लगाए बैठे हैं। हो और मैं तकरीबन हम यहाँ खड़े महसूस कर रहे हैं और ये गाते हैं, मैं उस माउदा सरजमीन में जा रहा हूँ। शायद ये लोग बपतिस्मा देते वक्त इस गीत को गाते हैं क्योंकि ये हमारा बपतिस्मे का गीत है। अब वो भाई बहने जो यहाँ हैं और वो जिनके पास दुनिया भर में ये टेप जाती हैं, ये पैगामात किसी खास शख्स की हदायत के लिए नहीं है, और हम नहीं चाहते कि लोग ये सोचे कि हम किसी किस्म का कोई झुंड है या कोई जुनूनियों का ग्रोह है जो हम एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए अलग कर लिया है, मगर इनमें ईमान नहीं है, या कि हमने किसी के खिलाफ या खुदा के खिलाफ या चर्च के खिलाफ अपने आप को अलग कर लिया है, मगर हम तो चर्च के लिए हैं। बल्कि हम रूल कुश और उसकी मदद से उस नुक्ते को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज सुबह हम अलग हैं। हम अलग रहने पर ईमान नहीं रखते। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि सब चर्चेज को मिलकर वक्त रखनी चाहिए और अलग नहीं रहना चाहिए। मेथोडिस्ट का अपना ग्रोह है और बैप्टिस्ट का अपना, और वदानियत वाले और तसलीस वाले और बाकी सब अलग अलग हैं। हम ईमान रखते हैं कि इन सभी से मिलकर एक अजीम मुतहद्दा यीशु मसीह के बदन का हिस्सा बनना चाहिए, जो उसकी जलाली आमद का इंतजार कर रहा हो। इन सबको अलग अलग नहीं होना चाहिए। और वो क्या है जो हमें अलग करता है? कुछ ऐसी बुनियादी वजह है जिसकी वजह से हम इकट्ठे नहीं हैं। इस बात का मुतालिया करने से मैंने इसको महसूस किया है कि ये हमारी चमड़ी के रंगों की वजह से नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ तंजीमों में सभी लोग मौजूद हैं। लाल, पीले, सफेद और भूरे रंग के मौजूद हैं। ये ना ही मुख्तलिफ किस्म का खाना है जो हम खाते हैं। हम सब एक जैसा ही खाना खाते हैं और हम सब एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं और वगैरह वगैरह। मगर मैं देखता हूँ कि बुनियादी वजह यह है कि इंसान, बल्कि हर एक इंसान, अंजील की तालीम के रास्ते से हट गया है। और जरूर कोई ना कोई होना चाहिए जो दिखा सके कि गलत क्या है और ठीक क्या है। और ऐसा आप तब ही कर सकेंगे जब कलाम मुकद्दस की आप अपनी तफसीर ना करेंगे, फक्त उसे वैसा ही पढ़ेंगे जैसा कि लिखा है और उसी तरीके से ईमान रखेंगे। हर एक शख्स जब अपनी तफसीर करता है तो फिर वो मुख्तलिफ कहने लगता है, और ये तरीका हमें वापस असल तंजीम कैथलिक चर्च की तरफ ले जाता है, जबकि कैथलिक चर्च का ईमान है कि खुदा अपनी कलीसिया में रहता है और कलाम के साथ कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि खुदा अपनी कलीसिया में रहता है। जैसा कि हम मुकाशवा 17 में देखते हैं कि उन सब के साथ हम प्रोटेस्टेंट भी इकट्ठे एक ढेर थे, और देखें, कैथलिक चर्च तमाम तंजीमों की माँ है। और हम देखते हैं प्रोटेस्टेंट तंजीम अभी तक अंधी है और कैथलिक चर्च की तरह की फितरत रखती है। बाइबल कैथलिक चर्च को एक कस्बी कहती है और प्रोटेस्टेंट चर्चेज को कस्बियां। कलाम कहता है कि वो कस्बी थी, बल्कि कस्बियों की माँ है। और ये वो लोग हैं जो उस खराब औरत की तरह हैं, जो अपनी शादी के एदो पैमा को भूल जाती है। और हम सब मसीह की दुल्हन होने का दावा करते हैं, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। कौन सी बात हमें झूठा बनाती है? उन असूलों के खिलाफ जीना जो खुदा ने अपनी दुल्हन के लिए रखे हैं। ये मेरी अपनी राय है, जबकि मेरा ईमान है कि बाइबल खुदा का लारेब कलाम है। और इसी सबब से हम देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट चर्च ने बड़ी तरतीब से एक तंजीम बनाई, यहाँ तक कि अपने आप को कलाम से अलग कर लिया ताकि तंजीम बन सके। इसके मखसूस शुदा खादम हर तरह से अपनी इन चीजों को थामे हुए हैं। अब वो सैकड़ों की तादाद में मेरे मुतालिया के कमरे में आते हैं और कहते हैं, भाई ब्रैनम, आप लोगों को ललकारते हैं और कोई भी इन बातों के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो जानते हैं ये सच्चाई है। मैं उनसे कहता हूँ, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? वो कहते हैं, ठीक है, मगर आप देखें, अगर मैं ऐसा करूँगा तो रोटी के लिए मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। नहीं, कोई नहीं, मेरी खिदमत ये है, लोगों को खुदावंद के पास लाऊं, और मुझे लोगों को खींचना है चाहे मेरा कोई भी सहारा ना हो। क्या आप ये महसूस नहीं कर सकते कि मसीह हमारा सहारा है, बाइबल हमारा सहारा है, समझे? मगर ये देखें कि ये प्रोटेस्टेंट चर्चेज भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कैथलिक चर्च है। कैथलिक चर्च ऐसी बातों की परवाह नहीं करता, ठीक है, मैं नहीं कहता, मैं ये गैर मौजब तरीके से नहीं कहता कि वो परवाह नहीं करते कि बाइबल क्या कहती है। वो बाइबल पर ईमान रखते हैं, लेकिन देखें, उन्होंने एक कैथलिक चर्च रसूली जानशीनी की बुनियाद पर कहा है। वो पत्रस को अपना पहला पोप मानते हैं और फिर इसी तरह उसके नीचे जानशीन पोप बनाते आए हैं। अब देखें, उनका ऐसा ही ईमान है और वो पुरजोर तरीके से ये मानते हैं। और प्रोटेस्टेंट, देखें, उन्होंने भी इकट्ठे होकर एक तंजीम बना ली, बिल्कुल जैसे उन्होंने नासिया रोम में किया। वहाँ उन्होंने कैथलिक चर्च को नासिया काउंसिल में मुनज्जम किया। और हम देखते हैं कि ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक ही जैसे हैं। एक तंजीम बनाने के लिए उन्होंने खुदा के कलाम को छोड़ दिया, समझे? और फिर जब उन्हें आज कलाम की सच्चाइयाँ बताई जाती हैं, तो वो उन्हें अजीब और अजनबी लगती हैं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ रसूमात ही सिखाई गई है। हमारे पास कोई रस्म नहीं, लेकिन बाइबल है। हमारे पास और कुछ नहीं, बस खुदा का पाक कलाम है और हम इसी में कायम रहते हैं। और अब आज मैं थोड़ी देर में कलाम को पढ़ना चाहता हूँ। पवित्र खुदा के पाक कलाम में से मुकद्दस लूका की किताब में ये पाया जाता है। मुकद्दस लूका 23वें बाब को बुनियाद बनाते हुए मैं इस प्लेटफॉर्म पर बोलना चाहता हूँ। ये एक इस बात का बुनियादी ख्याल है जिस पर मैं बोलना चाहता हूँ। और अब आप मुकद्दस लूका का 23वां बाब निकाल लें और मैं इसकी एक आयत पढ़ना चाहता हूँ और सब कुछ इसमें मौजूद है जो आज सुबह इस मकाम पर मुझे बताने की जरूरत है। अब हम 20वें बाब को पढ़ते हैं, बल्कि 23वां बाब 23वें बाब की 33वीं आयत को पढ़ते हैं। और जब वो उस जगह पहुँचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहाँ उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी तरफ और दूसरे को बाईं तरफ। अब मैं इनमें से चार अल्फाज लेना चाहता हूँ। इन पढ़े गए अल्फाज को बुनियाद बनाकर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वहाँ उन्होंने उसे मसलूब किया, अंग्रेजी में चार अल्फाज है। और आज सुबह का उन्वान है, मैं आज तंजीमी चर्चिस और बहुत सारे आजाद चर्चिस पर एक फर्द जुर्म लगा रहा हूँ, क्योंकि यीशु मसीह को इस जमाने में दोबारा मसलूब ये कर रहे हैं। ये फर्द जुर्म इन पर है और आज सुबह मैं इसे पुकारता हूँ फर्द जुर्म। और मैं इसे उसी तरीके से लेना चाहता हूँ जैसे एक अदालत का कमरा हो, जहाँ पर और वैसे भी पुलपट और चर्च अदालत का कमरा ही है। बाइबल फरमाती है और ये तख्ते अदालत है जो खुदा के घर ही से शुरू होगी और ये तख्त की तरह है और वहाँ अराकीन, गवाह और वगैरह वगैरह होते हैं और आज मेरे पास गवाह के रूप में खुदा का कलाम है और मेरा इल्जाम आज की कलीसियाओं के खिलाफ है। अब मैं गुनाहगार को यहाँ नहीं ला रहा, मैं तो ये कलीसिया से कह रहा हूँ और अब ये सब कुछ टेप किया जा रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही अपनी बात कह सकूँ। मैं इस नस्ल पर यीशु मसीह को दोबारा मसलूब करने का इल्जाम लगाता हूँ। और अब इस वक्त जिसमें हम रह रहे हैं, मुझे ऐसा करने के लिए सबूत दिखाने होंगे। अगर मुझे कोई इल्जाम लगाना है तो सबूत पेश करना होगा कि जुर्म क्या किया गया है और मुझे इन पर इल्जाम लगाने के लिए मुझे तो सबूत साबित करने होंगे, ताकि ये जो कुछ कह रहा हूँ वो मुनसिफ के सामने साबित हो जाए। और जैसा कि इस इल्जाम को लगाते हुए मैं बतौर एक वकील हूँ और खुदा का कलाम मेरा गवाह है कि मैं इस नस्ल पर मसलूबियत का इल्जाम लगा रहा हूँ, मुझे ये दिखाना पड़ेगा और मैं ये जरूर दिखाऊंगा कि आज लोगों पर वही रूह छाया हुआ है जिसने पहली मर्तबा सलीब दी थी और वही काम अब ये कर रहे हैं। मुझे ऐसा जरूर करना चाहिए। अगर ये सलीब देने का मामला है तो जैसे उन्होंने सलीब चढ़ाया था, मुझे लोगों को जरूर दिखाना चाहिए कि आज की लोगों का रवैया वैसा ही है और रूहानी तौर पर वैसा ही कर रहे हैं, वैसा ही जैसा उन्होंने जिस्मानी तौर पर किया था। तब उन्होंने खुदा के बेटे यीशु मसीह को बदनी रूप में मसलूब किया था और अब आज उसी कलाम को, उसी रूहुल कुछ को, उसी कलाम से मैं चर्चिस को दिखाना चाहता हूँ कि वो कहाँ खड़े हैं। ये आज वैसा ही कर रहे हैं और बाइबल कहती है वो ऐसा करेंगे और मैं ये भी साबित करूंगा कि वो वक्त यही है जिसमें हम रह रहे हैं। कुछ साल पहले ऐसा नहीं किया जा सकता था, मैं कहता हूँ 50 साल पहले ऐसा नहीं किया जा सकता था, मगर आज ऐसा करने का वक्त है और शायद 10 साल पहले भी ऐसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन आज ये किया जा सकता है क्योंकि वक्त शुरू हो गया है। हम आखिरी वक्त में हैं और खुदा का खादम होते हुए मैं ईमान रखता हूँ हम इस सरजमीन से दूसरी सरजमीन में जा रहे हैं। इसलिए तोबा का वक्त इस कौम के लिए गुजर चुका है। मैं सोचता हूँ कि ये कौम अब तोबा नहीं कर सकती। मुझे यकीन है कि इसने रहम और अदालत की हद को पार कर लिया है। मुझे यकीन है कि ये अब तराजू में झूल रही है। भाई ब्रहनम, इससे पहले कि आप अपना मुकदमा शुरू करें, आप इसे साबित कैसे करेंगे? फक्त इस तरह कि हम उसी गुनाह के कसूरवार हैं जिसकी वजह से खुदा ने उस पुरानी दुनिया को खत्म कर दिया था। हम उन्हीं गुनाहों के कसूरवार हैं जिनकी वजह से खुदा ने सदूम और अमूरा की दुनिया को तबाह कर दिया था। और अब उसके मुतल्लिक सारे रूहानी सबूत हमारे सामने खुले पड़े हैं। इन तमाम रूहानी सबूतों को पूरी दुनिया जानती है जिसकी वजह से खुदा का रहम उस वक्त के लोगों से हटा लिया गया था। बस इसी तरह रहम को रद्द करने की वजह से अदालत हुई। बस इस नस्ल ने भी उस रहम को ठुकरा दिया है जो इस पर पिछले दिनों किया गया था। इसलिए अगर खुदा इनकी अदालत ना करे तो बेइंसाफ कहलाएगा। जैसा कि मेरे एक दोस्त जैक मूर ने एक मर्तबा कहा था, अगर ये कौम खुदा की सजा से बच जाती है तो फिर खुदा इसका पाबंद होगा कि वो सदूम और अमूरा को फिर से उठाकर खड़ा करे और उनसे माफी मांगे। अब हम इस बात को जानते हैं कि रूहानी तौर पर लोग आज ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इनका भी वैसा ही मकसद है, और ये उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने खुदावंद को बदली तौर पर मसलूब करते वक्त किया था। ये हसद की वजह से ऐसा कर रहे हैं और रूहानी अंधेपन की वजह से ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ देखना नहीं चाहते, ये इस बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते। यीशु ने अपने जमीनी सफर के दौरान कहा था, यसाया नबी ने तुम्हारे हक में खूब कहा है, तुम्हारी आंखें हैं पर देखते नहीं, तुम्हारे कान हैं पर सुनते नहीं। समझे? और आज भी वही वजह है, वही मकसद है और वही दलीलें हैं। ये लोग फिर से दोबारा मसीह के लिए सलीबी मौत ला रहे हैं, जैसा कि हम थोड़ी देर में देखेंगे, क्योंकि ये वही वजूहात है जो उन्होंने तब की थी। उन्हें उसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला था। वो उसकी ललकार के जवाब की जुरत नहीं कर सकते थे। वो जानते थे वहाँ सबूत है, और वो जानते थे बाइबल इसी तरह कहती है, और वो उसके खिलाफ सिर्फ यही कर सकते थे कि कुफर बके। बिल्कुल इसी तरह बस आज भी यही कुछ है, यही वजूहत है। और अब इस बुनियाद पर इस नस्ल को ललकार रहा हूँ कि इन्होंने यीशु मसीह को मसलूब किया है। ये इसे सलीब देने के कसूरवार हैं। तंजीमों के गंदे, बदकार और मतलब प्रस्त हाथों ने जिंदगी के शहजादे को सलीब पर चढ़ा दिया है जो अपने आप को खुद लोगों के लिए पेश करना चाहता था। आप कहते हैं उसी शख्स को? जी हाँ, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा था, और कलाम मुजस्सम हुआ और वो खुद जिस्म बन गया, और कलाम जो जिस्म में जाहिर हुआ उन्होंने उस जिस्म को रद्द करके मौत के हवाले कर दिया, क्योंकि कलाम मुजस्सम हुआ था। अब्रानियों 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यक्षा है। ये वही कलाम है, समझे? और उन्ही वजूहात की बिना पर ये कलाम को मसलूब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं फिर से अपने उन्वान पर आता हूँ जो मैं बताना चाहता हूँ। उन चार अल्फाज में से पहला है वहाँ। आइए हम वहाँ को समझें। वहाँ जो दुनिया का सबसे पाक शहर यरूशलम था, वहाँ जो दुनिया का सबसे ज्यादा मजहबी शहर था, वहाँ उन्होंने यानी दुनिया के सबसे ज्यादा मजहबी लोगों ने एक मजहबी ईद पर जो कि फसा की ईद थी, वहाँ जो बहुत ही कदीम मकाम और मजहबी नगर था जो कि सभी बड़ी बड़ी तंजीमों का सरबराह था, वहाँ उन्होंने जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा मजहबी लोग थे और पूरी दुनिया से इकट्ठे हुए थे, उन्होंने सलीब देने वाली सबसे शर्मनाक मौत चुनी ताकि उसे मार सके, जितना कि किसी शख्स को मार सकते थे। उसको नंगा कर दिया गया, कपड़े छीन लिए गए, उसकी रुसवाई की गई और हकीर जाना गया। उन्होंने उसके बदन से कपड़े उतार लिए और एक चिथड़ा बदन पर लपेट दिया। किस कदर शर्मनाक हालत थी ये। वहाँ जो सबसे बड़ा मजहबी शहर था, उन्होंने जो सबसे ज्यादा मजहबी लोग थे मसलूब किया, जो कि सबसे ज्यादा शर्मनाक मौत थी, उसे जो कि बेशकीमत शख्स था। क्या इस नस्ल पर फर्दे जुर्म लगाने के लिए ये काफी नहीं है? وہاں جو بہت مذہبی تنظیم تھی، سب بڑے بڑے چرچز ایک ہی جگہ جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے جو سب نسلوں میں سے زیادہ مذہبی لوگ تھے، وہ لوگ جن سے امید کی جاتی تھی کہ وہ خدا کے سب سے اچھے عبادت کرنے والے ہیں، وہ لوگ مقدس فسح کی عید کے لیے وہاں اکٹھے ہوئے تھے تاکہ فسح پر گناہ سے پاک کیے جائیں جب وہ غلامی سے آزادی میں لائے جا رہے تھے۔ اور پھر وہاں اس وقت میں انہوں نے، اس وقت جو کہ بہت ہی مذہبی لوگ تھے، بہت ہی مذہبی عید پر، بہت ہی مذہبی مقام پر یہ کیا کہ زندگی کے شہزادے کے ساتھ اتنا شرمناک سلوک کیا جتنا کہ وہ کر سکتے تھے۔ ایک شخص کو ننگا کر کے لکڑی پر لٹکا دیا، کیونکہ ان کی شریعت میں لکھا تھا جسے وہ مانتے تھے، لعنت اس پر، لعنتی ہے وہ شخص جو لکڑی پر لٹکایا جاتا ہے، اور وہ ہمارے لیے لعنتی بنا۔ اس آسمان کے خدا کو ننگا کر دیا گیا، اسے مارا گیا، اسے ٹھٹھوں میں اڑایا گیا، اس کے کپڑے اتار کر اسے صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا گیا، اسے وہاں انہوں نے مصلوب کر دیا، جو رومن گورنمنٹ کی طرف سے سب سے بڑی سزا تھی۔ کسی کو گولی مار دینا آج بہت شرمناک موت نہیں ہے، کسی کے اوپر کار چڑھا کر اسے مار دینا آج بہت شرمناک موت نہیں ہوگی، آگ میں جلا کر، جل میں ڈبا کر بھی نہیں، مگر آج سب سے زیادہ شرمناک موت عوامی سزائے موت ہے، جہاں پوری دنیا آپ کو رد کرے اور گناہگار کہے، اور وہاں پوری دنیا نے اس آدمی کو گناہگار مان لیا جبکہ وہ بے گناہ تھا، اور وہ اپنے دشمنوں کے ہاتھوں مارا گیا، نہ اپنی شریعت سے، نہ ہی اپنے دوستوں سے، بلکہ دشمن کی طرف سے مصلوب کیا گیا۔ اس زندگی کے شہزادے کو، بیش قیمت شخص کو، جس کی طرح نہ کبھی کوئی ہوا اور نہ کبھی کوئی ہوگا، وہ یسوع مسیح ہے۔ اس بیش قیمت شخص کو اب اس بات کو ذہن میں رکھے، جبکہ آج ہم اس کا ڈھانچہ کھڑا کرنے جا رہے ہیں۔ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ یروشلم شہر میں ہوا، جہاں لوگوں کو 2500 سالوں یا اس سے بھی زیادہ سالوں سے انتظار تھا، یا سینکڑوں سالوں سے، شاید میں کچھ زیادہ بتا رہا ہوں، شاید 800 یا 900 سالوں یا کچھ اور، مجھے نہیں معلوم کہ سلیمان کی ہیکل بنانے کے بعد کتنا وقت گزر چکا تھا، میرا خیال ہے تقریباً 800 سال یا کچھ اس طرح۔ اور اس دوران وہ آنے والے ایک مسیحا کا انتظار کر رہے تھے، اور وہاں فسح کی عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ اب ذرا اسی بات پر سوچے، فریسیوں، صدوقیوں اور جو کچھ بھی آپ کے پاس وہاں تھا، سب کے سربراہ تھے، خدا کی عبادت کے لیے ایک بہت بڑی بھیڑ کے ساتھ وہاں جمع تھے۔ سب سے زیادہ مقدس جگہ یروشلم میں، جہاں خداوند کی ہیکل تھی، اور خداوند کے اپنے ہی لوگوں نے خداوند کو پکڑ لیا اور اسے سزائے موت دے کر صلیب پر چڑھا دیا، ایسا ہی ہوا۔ اب ان چار الفاظ کو دیکھیں، انہوں نے اسے مصلوب کیا۔ اب بھی آپ بائبل میں دیکھ سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، یہی چار الفاظ ہیں، آپ دیکھیں، مگر بائبل میں اس کی سچائی چھپی ہوئی ہے۔ اب مجھے جو میں کہہ رہا ہوں اس کے متعلق بیان کرنے کے لیے بہت سی باتیں ادھر ادھر سے لینی پڑتی ہیں، مگر بائبل کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو فقط ساری کی ساری سچائی پر مبنی ہے، اس لیے بائبل کو ذرا بھی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ پوری کی پوری سچائی ہے۔ یہاں یہ چار الفاظ سچائی کی عظیم کڑیاں ہیں، میں انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور ایک ایک بات کی وضاحت اگر کی جائے تو یہ ایک لائبریری بن جائے گی۔ ان چار الفاظ کو سمجھانے کے لیے میرے پاس کوئی طریقہ نہیں، لیکن اب آئیں ہم اس کی مدد سے انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس نے انہیں لکھوایا ہے۔ ان چار الفاظ کی وضاحت کرنے کی ہم اس طرح سے کوشش کریں گے کہ لوگ انہیں سمجھ پائیں۔ اب ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہمارے سامنے سب سے پہلے صلیبی موت ہے، جو بہت زیادہ مقدس جگہ پر دی گئی، بہت زیادہ مذہبی لوگ، بہت زیادہ شرمناک موت، سب سے زیادہ قیمتی شخص کو دی گئی۔ ہو یہ کیسی مخالفت ہے، میرے خدایا، ہو میرے خدایا، یہ کیسی شرمناک موت ہے۔ اب آئیں ہم سب سے پہلے اس لفظ کو لیتے ہیں، وہاں آئے ہم اس سے پہلے کے الزام لگائیں، اس لفظ کو چند منٹوں کے لیے دیکھتے ہیں، ہم اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ وہ وہاں کیا کر رہے تھے، تب ہی ہم سمجھ سکیں گے کہ میرا الزام ٹھیک ہے یا نہیں۔ وہاں یروشلم، جو سب سے زیادہ مقدس اور پاک جگہ تھی، کیونکہ وہاں ہیکل تھی، وہ سب سے زیادہ مقدس اس لیے تھی کیونکہ وہاں ہیکل موجود تھی، اور پوری دنیا سے یہودی اس مقام پر اکٹھے ہوتے تھے تاکہ ایک اجلاس کی صورت میں عبادت کرے۔ सबसे बड़ा मकाम जहां इबादत की जाती थी वो यरूशलम था, क्योंकि वहां हैकल थी। जैसा कि लिखा है, सब लोगों को यरूशलम में इबादत करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो इबादत का मरकज था। और आज आप लोगों को कहता सुनते हैं, और कोई एक इनमें से कहना पसंद करता है, ओ, हम इस बड़ी कन्वेंशन में आए हैं जहां ये सारी तंजीमें इकट्ठी हुई हैं, और फिर हम देखते हैं इसका इफ्तिताह हुआ वेटिकन सिटी में होता है, और जहां पोप और वगैरह वगैरह की मखसूसियत होती है। और फिर वो या हर कोई कहता है हमें मेथोडिस्ट की इबादत में जाना चाहिए, या फिर बाइबल बैप्टिस्ट कन्वेंशन में जाना चाहिए, या हम सबको रोम जाना चाहिए, और ऐसे ऐसे मकामात को तो वो मसीहत का मरकज समझते हैं। पिछले वक्त की जंग में जिसमें रोम को शिकस्त हुई थी, तब उन जर्मन सिपाहियों ने, जिनके बारे में आप नौजवान जानते हैं, वो जर्मन सिपाही वेटिकन सिटी में दाखिल हो गए थे और आगे बढ़ते हुए उन्होंने अमरीकी लोगों पर गोलियां चला दी। भाई फंग, भाई रॉबर्टसन और भाई बीलर और बहुत सारे भाई हैं, और इनके अलावा और भी बहुत सारे भाई हैं जो उस जंग के बारे में जानते हैं। और आप जानते हैं क्या हुआ, हमने ये अहकामात जारी किए थे कि वो उस शहर पर गोली नहीं चला सकते। अमरीकी लोग, आप अगर वहाँ खड़े होते तो वो आपको निशाना बना सकते थे, मगर वेस्ट मिनिस्टर एबे पर, जो इंग्लैंड में है, आप उस पर गोली चला सकते हैं। ये ठीक है, इसलिए कि वहाँ प्रोटेस्टेंट इकट्ठे होते हैं और उन पर गोली चलाना ठीक है, मगर वेटिकन पर गोली नहीं चला सकते। क्योंकि मैं सदर रोजवेल्ट, मैंने उसका खिताब सुना था जब उसने वो उस रात नशर किया था, उसे फायर साइड टॉक पुकारा गया था। उसने कहा, जब रोम को शिकस्त हुई, उसने कहा, कितनी शर्म की बात है, क्योंकि रोम सारी मसीहत का सरबराह है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक प्रोटेस्टेंट आदमी ऐसा कह सकता है? पस मसीह मजहब का अजीम मरकज, ठीक है, हम जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो हम यरूशलम की जगह इसे रखने जा रहे हैं। अगर आप ऐसा करना पसंद करें तो हम रोम को यरूशलम की जगह रख लेते हैं। ये बाकी सबका सरबराह था, और सनहेड्रिन और फरीसी और सदूकी और सभी वहाँ यरूशलम में जाते थे। वो वाकई ही हेडक्वार्टर था, और तंजीमी जिंदगी में ये पाया जाता है। और आपको मानना होगा कि रोमन कैथोलिक चर्च इन सबकी माँ है, यकीनन है। इसका आगाज पेंटिकोस से हुआ था, क्योंकि वहीं से ये शुरू होकर बाद में मुनज्जम हो गए थे। अब हम प्रोटेस्टेंट तो इस चर्च की बहनें हैं, और अब हम कहेंगे कि आज वेटिकन में भी ऐसा ही है, वहाँ यरूशलम में जैसा था, जैसा उस वक्त था जब सब लोग यरूशलम में इबादत के लिए इकट्ठे हुआ करते थे। यीशु के जमाने में उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो ऐसा क्यों कहते थे कि सभी लोगों को इबादत करने के लिए यरूशलम जाना चाहिए? क्योंकि एक ही जगह है जहां खुदा लोगों से रफाकत करता है, और वो है कुर्बानी के लहू के नीचे। यही वजह थी कि उन्हें यरूशलम में आना पड़ता था। खुदा इंसान से कभी नहीं मिलता जब तक वो लहू के नीचे नहीं आता। जब आप लहू का इनकार करते हैं तो खुदा से मुलाकात के मकाम से आप दूर हो जाते हैं। खुदा ने अपना पहला फैसला बागे अदन में किया था कि इंसान उसकी इबादत कुर्बानी के बहाए गए खून के नीचे करेगा, और तब से वही एक जगह है जहां खुदा इंसान से मिलता है, और वही सिर्फ एक जगह है जहां खुदा कभी इंसान से मिला है, और फक्त एक ही जगह है जहां वो इंसान से आज भी मुलाकात करता है, वो कुर्बानी के बहाए गए खून के नीचे है। समझे, मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट या प्रेसबिटेरियन है। अगर आप अपने अपने इख्तलाफात को भूल जाएं, रोमन कैथोलिक या आप कोई भी हो, अगर आप बहाए हुए खून के नीचे आ जाएं, तो खुदा हम दोनों से वहाँ मिलेगा। ये वही जगह है जहाँ हम सभी मिल सकते हैं, और उसी जगह पर हम रफाकत कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो आपसे इसलिए नहीं मिलेगा कि आप एक मेथोडिस्ट हैं, आप एक पेंटिकोस्टल हैं, इस वजह से वो आपसे मुलाकात नहीं करेगा। वो आपसे एक शर्त पर मिलेगा, और वो शर्त है बहाया हुआ लहू। जब आप अपने गुनाहों का इकरार कर चुके होते हैं और उसकी हजूरी में उन्हें साफ कर चुके होते हैं, तो ये लहू के वसीले से ही होता है, और लहू हमेशा उसके सामने रहता है। इसलिए वो आपको सिर्फ बहाए गए लहू ही से देखता है। और गौर करें, गुनाह का इकरार करने के बाद आप बर्फ की मानिंद सफेद हो जाते हैं, वरना आपकी वहाँ तक रसाई नहीं हो सकती और आप रफाकत नहीं कर सकते। यही वजह है कि आप बहुत सी बातों को कलीसियों में होते हुए नहीं देख पा रहे। वो लहू पर ईमान तो रखते हैं, मगर उस लहू को हासिल करने के मंसूबे को रद्द करते हैं जो कि कलाम है। समझे, सिर्फ एक ही तरीका है। इसलिए खुदा सिर्फ उस कलाम की कदर करता है। अगर आप आकर कहते हैं मैं एक रोमन कैथोलिक हूँ, तो आप कभी भी उसके कलाम की इज्जत नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ उसके कलाम की इज्जत की जाए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंटिकोस्टल बनकर आप ऐसा नहीं कर सकते। एक तरीका है जिससे आप ये कर सकते हैं और वो है खुदा का फजल और उसके रहम के नीचे रहना और यीशु मसीह के बहाए गए खून के वसीला से आना और कहना, खुदावन मैं आपके वादों का दावा करता हूँ, समझे। और फिर अगर आप वाकई उस लहू के नीचे आ जाते हैं तो फिर खुदा अपने कलाम का पाबंद होता है, मगर पहले आपको उस लहू के नीचे आना है। क्या अब आप इसको समझ गए? कोई तजुब नहीं कि वो मौजज़ात पर ईमान नहीं रखते। कोई तजुब नहीं कि आप मफूकल फितरत पर ईमान नहीं रखते। कोई हैरत नहीं कि वो इसे रद्द कर देते हैं। जिस सबब से उन्होंने पहले इसे रद्द किया था उसी सबब से इसे आज रद्द कर रहे हैं। वो मुजरिम है उतने ही जितने वो मुजरिम थे, क्योंकि बहाए गए लहू के नीचे आना जरूरी है। और वो जो ऐसा करने की जुरत करेंगे, कोई भाई जो फरोतनी से खुदा के कलाम को थामने की जुरत करे और वहाँ जाकर अपने गुनाहों का इकरार करे और बाकी सब रस्म और रवाज और दूसरी चीजों को भूल जाए और वहाँ लहू के नीचे खड़ा होकर ईमान रखे, फिर ऐसे शख्स को वो कहते हैं वो पागल है। वो ऐसे शख्स को इस तरह गिनते हैं। हम इसे यूँ कहेंगे, ऐसा लफ्ज पुलपट से कहना मुनासिब नहीं है, मगर मैं फिर भी कहूँगा ताकि आप समझ सके। वो कहते हैं वो कोई अनोखी चीज है। क्या एक तरह से हम सब अनोखी चीज नहीं है? देखे, ईमानदार गैर ईमानदारों के लिए अनोखी चीज है और बेईमान ईमानदारों के लिए एक अनोखी चीज है। बस फिर कौन अनोखी चीज है, समझे? एक बिजनेसमैन के लिए एक किसान अनोखी चीज है, एक किसान के लिए बिजनेसमैन अनोखी चीज है, समझे। बस वो जो कोई भी है किसी भी तरह से अनोखी चीज है। मैं आपसे कहता हूँ, निजात किसी भी इंसान का जाती मामला है जो खुदा और इंसान के दरमियान है। एक शख्स इंफरादी तौर पर डरते और कामते हुए अपनी निजात की तलाश करता है और आज सुबह एक मसीह का खादम और उस्ताद होते हुए मैं किसी दूसरी चीज को बुनियाद नहीं बना रहा। मैं तो सिर्फ कलाम ही पर बुनियाद रख रहा हूँ। मैं अपनी बात किसी और चीज पर नहीं रख सकता। अब हम देखते हैं कि वहाँ तब खुदा इबादत करने वाले को सिर्फ लहू के नीचे ही मिला करता था, इसलिए वो यरूशलम में मिलते थे। और मसीह खुदा का मुहैया करदा कुर्बानी का बर्रा है और आज सिर्फ एक ही जगह है जहां खुदा इंसान से मिल सकता है और वो है यीशु मसीह के लहू के नीचे आना। इसके अलावा वो हर जगह को रद्द कर देगा और खुदा आपकी कभी नहीं सुनेगा। आप चाहे कितने भी जोश में आए या तरीके अपनाएं, कितना ही उछलें और हलाएं जलाएं और आग धुआं खून रखें या कुछ भी रखें, जब तक आपका जीवन कलाम के नीचे नहीं है और खुदा अच्छी तरह से उस जिंदगी की शिनाख्त नहीं कर लेता, फिर इन बातों की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कलाम से बाहर हैं और खुदा तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आप उस लहू की देखभाल के नीचे नहीं आ जाते। ये सच है। बस आप देख सकते हैं, कलाम में हमें एक यरूशलम दिया गया है जो कलीसिया के पास है। वो आसमान पर है, एक आसमानी यरूशलम है जहां खुदा को खुदा माना जाता है। और आज ऐसा नहीं है हम कुछ रसूमात या कुछ और चीजें लेकर यरूशलम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं, मेथोडिस्ट वाले चाहते हैं कि अब मेथोडिस्ट के हेडक्वार्टर को यरूशलम बनाया जाए। कैथोलिक रोम को बनाना पसंद करेंगे और जहां भी हमारे हेडक्वार्टर है हम उन्हीं जगह को यरूशलम बनाना पसंद करते हैं। मगर बाइबल यूं फरमाती है कि हमारा यरूशलम ऊपर है जो कि सब ईमानदारों की माँ है। अब देखे, मसीह खुदा का मुहैया करदा बर्रा है। गौर करें, अब ये किस तरह मुनासिब जाहिर किया गया है कि यरूशलम खत्म हो रहा है। कब? उस वक्त तक जब तक ये अंजाम पजीर ना हो। बरे का लहू उस वक्त तक तो काम का था, मगर सलीब दिए जाने के बाद हालात बदल गए हैं। पुराना निजाम खत्म हो गया और नया आ गया और बरा कुर्बान होने के लिए आ गया। बरा कुर्बान होने वाला बरा जमीन पर खड़ा हुआ था। वो उसे रद्द कर रहे थे और वही कुछ कर रहे थे जो उन्हें करना था। ये सच है। खुदा मुबारक है जिसने इन आखिरी दिनों में उस शानदार आसमानी नूर को जाहिर किया है, क्योंकि कलीसियाएं आज भी वैसे ही काम कर रही हैं। उस वक्त तक जब तक तंजीमी मजहब रद्द नहीं किया जाता और मसीह के कलाम को कुर्बानी देने वाला साबित नहीं किया जाता, क्योंकि तब से कलाम और सिर्फ कलाम ही आया है। जब से वो पुराना फसा का बरा चला गया है और मसीह सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद से हमारा बरा बन गया है, और जिस दिन से इन तंजीमों ने खुदा के कलाम को मसलूब किया है और उसकी जगह अपने अकीदों और रसूमात को रख लिया है, उसी दिन से कलाम अपने मुकम्मल असर के साथ उतर आया है। ये फक्त हाल ही में हुआ है। दूसरी बात पर ध्यान दें। पहली बात वहाँ यानी यरूशलम, दूसरी बात उन्होंने, किन लोगों ने, यहूदियों ने जो इबादत करने वाले थे, जरा इस पर गौर करें, इबादत करने वाले खुद उसी को कत्ल कर रहे थे जिसकी इबादत करने का वो दावा कर रहे थे। क्या आप ऐसे जहीन आदमियों और काहिनों से इस बात का तसव्वुर कर सकते थे? उनके पास डॉक्टर की डिग्रियां थी और तरबियत याफ्ता थे, और जब तक गालबन बल्कि उनका किसी खास नस्ल से होना जरूरी होता था, पहले उन्हें बल्कि एक खास कबीले से होना था इससे पहले कि वो काहिन बनते। उनका लावियों से होना जरूरी था। उनके बाप काहिन थे, उनके दादा काहिन रहे थे, उनके दादा 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 के परदादा भी काहिन रहे थे, और उन्हें इतनी पाक जिंदगी गुजारनी पड़ती थी कि उनके अंदर एक धब्बा भी पाया जाने पर उनको संसार किया जाता था, उन पर कोई रहम नहीं किया जा सकता था। यकीनन पाकीजगी थी, मगर वो पाकीजगी उनकी अपनी बनाई हुई थी। उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ता था ताकि वो अपनी कलीसिया को मुंह दिखा सके, मगर वो अंदर से, यीशु ने कहा था, तुम अंदर से मुर्दा हड्डियों से भरे हुए हो। इस तरह मैं यहाँ ठीक फर्दे जुर्म लगा सकता हूँ उस आदमी पर जो ये जानता है कि ये सच्चाई है और ये कलाम सच्चा है, और फिर भी इस पर समझौता करता है ताकि अपना मुंह अपनी तंजीम को दिखा सके। मैं उन पर फर्दे जुर्म लगाने के लिए ठीक, मुझे खुदा के कलाम से यह हक हासिल है। गौर करें, उन्होंने इबादत करने वाले जो आदमी वादे के मुंतजिर थे, वो आदमी जो काफी सालों से और जमानों से उसकी राह देख रहे थे, और वो मुसलसल सेमिनरी के अलावा कुछ नहीं करते थे, और उन्होंने कलाम को सेमिनरी की तालीम के साथ तकसीम कर दिया था, और उन्होंने कलाम की सच्चाई को खो दिया था। उन्होंने, काहिनों ने जो उस वक्त के खादम थे, वहाँ अपने हेडक्वार्टर में उन्होंने, उस वक्त के खादमों ने बर्रे को बल्कि खुदा को कत्ल कर रहे थे। उसी एक को जिसको वो कत्ल कर रहे थे, उसी की इबादत का वो दावा कर रहे थे। और आज मैं इन मखसूस किए हुए खादमों पर इल्जाम लगाता हूँ, ये लोग अपने अकीदों और तंजीमों में लोगों के लिए ये उसी खुदा को मसलूब कर रहे हैं जिसकी मोहब्बत और खिदमत का दावा करते हैं। मैं खुदावन यीशु के नाम में इन खादमों पर इल्जाम लगाता हूँ, इनकी तालीम पर जो वो दावा करते हैं कि मौजज़ात के दिन गुजर गए हैं, और ये कहते हैं कि पानी का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में काफी नहीं है बल्कि गलत है, इस सब कलाम पर जो इन्होंने रसूमात में तब्दील कर दिया है, मैं इन पर इल्जाम लगाकर मुजरम ठहराता हूँ, क्योंकि खुदावन यीशु को दोबारा सलीब पर चढ़ा रहे हैं। मैं कहता हूँ यीशु मसीह का खून इनके हाथों पर है। लोगों के लिए ये मसीह को मसलूब कर रहे हैं, और इस चीज से इन्हें महरूम कर रहे हैं जो इन्हें मिलनी चाहिए, और इसकी जगह वो इन्हें कुछ और दे रहे हैं, बल्कि अपनी मकबूलियत के लिए कलीसिया को रसूमात दे रहे हैं। वहाँ उन लोगों ने, उन्होंने जिनको बेहतर जांचकारी होनी चाहिए थी, अगर किसी को बेहतर जांचकारी होनी चाहिए थी तो वो खादम ही होने चाहिए थे, अगर किसी को कलाम की बेहतर समझ होनी चाहिए तो वो आज के पादरी ही होने चाहिए। अगर किसी को बेहतर समझ होनी चाहिए तो वो बिशप, आर्च बिशप और खादम और इल्मे अलायत के डॉक्टर ही होने चाहिए, मगर ये क्यों नहीं समझते? हो, ये कैसा इख्तलाफ है? आज हमारे सामने इख्तलाफ के अलावा कुछ भी नहीं है। वो लोग दावा करते हैं कि वो खुदा की इबादत कर रहे हैं, मगर वो जिंदगी के शहजादे को कत्ल कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ, उन्होंने उसे सलीब दी, और आज फिर वो वही कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो कलाम है। वो क्या है? सिर्फ कलाम की अकासी, और आज भी वो कलाम की अकासी ही है, और वो कोशिश कर रहा है कोई ऐसा मिले जो उस कलाम की अकासी करे। और ये लोग जमात को खुदा से दूर कर रहे हैं, और अगर कुछ होता है तो ये कलीसिया में बताया जाता है, तो ये लोग प्लेटफॉर्म से उसे रद्द कर देते हैं और मंबर से कहते हैं ये जुनूनी है, इनसे दूर रहो। ऐसा करने से ये 1963 में यीशु मसीह को दोबारा मसलूब कर रहे हैं, और अब ये इतने ही कसूरवार हैं जितने कि उस जमाने के लोग थे یہ خطرناک بیان ہے مگر یہ سچ ہے، لیکن یہ ٹھیک ایسا ہی کر رہے ہیں، اور اس بنیاد پر، مسیح کو مصلوب کرنے کی بنیاد پر، کلام کو چھین لینے کی بنیاد پر اور اسے لوگوں سے دور رکھنے کی بنیاد پر، یہ بالکل ویسا ہی کر رہے ہیں جیسا تب ہو رہا تھا۔ خدا اپنے کلام کو اپنے بیٹے سے ظاہر کر رہا تھا اور اسے ثابت بھی کیا، اور وہ وہی تھا جس کے پیار کا وہ دعویٰ کرتے تھے۔ وہ یہوہ جس نے اپنے آپ کو کلام میں ظاہر کیا تھا، اس کے بارے میں جیسا خدا نے کہا تھا وہ ویسا ہی کرے گا، بالکل جیسا خدا نے کہا وہ ویسا ہی کرے گا، اور ان کے سامنے اسے ظاہر کر دیا تھا۔ مگر اپنے کلیسیائی گروہوں اور ایسی ہی چیزوں کی خاطر انہوں نے زندگی کے شہزادے کو رد کر دیا، اور میں آج اس گروہ کو رد کرتا ہوں اور ان پر الزام لگاتا ہوں خدا کے کلام کے سامنے، خدا کے کلام کے ذریعے انہیں قصوروار ٹھہراتا ہوں، کیونکہ یہ ویسا ہی کام کر رہے ہیں۔ اس نسل پر فرد جرم عائد ہوتی ہے، عبرانیوں 13:8 کے مطابق۔ یاد رکھیں، وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ انہوں نے کیوں اس پر الزام لگایا؟ کیونکہ ان کے عقیدوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا، اور اپنے اپنے دل میں ان کے خیال مختلف تھے۔ کیا مقدس یوحنا کے 30 باب میں نیکودیمس نے اچھی طرح اظہار خیال نہیں کیا؟ اے ربی، ہم فریسی، منات اور استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ کوئی ان کاموں کو نہیں کر سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ دیکھا، انہوں نے اپنے ایک مشہور آدمی کے ذریعے لوگوں میں گواہی دی، اور اسی سبب سے، بلکہ انہوں نے اپنے عقیدوں کی وجہ سے مسیح کو مصلوب کیا۔ اور آج کوئی بھی نہیں ہے جو ایمال 2:38 کو نہ پڑھ سکتا ہو جس طرح میں اسے پڑھ سکتا ہوں، اور اس طرح باقی کلام کو بھی جس طرح سے میں پڑھ سکتا ہوں۔ لیکن وہ اپنے عقیدوں اور اپنے تنظیمی نشانوں اور رفاقتی کارڈ کو، جو کہ حیوان کی چھاپ ہے، اپنی جگہوں میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو لیتے ہیں، اور وہ یسوع مسیح کو دوبارہ مصلوب کرتے ہیں، اور اسے لوگوں کے سامنے مصلوب کرتے ہیں، اور خدا کے خلاف کفر بکتے ہیں جس نے یہ وعدہ کیا تھا۔ اس طرح وہ اپنی نسل پر عذاب لاتے ہیں، اب دیکھیں، وہاں انہوں نے اس کو جو گناہگار نہیں تھا، انہوں نے جو کہ اس وقت کی کلیسیا تھی، انہوں نے اس شخص میں کوئی غلطی ڈھونڈی جو کہ کلام تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے اس آدمی میں غلطی نکالی جو کلام تھا۔ اب وہ اس کلام میں غلطی نکال رہے ہیں جو انسان کے ذریعے کام کر رہا ہے۔ دیکھیں، آج وہ اس کے برعکس ہے، لیکن آج کے انسان کے اندر یہ رلکس ہے جو کام کر رہا ہے، یہی خدا کی تائید ہے۔ وہ کس طرح جان سکتے تھے کہ وہ مسیح تھا؟ اس کے کام ثابت کرتے تھے کہ وہ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا، تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ کیا میں نے ویسا نہیں کیا جیسا کلام فرماتا ہے میں کروں گا؟ اور کہا، کوئی شخص مجھے بتائے کہاں میں ناکام ہوا ہوں؟ کیا میں نے ہر نشان نہیں دکھایا؟ میں مسیحا ہوں، میں وہی شخص ہوں جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا۔ کہا، انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہمارے پاس موسیٰ ہے، ہم موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یسوع نے کہا، اگر تم نے موسیٰ کا یقین کیا ہوتا تو میرا بھی یقین کرتے۔ اگر تم، موسیٰ نے میرا دن دیکھا اور اس دن میں رہنے کی خواہش کی، موسیٰ نے اور نبیوں نے بہت دور سے مجھے دیکھ لیا تھا، اور آج تم اسی وقت میں رہ رہے ہو اور انکار کر رہے ہو۔ اس نے کہا، تم ریاکار ہو۔ کہا، تم آسمان کے نشان سمجھ سکتے ہو مگر وقت کے نشان کو نہیں پہچان پاتے۔ یہی بات وقت کا نشان ہے۔ انہوں نے اسے کہا ایک جنونی، ایک پاگل۔ ہاں، انہوں نے اس آدمی میں غلطی نکالی جو کہ کلام تھا، وہ کلام تھا۔ مقدس یوحنا کا 1 باب اس کو ثابت کرتا ہے، ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ وہ خدا کا زندہ کلام تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ سے خدا کو ظاہر کر رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر خدا کے تابع رہا، یہاں تک کہ وہ اور کلام ایک ہی تھے۔ اور آج کلیسیا کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کا کلام یکساں ہے۔ آپ کیسے کلام کا حصہ ہو سکتے ہیں جبکہ عملی طور پر آپ سارے کلام کا انکار کرتے ہیں؟ اور ایسا کرنے کی وجہ کیا لوگ نہیں ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ میں ان لوگوں کو بھوسے کا ڈھیر اور سوکھی ہڈیاں کہہ کر پکاروں۔ یہ ان خود غرض تنظیموں کی وجہ سے ہے جنہوں نے لوگوں کی زندگی کو ایسا بنا دیا ہے جیسا وہ ہے۔ انہوں نے سچائی کو صلیب دے دی ہے، اور لوگ اسے کفر کے نام سے پکارتے ہیں، بلکہ انہوں نے اسے کفر قرار دے دیا ہے۔ وہ سچائی کو پاگل پن اور وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں، اور نہیں جانتے کہ وہ اس خدا کے خلاف کفر بک رہے ہیں جس کی خدمت کرنے وہ چرچ میں جاتے ہیں۔ اس لیے میں آج ان پادریوں پر الزام لگاتا ہوں، میں خدا کے کلام کے اختیار سے یسوع مسیح کے نام میں اس نسل پر الزام لگاتا ہوں کہ آپ اسے دوبارہ مصلوب کر رہے ہیں۔ गौर करें, वो कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। खुदा का कलाम एक आदमी में जाहिर हुआ, दो सलीबों और उनके इल्जामों का मुवाजना करें। याद रखें, क्योंकि ये अपने आप को खुदा बनाता है, हम इस आदमी को अपने ऊपर हुकूमत नहीं करने देंगे। जब उन्होंने यीशु को मसलूब किया तो उस नस्ल को उस सुबह कौन सा इल्जाम मिला? यही कि वो अपने आप को खुदा बनाता है। वो खुदा था और उसने सब्बत को तोड़ा, वो तो सब्बत का मालिक था। उन्होंने उसे इसलिए रद्द किया क्योंकि वो अपने आप को खुदा बनाता था। वो कहते थे, ऐसा कहने का कोई हक नहीं तुझे, हमारा सरदार काहिन है, अगर कुछ आना है तो वो हमारे काहिनों के वसीले ही आएगा। अब इसको आज की कलूरी से मिलाकर देखें। जब खुदा यानी बाप बहुत ज्यादा खुश हुआ तो खुदा यानी रूह ने अपने बेटे को पैदा किया। जब रूल कुछ ने मरियम पर साया डाला तो उससे एक बदन ने जन्म लिया जो उसकी खिदमत कर सके और उसके मकसद को पूरा कर सके। तो वो खुदा मसीह में आ गया, अलुहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम हो गई, ताकि लोगों में उसकी अकासी करे कि खुदा क्या था, ताकि पूरी दुनिया को मालूम हो जाए कि खुदा हर एक शख्स को इंफरादी तौर पर एक बेटा और बेटी बनाना चाहता है। उसने एक आदमी को लेकर ये कर दिया, और क्योंकि उसने उनके तंजीमी ओदों के साथ नाता नहीं जुड़ा था, इसलिए उन्होंने उस पर इल्जाम लगाकर सलीब पर चढ़ा दिया। अब उस कलवरी का मुवाजना आज से कीजिए। तंजीमी तसुब की वजह से उल्मा कराम बेहिस है, जबकि इन्हें खुदा के कलाम और मनसूबा बंदी को जानना चाहिए था। इसी सबब से खुदा लोगों के एक छोटे से गल्ला को ले लेता है और इसी तरह काम करता है और अपने आप को जाहिर करता है। और जो लोग कलाम के लिए अपने आप को फरोतन बनाते हैं, वो ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि खुदा ने ये काम नहीं किया है। उनकी जमात इन बातों की गवाही देती थी, उनके सामने ये काम हुए थे, वो इनका इनकार नहीं कर सकते थे, वो उसके दावे का इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि ठीक वही कलाम जो उन्होंने कहा था और जिस पर वो ईमान लाए थे, उसी कलाम ने उसको साबित किया था। और खुदा ने कलाम को लिया जो मसीहा बनकर आया और उसे एक आदमी के जरिए जाहिर किया, और उन्होंने उससे पीछा छुड़ाना चाहा ताकि वो अपने अपने रास्ते पर चलते रहे। इसलिए उन्होंने मसीहा से पीछा छुड़ाया, उन्होंने अपनी तालीम से कतई नजर, अपनी जहालत और अंधेपन की वजह से ये किया। दुनियावी नुक्ता नजर से कहा जाए तो वो होशियार और समझदार थे, जैसा कि हमने एक रात इसका मुवाजना किया था। जब उस नौजवान अमीर आदमी पर रोशनी चमकी तो उसने क्या किया? उसने उसे रद्द कर दिया क्योंकि वो होशियार आदमी था। लेकिन एक और जहीन आदमी पलूस भी था, जब उस पर नूर चमका तो उसने क्या किया? उसने उसे कबूल कर लिया। मसीह को जानने के लिए उसने अपना सारा इल्म भुला दिया और उसकी जिंदगी अंजील के लायक बन गई। गुजरे इतवार की रात यही पैगाम था। आज यहाँ ऐसा ही है। हो सकता है कोई आदमी हो जिसने खुदा की बुलाहट को महसूस किया हो और किसी सेमिनरी में जाके उनके अकीदे सीख लिए हो। उसके लिए जरूरी है कि उन अकीदों के साथ चले या फिर उनकी रफाकत को छोड़ दे। अगर वो उनकी रफाकत छोड़ देता है तो फिर वो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। उसको फिर कोई अपने पास नहीं बुलाता क्योंकि वो पहले जिनके साथ था उनको छोड़ चुका है, और लोग समझते हैं इस आदमी में खराबी है, और फिर वो उसे अपनी जमात में नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि उनकी जमात तो सिर्फ एक ही बात देखना चाहती है कि क्या इसका अकीदा हमारे अकीदे के मुताबिक है, बशर्ते कि उसके पास एक कार्ड होना चाहिए। बिलफर्ज वो एक मेथोडिस्ट है, अगर उसके पास कार्ड है हो सकता है वो किसी दूसरी रफाकत से मुंसलिक हो, या एक वदानियत, या एक तसलीसी, या एक चर्च ऑफ गॉड, या जो कोई भी हो, या पेंती कोस्टल का कार्ड हो, या इन सब में से किसी का कार्ड होना चाहिए। अगर उसके पास कोई ऐसा कार्ड होता है तो तब वो मानते हैं कि हेडक्वार्टर ने इसे देख कर पास कर दिया है, और उन्होंने इसे परख लिया है, और एक दिमागी माहिर ने इसे चेक कर लिया है, और इसका IQ भी देख लिया है कि वो उनके सामने काफी अच्छा बोल सकता है, और अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर वो उसे भगा देते हैं। ये सच है। लेकिन आप देखें, कलीसिया को ये देखना चाहिए कि उस पर खुदा का हाथ है या नहीं है। ये देखना चाहिए खुदा ने उसे मखसूस किया है या नहीं किया, और यही है जो हमें देखना चाहिए। मगर आज वो खुदा के बेटे को दोबारा मसलूब कर रहे हैं। जब कोई शख्स खुदा के फजल के जरिए इस लायक हो तो वही खुदा का बुलाया हुआ होता है, ताकि खुदा खुद उसके जरिए अपने आप को जाहिर करे। उसने कहा, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। गौर करें, हम कैसे दिनों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज सुबह हम कह सकते हैं वही सलीब उसी सबब से आज भी दी जा रही है। अब देखें, उन्हें पता था कि वो सच्चाई है, मगर हसद और नफरत की वजह से उन्होंने ऐसा किया। क्या यीशु ने उन्हें ये नहीं कहा था, अगर मैं खुदा की कुदरत से बद्रोहों को निकालता हूँ तो फिर तुम उन्हें किसकी कुदरत से निकालते हो? देखें, अगर मैं खुदा की कुदरत से बद्रोहों को निकालता हूँ तो तुम ही इसका इंसाफ करो। अब आप उन्हें ये कहते सुनते हैं, क्या तू साबित कर सकता है कि तू ये खुदा की कुदरत से कर रहा है? मैं उसको जानना चाहूंगा, मैं उस सवाल को सुनना चाहूंगा जो उन्होंने उससे पूछा। वो सवाल पूछने में बहुत तेज थे, गौर करें, क्योंकि वो अपने आप को खुदा कहता था और वो खुदा था, और वो कहते थे हम इसे अपने ऊपर हुकूमत नहीं करने देंगे। लेकिन आज भी वही पुरानी बात है फिर से कही जा रही है। वो कहते हैं बाइबल इंसान ने लिखी है, हमें इसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी नहीं चाहिए, मगर ये तो खुदा है, ये खुदा का कलाम है, ये खुदा खुद है। मैं कल एक आदमी से बात कर रहा था, उसने कहा जरूर ये बाइबल किसी इंसान ने लिखी होगी। मैंने कहा जी हाँ, जरूर किसी इंसान ने लिखी है, उसका नाम हम जानते हैं और उसका नाम है खुदा। इसको अय्यूब की किताब से लेकर नए अहदनामे तक सारे कलाम को तकरीबन 4000 सालों में लिखा गया है, और सैकड़ों बरसों में ये सैकड़ों अलग अलग बरसों में लिखा गया है, और ये मुख्तलिफ आदमियों के वसीले लिखा गया है जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, और मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों में लिखा गया है, और इसका एक लफ्ज भी दूसरे लफ्ज को नहीं काटता। मैं चाहता हूँ कोई भी यीशु मसीह के खून के नीचे आने की जुरत करे और इसमें किसी वादे का दावा करे, खुदा उसको पूरा करने का पाबंद है। मगर लोग ऐसा करना नहीं चाहेंगे, वो आकर ये कहेंगे ऐ खुदावंद मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे बड़ी नेमत दे दे, हालेलुया, खुदावंद खुदा को जलाल मिले, मेरा ईमान है, मुझे ये मिल गया है, हालेलुया। ऐसे काम नहीं चलेगा, आप चाहे इसमें जितना भी नफ्सियाती जोर लगा ले मगर ये काम नहीं करेगा। खुदा आपकी तौबा को पहले परखता है, खुदा ऐसा करता है। इस बारे में हम बहुत सारी बातें कह सकते हैं, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए हैं। अब देखें, वो आज भी अपने ऊपर कलाम को हुकूमत नहीं करने देंगे। मैं कहता हूँ आप में से हर कोई वापस मुड़े, क्योंकि आपका बपतिस्मा गलत हुआ है, आपको कैथोलिक कलीसिया वाला बपतिस्मा दिया गया है। आप कौन होते हैं हमें ये बताने वाले? ये मैं नहीं, ये कलाम है। मगर मैं तो आपको बताता हूँ कि हम कलाम पर ईमान रखते हैं, मगर मुझे परवाह नहीं आप क्या ईमान रखते हैं, ये तो वो है जो बाइबल कहती है, मगर हम इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना नहीं चाहते। आपको कुछ करना है तो इसके मुताबिक करें, वरना आप बाइबल की अदालत के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि जो कोई इसमें से एक लफ्ज घटाएगा या एक लफ्ज इसमें से बढ़ाएगा तो उसका हिस्सा किताबे हयात में से निकाल दिया जाएगा, चाहे वो खादम हो, पादरी हो या जो कुछ भी हो। आपको इस कलाम की हुक्मरानी में आना है, क्योंकि ये खुदा है, बाइबल फरमाती है ये खुदा है। वो कहते हैं मगर हम इसे अपने ऊपर हुकूमत नहीं करने देंगे, वो अपनी तंजीमों के अकीदों को थामे हुए हैं, ये उन छोटी छोटी बातों को पकड़ बैठे हैं और उन पर ईमान रखते हैं जो इंसानी कौंसिल ने मुकरर की है, और खुदा के कलाम की बजाय उनको ले रहे हैं। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक कातिल बराबा को चुन लिया था। पहली मसलूबियत के दिन उन्होंने खुदा के बेटे की बजाय एक कातिल को चुन लिया था, और आज भी ये किसी इंसान की बातों को चुन रहे हैं जो कि झूठ है और मौत का रास्ता है, और जिंदगी के रास्ते को रद्द कर रहे हैं जो कि खुदा का कलाम है। मैं इस नस्ल को पापी ठहराता हूँ और खुदावंद के कलाम में से इन पर फर्दे जुर्म लगाता हूँ, क्योंकि ये लोग गलती कर रहे हैं, ये कलाम को मसलूब करने के कसूरवार हैं, या कोशिश कर रहे हैं कि पाक रूह को मसलूब करें। ये हर जगह पर बेदारी को पुकार रहे हैं। जब कलाम लोगों में से होकर काम नहीं कर सकता तो फिर आपको बेदारी किस तरह मिल सकती है? मैं चाहूँगा कोई मुझे इस बात का जवाब दे, ये कैसे हो सकता है जब आप खुद आई हुई बेदारी का इनकार कर रहे हैं? नबी ने इनके बारे में ठीक ही कहा था, ये दीनदारी की वजह रखते हैं। उनके अपने रस्म और रवाज ने पीछे भी जिंदगी के कलाम को रद्द कर दिया था, और आज भी इनके अपने रस्म और रवाज ने इन बातों को रद्द कर दिया है जिनसे बेदारी आ सकती है। जी हाँ जनाब, इनके रस्म और रवाज और ये अकीदे हैं। वो अपनी तंजीम और अपने अकीदों को कलाम की बजाय लेते हैं, और इससे खुदा का कलाम मसलूब होकर लोगों के लिए बेअसर बन जाता है। जब वो खुदा के कलाम को बहुत वाजे देखते हैं, और फक जब ऐसा होता है तो ये वो है जिसका वादा खुदा ने किया था कि वो करेगा, और वो ये कर रहा होता है, और वो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और उससे दूर हो जाते हैं, यही तो कुफर है। और वो कलाम को मसलूब करने की कोशिश करते हैं, वो उसे स्लिप क्यों देते हैं? वो कलाम को मसलूब नहीं कर सकते क्योंकि वो खुदा को मसलूब नहीं कर सकते। उन्होंने सिर्फ उस बदन को मसलूब किया था जिसमें खुदा रहता था, यानी खुदा का बेटा। वो उस बदन को मार सकते थे मगर वो खुदा को नहीं मार सकते थे, और उस बदन को उस वक्त कुर्बान किया जाना था ताकि पहले से मुकरर शुदा बहुत सारे बेटे अब्दी जिंदगी पा सके। इन्हें तब ऐसा करना ही था, मगर अब वो ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कलाम जिंदा ही रहेगा। मगर वो क्या कर रहे हैं? वो ये किस सूरत में कर रहे हैं? फिर मुनाद साहब, आप क्या कह रहे हैं? किस तरह आप यहाँ अपने मंबर को तामीर कर रहे हैं कि वो इसे फिर मसलूब करे? वो अंजील के असर को लोगों से अपने अकीदों के जरिए मसलूब कर रहे हैं। यही मसलूबियत है कि लोग इन बड़े बड़े मुर्दा खानों में बैठे हुए हैं, जिन्हें तंजीमें और चर्चिस पुकारा जाता है, और अकीदे की लकीर खींची हुई है, और यहाँ तक खुदा के कलाम का इन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो इन बातों को रद्द कर देते हैं जिनके बारे में मसीह ने कहा था कि वो होंगी। ये बिल्कुल उनके अकीदे के मुताबिक नहीं होती है, और ना ही उसकी आमद यानी यस्सु की आमद उनकी सोच के मुताबिक हुई। वो ठीक उसी तरीके से आया जिस तरह से खुदा ने उसे भेजा, और वो ठीक कलाम के मुताबिक आया। इसमें हैरत नहीं कि उसने कहा, तूने ये बातें अकलमंदों और दानाओं से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। क्या आप समझ गए हैं? हो, वो कलाम के असर को मसलूब कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ बहुत सारे हवाले मौजूद हैं, मैं उनमें से शायद दो या तीन ही पढ़ सकूँ। वो उसे मसलूब कर रहे हैं। आप कहते हैं वो कलाम को कैसे मसलूब कर सकते हैं? यीशु ने कहा था वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। अब्रानियों 13:8। लोग कहते हैं इस तरह तो वो है, समझे? तो फिर ठीक है। और यीशु ने कलीसिया को आखिरी हुक्म ये दिया था और कहा था, सारी दुनिया में जाओ, मरकत 16, सारी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। सारी दुनिया, सारी खलक, और अभी तक तो आधी दुनिया में भी मुनादी नहीं हुई, और लाखों लोग हर साल मर जाते हैं जिन्होंने यीशु का नाम तक नहीं सुना होता। बस ये अभी भी सबके लिए हुक्म है, ये अभी तक खुदा का हुक्म है। सारी दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा, और जो ईमान लाएंगे उनके दरमियान ये मौजज़े होंगे। वो मेरे नाम से बदरुहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर ना पहुँचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो अच्छे हो जाएंगे। और लोग कहते हैं ये बातें तो उस जमाना के लिए थी, और वो ऐसा कहकर खुदा के हुक्म को बेअसर बना देते हैं, और वो कलाम के असर को लोगों के लिए मसलूब कर देते हैं। आमीन। पेंतिकोस के दिन पत्रस ने ये कहा, बादशाह की कुंजी के साथ जो यीशु ने उसे दी थी, जो कुछ तू यहाँ कहेगा वही कुछ मैं वहाँ कहूँगा। और पेंतिकोस के दिन उन्होंने पूछा कि हम रूह कुछ पाने के लिए क्या करें। वो लोग उससे शादमान हो रहे थे, मुख्तलिफ अमल देख रहे थे, मगर लोग उन्हें पागल कहते थे। लड़खड़ाना और उछलना और गिरना इस तरह लगता था जैसे मैके नशे में है। ये देखकर लोग कह रहे थे ये आदमी तो ताज़ा मैके नशे में है। मगर उनके दरमियान से एक आदमी उठ खड़ा हुआ जिसका नाम पत्रस था और जिसके पास बादशाह की कुंजियाँ थी, और उसने कहा, जैसा तुम सोच रहे हो ये मैके नशे में नहीं है, इमाल दो, अभी तो पहरी दिन चढ़ा है, ये नशे में नहीं है, बल्कि ये तो वो बात है जिसकी नबुवत की गई थी। देखे, वो एकदम कलाम में आ गया। उसने दिखाया कि पाक रू आज भी कलाम है, और खुदा का कलाम आज भी रुलकुस है, और जैसा योएल नबी ने कहा था कि ऐसा होगा, और शायद योएल 2:38 में है, खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना रूह सब आदमियों पर नाजिल करूंगा। उस नबी को सुने जो वहाँ खड़ा हुआ था, उसे देखे, वो ना डर वहाँ खड़ा था, उस झुंड पर फर्दे जुर्म लगा रहा था और उन्हें रद्द कर रहा था। उसने कहा, ये कलाम है, ये वो बात है जो नबी ने फरमाई थी, मैं अपना रूह सब लोगों पर अंडे लूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां नबुवत करेंगे, मैं अपने बंदों और बंदियों पर भी अपना रूह अंडे लूंगा, और मैं ऊपर आसमान पर निशान और जमीन पर आग और धुएं का बादल और अजायब दिखाऊंगा। कलाम ही से साबित किया गया कि ये कलाम है, और लोग उस पर हंसे और उसका मजाक उड़ाया गया, और वो लोग अदालत में डाले गए और उनका शहर जला दिया गया, और उन्होंने एक दूसरे के बच्चों को खाया, और आज वो लोग पूरी दुनिया में तितर बितर लोग हैं। इससे दिखाया गया कि पाक रूह आज भी खुदा का कलाम है जो इसे लाकर जिंदा बनाता है। यीशु मसीह एक इंसान था, खुदा इंसान में था, हालेलुया, वो खुदा का जहूर था, वो एक बदन में खुदा था, ताकि उस जमाने के लिए खुदा के कलाम को जाहिर करे, और वो नस्ल उस जमाने के खुदा के वादे को देख सके। और रूलकुस आज भी ठीक उसी रूप में है, खुदा का रूह इस लिखे हुए कलाम में है, और किसी शख्स को तलाश करता है ताकि इस जमाने में अपने आप को जाहिर करे, ताकि वो साबित कर सके कि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। मुकद्दस यूहन्ना 14:12, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे।
यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, समझे। वो मुसलसल अपने आप को जाहिर करने के तरीके को तलाश कर रहा है और लोग इस लायक नहीं बन सकते। लोग अपनी तंजीमों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, उनके अपने छोटे छोटे घोंसले हैं और वगैरह वगैरह, जिन्हें वो चर्चिस कहते हैं। बस वो खुदा की नहीं सुनेंगे, बस वो आज भी वैसा ही कर रहे हैं, यानी दोबारा उसे सलीब दे रहे हैं। पत्रस ने पैंतीकोस के दिन उसने कहा, तुम जो यहूदिया और यरूशलम के रहने वाले हो, कान लगाकर मेरी बातें सुनो, ये नशे में नहीं है। अगर तुम चुपचाप मेरी बातें सुनो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये क्या है। और फिर वो आगे बढ़ा और सारी बातें उन्हें समझाई। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। उन्होंने कहा, हम क्या करें कि निजात पा सके, इसको पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम मान गए हैं कि तेरी बातें ठीक है। उसने कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुछ इनाम में पाओगे, क्योंकि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है, जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। यही था जो उन्हें करना था, तौबा करनी थी और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना था। और आज रोमन कैथोलिक चर्च ने उस नाम की जगह बाप, बेटे और रूल कुश को रख दिया है। पाक ईशा की बजाय वो ये करते हैं कि एक पतला सा बिस्किट जुबान पर रखते हैं और सारी मैं प्रीस्ट पी जाता है और कहते हैं हम सब एक हैं। और पाक ईशा में वो पाक रू की बजाय पाक रोटी कहते हैं। और उनके पास बाप, बेटे और रूल कुश का एक तसलीसी बपतिस्मा है जो कि बाइबल में नहीं दिया गया। बाप, बेटे और रूल कुश का नाम तो खुदावंद यीशु मसीह है। और जब ये सारी बातें आप इस टेढ़ी नस्ल को दिखाते हैं, जैसा पत्रस ने कहा था, इस टेढ़ी कौम से अपने आप को बचाओ, जब आप उनको ये बातें दिखाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं हमारा चर्च इस तरह नहीं सिखाता, तब आप कसूरवार हैं। तब आप यीशु मसीह को मसलूब करने के कसूरवार ठहरते हैं, क्योंकि खुदा की कुदरत को लोगों से अलग करते हैं। आप कलाम को उनके लिए मसलूब करते हैं और आप अपनी कलीसिया के साथ इसे रद्द करते हैं। ये उनको मौत के फंदे में फंसा देता है। जैसा कि मैंने गुज़िश्ता इतवार उस मुनाद के बारे में कहा था, वो मार्टिन लूथर किंग के मुतालिक था, जिनके साथ कीमती लोग हैं, वो ठीक उन्हें मौत के फंदे में लिए जा रहा है। ओ काश उस आदमी को कोई समझा सके, काश मैं कर सकता। फक्त एक स्कूल को ऊपर उठाने का अमल है, समझे। यह कुछ क्या फर्क है, मेरे खुदाया, क्या लोगों में इतनी समझ नहीं है कि वो एक आदमी से जुड़ रहे हैं क्योंकि वो उनकी नस्ल का है। जो भी हो, वो लोग मुर्दा और कसूरवार है। रियासत ने उन्हें हक दिया है, मगर उसके खिलाफ लड़ाई मत करें, मत करें। क्या हो अगर कोई कहे तमाम आयरिश, या कोई कहे तमाम जर्मन, या जो कोई भी है इससे अलग हो जाए, मगर इन चीजों का मसीहों पर कोई असर नहीं होगा, जबकि उन्हें फौरन अलग हो जाना चाहिए। वो एक मसीही आदमी है और एक खत्म होते हुए उसे उन लोगों की बगावत के लिए रहनुमाई नहीं करनी चाहिए। उनका ये अमल लाखों लोगों की मौत का सबब बन सकता है। इससे एक और इनकलाब शुरू हो जाएगा और ऐसा करना शर्म की बात है। ठीक यही बात आज हो रही है, बिल्कुल वही बात दोबारा हो रही है। ये सच है, समझे। आज लोग सच्चाई को किस नजर से देखते हैं और जान भी लेते हैं कि सच्चाई यही है, और कहते हैं हमारा चर्च इस पर ईमान नहीं रखता, हम किसी और तरीके से मानते हैं। ठीक है, मगर ये दुरुस्त तरीका नहीं है, ये वैसी बात नहीं है। उसने कहा, तौबा करो और अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो। अब वो ऐसा नहीं करेंगे। ओ, फिर वो क्या करते हैं? अब इस बात पर सैकड़ों बातें की जा सकती हैं, और हो सके तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, जितनी जल्दी हम कर सकते हैं। अब फिर दूसरी मसलूबियत को देखें। अगर कोई आदमी कलाम की बजाय बाप, बेटे, रूल कुछ के एक अकीदे को लेता है, यानी इन अलकाब को लेता है उस नाम की बजाय, तो वो लोगों के लिए क्या करता है? वो कलाम के असरात को लोगों के लिए मसलूब करता है। और जब वो ये कहता है कि मरकत 16 तो सिर्फ उस जमाने के लिए था, और खुदा ने खुद कहा, और ठीक है, यीशु ने वहाँ उनसे बातें करते हुए ये कहा था, जाओ सारी दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा, और उनके दरमियान ये मौजज़े होंगे। ये किन के लिए है? हर एक कौम, हर एक मजहब, हर एक जुबान, हर एक नस्ल, सब लोगों के लिए है। ये एक जैसी अंजील है, और जो ईमान लाएंगे उनके दरमियान ये मौजज़े होंगे। जब कोई शख्स बाइबल में इन बातों को हटाने की कोशिश करता है, तो वो अंजील के असर को लोगों के लिए मसलूब करता है। बस मैं आप पर यीशु मसीह के नाम में फर्द जुर्म लगाता हूँ, आप खुदावंद को कत्ल करने के कसूरवार हैं। कलीसिया ने उससे नफरत की, क्यों? जबकि वो उन्हीं का खुदा था, उन्होंने उससे नफरत की और उसको अपना मसीहा मानने से इनकार कर दिया। नहीं जनाब, वो उस जैसा मसीहा नहीं चाहते थे। और आज कलीसिया वही कुछ कर रही है, ये कलाम का इनकार कर रही है। लोग कलाम को नहीं चाहते क्योंकि जो कुछ उनके अकीदों के मुताबिक उन्हें सिखाया गया है कलाम उसके खिलाफ है, और कलाम मसीहा है। क्या आप ईमान रखते हैं? ठीक है, तो फिर कलाम का परतु क्या है? परतु मसीहा है, जो रूल कुछ हमारे दरमियान है। वो अपने आप को जाहिर कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि कहीं पर उस चिराग को जला सके जिसके जरिए वो जाहिर हो सके, ऐसा चिराग जिसमें रस्म और रवाज का धुआं ना हो, ताकि उसकी रोशनी उसके वसीले आया हो सके। याद करें, वो उठी और उनकी मछलें बुझने लगी और उन्होंने अपनी मछलें दुरुस्त की, मगर तब बहुत देर हो गई थी। बस जब लूथरन, प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट के लोग आखिरी दिनों में रूल कुछ पाने की कोशिश करेंगे, तो आप जानते हैं वो उन्हें नहीं मिलेगा। खैर, चाहे वो गैर जुबाने बोले, ऊपर नीचे उछले, मगर देखे क्या होगा। बिल्कुल, ये वक्त का निशान है कि उसका वक्त खत्म हो गया है, हम इख्तिताम पर हैं। किसी भी वक्त कलीसिया उस ललकार को सुनेगी और ऊपर चली जाएगी। आमीन। फक्त सारी बातें तरतीब से पूरी हो रही है, रूल कुछ उनके जरिए जिनके जरिए वो काम कर सकता है। यीशु मसीह को एक सच्चाई के रूप में जाहिर कर रहा है, वो खुद को साबित कर रहा है। वो नीचे आया, उसकी तस्वीर ली गई और दिखाई गई, साइंस ने उसे लिया, इस पर गुफ्तगू की गई और सब कुछ किया गया, और जैसा उसने कहा था वैसा वो करेगा, ये साबित किया। वो ठीक वैसे ही काम कर रहा है जिनको करने की बात कलाम में मौजूद है। अब ये बातें किसी अकीदे या किसी इंसान की सोच के मुताबिक नहीं हो रही है, ये लहू, आग और धुआं और दूसरी चीजें कलाम के मुताबिक मसीहाना गवाही है। बहुत सी नकलें और बहुत से नकाल यहाँ हैं और वगैरह वगैरह, मगर इनसे तो सच्चा कलाम और भी अच्छी तरह से चमकता है, और ये दुरुस्त बात है। जो लोग रूहानी हैं वो खुद देखें, जो गलत और ठीक में इम्तियाज कर सकते हैं वो देखें। उन्होंने इनकार किया, अपने मसीहा का इनकार किया, कहा हम उसे नहीं चाहते। आज भी लोग वैसा ही कर रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे वहाँ जाकर उस झुंड जैसा अमल करना है तो फिर मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तब वो सब आपको मिलेगा भी नहीं। बस ठीक है, समझे, वही हालत आज है। हालांकि मसीह की पहचान पूरी तरह कराई गई थी, मगर वो उसे नहीं चाहते थे, उन्होंने उससे नफरत की। ऐसा क्यों था? हम उनके पादरियों को सांपों का झुंड कहते हैं। उसने कहा था तुम सफेदी फिरी दीवारें हो, तुम एक कब्रिस्तान के अलावा कुछ नहीं। बाहर से तो तुम खूबसूरत चोगे पहने दिखाई देते हो, मगर अंदर से मुर्दों की हड्डियों से भरे हो। देखे, उसने मुके नहीं मारे। उन्होंने कहा ये एक आम गलीली है, ये एक कारपेंटर का बेटा है, मगर उसने उनकी तरफ कोई मुके नहीं कसे। उसने उन्हें कहा मत सोचो, यूहन्ना ने कहा था जो कि उसका पेशरू था, कहा बल्कि ये एक दूसरा था जिसने मुक्के नहीं कसे थे। उसने कहा यहाँ तुम मत कहते आओ कि इब्राहिम हमारा बाप है, इब्राहिम के लिए तो खुदा पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता है। जी हाँ जनाब, दरख्त की जड़ों पर कुहाड़ा रखा हुआ है, और जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। जी हाँ जनाब, खुदा अपने कलाम के बारे में बहुत सख्त और पक्का और मजबूत है। जी हाँ जनाब, ध्यान दे कि यीशु कलाम के मुताबिक साबित हुआ था। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? खुदा के कलाम के मुताबिक यीशु को साबित किया गया था कि वो मसीहा है। क्या ये सच है? कुछ ही देर बाद हम पतरस की लगाई गई फर्दे जुर्म देखेंगे कि ये बात ठीक है या नहीं। उसकी पूरी तरह से तस्दीक की गई थी कि वो इंसान में खुदा था, जिसे खुदा का बेटा कहा गया था। ये सच है, अगरचे खास तौर पर उसकी तस्दीक की गई थी और वादे के कलाम को साबित करके बताया गया था कि वो मसीहा है। मूसा ने कहा था जब वो मसीहा आएगा और वो नबी आएगा तो ये बातें होंगी। वो औरत जो उसे कुएं पर मिली थी कितनी गंदी हालत में थी, ये किसी बात की अलामत थी कि इन आखिरी दिनों में खुदा हकीर और निकाले हुए लोगों को अपनी तरफ खींच लेगा। याद करें, गुज़िश्ता रात शादी के या किसी दिन शादी की ज़ियाफ़त पर मैंने मुनादी की थी, शादी की ज़ियाफ़त पर। उसने कहा किस तरह? उसने कहा मैंने बड़ी ज़ियाफ़त की तैयारी की और वगैरह वगैरह, और उन सब लोगों को जिनको मैंने दावत दी थी उनमें से हर एक ने बहाना पेश किया, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इससे हमारे अकीदों की बर्बादी हो जाएगी, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैंने एक बीवी से शादी की है और वो मुझे आने नहीं देगी। मैंने यहाँ एक कलीसिया से शादी की है, मेरी माँ मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट या एक कैथलिक या प्रोट ये मुझे नहीं आने देगी, इसलिए मैं इन बातों के साथ खड़ा नहीं हो सकता। उसने कहा और तुम नहीं आओगे और तुम मेरी ज़ियाफ़त से नहीं खाओगे? बस तुम जाओ और शराबियों और कस्बियों और गंदे लोगों को और जो कोई भी हो उन्हें मजबूर करके ले आओ, उन्हें अंदर ले आओ और मैं उन्हें अपनी कुव्वत से भर दूंगा। मैं खाना तैयार कर चुका हूँ और मेरे मेहमान नहीं आए, मेरी मेज तैयार है और किसी न किसी को तो मुझे बुलाना ही है, वो नहीं आए। उसने उन यहूदियों को मुजरिम ठहराया, मगर आज के बारे में क्या ख्याल है? मैं प्रेसबिटेरियन हूँ, मैं नहीं आ सकता। मैं मेथोडिस्ट या लूथरन हूँ, मैं एक वाला हूँ, मैं दो वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता। ये है आप और फिर आप नहीं होंगे, यही है। बिल्कुल, उसने कहा, ये ठीक है। वो पूरी तरह से तस्दीक किया हुआ मसीहा था, पूरी तरह से साबित शुदा कलाम था, जिस कलाम का वादा किया गया था। खुदा ने कलाम में वादा किया था कि मसीहा आकर क्या करेगा, और वो उसी कलाम के मुताबिक उसी वक्त वहाँ खड़ा था। उसने उनसे कहा, अब बताओ मैं कहाँ नाकाम हुआ हूँ? अगर तुम मुझ पर इंसान होने की वजह से ईमान नहीं लाते, मगर मेरे कामों का तो यकीन करो जो मैं करता हूँ, क्योंकि वो गवाही देते हैं कि मैं कौन हूँ। मेरे काम ही कहते हैं मैं मसीहा हूँ। तुम मेरा यकीन नहीं करते हो क्योंकि तुम सोचते हो जहाँ यूसुफ रहता है, मैं वहाँ उस छोटी सी झोपड़ी में पैदा हुआ था और मेरा पालने वाला दुनियावी बाप वहाँ एक कारपेंटर है, और जब वो गलील में आया तो वो उनके दरमियान बहुत कुछ करना चाहता था। किसी ने कहा, अरे ये शख्स कौन है, ये कौन है? ठीक है, क्या ये वो शख्स नहीं? क्या यूसुफ और इसके सब भाई यहाँ नहीं? क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं? क्या इसकी माँ मरियम और बाप यूसुफ नहीं? इस तरह के लड़के को तुम कहाँ से पकड़ लाए हो? ये कौन से स्कूल से पढ़ा है? इसके पास तो रफाकती कार्ड भी नहीं है, इसके पास कोई सनद नहीं है। इस तरह के लड़के को तुम कहाँ से लाए हो? कहाँ से तुमने इसे पकड़ा है? और बाइबल फरमाती है, ऐसी बातों से उसके दिल पर चोट लगी। उसने कहा वो वहाँ बहुत बड़े बड़े काम ना कर सका और वहाँ से वापस उनसे दूर चला गया। उसने कहा एक नबी अपने लोगों के अलावा कहीं बेइज्जत नहीं होता, समझे? अपने ही देश में देखे या अपने ही मुल्क में। वो यहाँ मुकम्मल तस्दीक किया हुआ मसीहा था। उसने अपने आप को शोहरत नहीं दी। उसने कहा मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, बल्कि वही करता हूँ जो बाप को करते देखता हूँ। और उसने उन्हें चैलेंज किया कि वो देखें कि वो मसीहा है या नहीं, और उस हकीर और बदनाम औरत को देखें। उसने उसे पहचान लिया। वो समाज से कटी हुई थी, मगर चिराग बुझा नहीं था। बेशक वो इखलाकी तौर पर गलत थी, कोई उसको ठीक नहीं कहेगा। खुदा की शरीयत उसको मुजरिम ठहराती है। वो इखलाकी तौर पर गलत थी, मगर वो देखे, खुदा आपकी अदालत ये देखकर नहीं करता आप क्या है, और वो आपकी अदालत ये देखकर नहीं करता कि आप कितने बड़े हैं और कितने छोटे हैं। वो तो आपके दिल की जांच करता है कि आपके दिल में क्या है, और वो इन बातों को बताना नहीं चाहती थी। और जब उसके सामने ये जाहिर कर दिया गया तो यही तो था जो वो चाहती थी। इससे कोई मतलब नहीं वो कैसी थी, मगर वो खुदा के पास आने के लिए तैयार थी। देखे, इंसान जाहिरी हालत को देखता है, मगर खुदा दिल पर निगाह करता है। खुदा दिल देखता है, कोई मतलब नहीं वो क्या थी, मगर जब उस पर नूर चमका तो उसने सब कुछ ठीक कर दिया। उसने अब्दी जिंदगी का जोहर उसे दे दिया। ओ मेरे खुदाया, ये बात मेरे लिए कितनी उम्दा है, समझे? देखे और जाने कि ये सच्चाई है, यही है, यही तो है, इसी के साथ खड़ा होना है। मुझे बताने दे, आसमान का खुदा मेरी तरफ से खड़ा होगा और मेरी आवाज इस मकनातीसी टेप पर खुदा के अजीम आने वाले वक्त में गूंजती रहेगी और आखिरी जमाने की नस्ल को मुजरम ठहराएगी, क्योंकि ये जो आज मकनातीसी टेप पर है, मगर उस वक्त अब्दी टेप पर होगा, ये सच है। ये इस पीढ़ी के मुनादों को मुजरिम ठहराएगा जो दीनदारी की वजह तो रखते हैं, मगर कलाम के असर को कबूल नहीं करते। और जबकि ये बात मुकम्मल तौर पर साबित और जाहिर कर दी गई है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, तो मैं खुदा के कलाम से इन पर फर्द जुर्म लगाता हूँ। मुझे जल्दी एक और वादे पर आना होगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। वहाँ उन्होंने क्या किया? ओ मेरे खुदाया, कलवरी पर, और उन्होंने उसे मसलूब किया। तीसरी बात है, उन्होंने उसे खुदा के मौजूदा कलाम के जहूर को ना पहचानने की वजह से सलीब दे दी। उस शख्स को क्यों उन्होंने मसलूब किया? क्या आप तस्वीर कर सकते हैं? एक मिनट के लिए मुझे पीछे जाने दे। इस तरह के शख्स को वो लोग क्यों सलीब दे रहे थे? मरियम, एक मरतबा मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम दाऊद के घराने का शहजादा था। उसको डॉक्टर इंग्राहम ने लिखा था। एक शानदार किताब है और ड्रामे की सूरत में लिखी गई। कुछ पुराने मुसवदात से एक अडयाना नाम औरत से लिया गया था, जो किसी हद तक हकीकत था। वो लड़की मिस्र के शहर कायरा से फलस्तीन में गई थी। मैं सोचता हूँ कि वो अपनी तालीम पूरी करने वहाँ गई थी और मसीह के वक्त में वो वहाँ थी और उसने ये सारी बातें अपने बाप को लिखी। ये अच्छा होगा कि आप इसको लें और इसको पढ़ें। ये एक अच्छी किताब है, दाऊद के घराने का शहजादा। इसको उसी शख्स ने लिखा है जिसने आके सतून को लिखा था, और इसी में से रहनुमाई लेकर सिसल डी मिल्स ने 10 अहकाम लिखी थी। हम देखते हैं कि इस किताब में डियाना यूं तहरीर करती है और वो कहती है कि स्लीप देने वाले दिन मरियम मगदलीनी वहाँ थी। ये वही थी जिसमें से यस्सु ने 7 बदरूहें निकाली थी। ये दौड़कर भीड़ के पास गई और उनसे पूछा, इसने क्या किया है, इसने क्या कसूर किया है? यही ना कि बीमारों को शिफा देता है और गुलामों को आजाद करने की कोशिश करता है? इसने अच्छे कामों के सिवा और क्या किया है, मुझे कोई बताए। और गलबन वही मैदान में किसी आदमी ने उसे थप्पड़ मारा और कहा, क्या तुम अपने कहनों के सामने इस अहमक खातून का यकीन करोगे? ये है आप समझे, उसने क्या किया था? उसने कुछ नहीं किया था। क्यों उन्होंने उसे सलीब दी? क्यों? क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे पहचाना नहीं था कि वो कौन था। आज भी बिल्कुल वैसा ही है। आज के मुनाद और इस जमाने के लोगों ने और हमारे जदीद उस्तादों ने यही कुछ किया है। उन्होंने लोगों को इतने भरोसे में ले लिया है कि वो इन बातों को जादू टूना या शैतान या एक जेनी टेलीपैथी या कोई चकमा या किसी किस्म की चाल समझते हैं। लोग ये समझ नहीं पाते कि ये खुदा के कलाम की जमाने के लिए तस्दीक है। ये आखिरी जमाने का निशान है। कलीसियाओं की हालत ये है, अगर आप उनकी तंजीम से ताल्लुक नहीं रखते तो वो कहेंगे, हाँ ठीक, ये बनाई गई बातें हैं, ये तो धोखा है, ठीक यहाँ पर देखें, वगैरह वगैरह और वगैरह वगैरह। मगर एक बार भी सच्ची बात को ये लोग धोखा साबित करके नहीं दिखा सकते। जी हाँ, एक मर्तबा वो साबित करें कि ये गलत है, वो साबित नहीं कर सकते। ये कभी भी गलत नहीं था, ये कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये खुदा है, समझे। मगर वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं, ओ ठीक है, अगर ये किसी बड़े मशहूर आदमी के जरिए होता तो मान लेते, मगर ये तो एक छोटे से ग्रुप में हुआ है। इस छोटे से झुंड को तो पहले ही से बाहर निकाल दिया गया है। खैर, ऐसे शख्स को तो हमने अपने चर्च ही में से बाहर निकाल दिया है, समझे। ये लोग तो हमारे चर्च में आया करते थे, समझे, मगर यहाँ इन्होंने कभी इस बात को गलत, कभी उस बात को गलत कहा, और अब आप देखें कि वो यहाँ से खारिज हो गए हैं। भाई देखें वो कौन है और क्या है, मुझे परवाह नहीं। अरे वो तो पतरस, यकूब और यूहन्ना के बारे में भी ऐसे कहते हैं, जाहिल और अनपढ़ आदमी, उन्होंने ऐसा ही कहा। मगर एक चीज पर उन्होंने ध्यान दिया, कुछ तो उस वक्त हुआ था, वो यस्सु के साथ रहे थे, यही तो था जिसने उन्हें फर्क बना दिया था, समझे। उन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो कौन था। वो नहीं जानते थे कि खुदा का साबित शुदा कलाम उस दिन वहाँ खड़ा हुआ नहीं था, जबकि एक वक्त वो दुरुस्त था, वो एक वक्त के लिए था, तब फक्त शरीयत और दीगर बातें उनके लिए थी। मगर वही शरीयत जिसे वो मानते थे, वो कुछ कह रही थी, वो उनको इशारा कर रही थी कि एक वक्त आएगा जब मसीह आएगा और वो इसी यस्सु की तरह का इंसान होना चाहिए था। मगर उन्होंने इसका एक हिस्सा तो माना मगर दूसरा हिस्सा छोड़ दिया, और ठीक वही बात वो आज कर रहे हैं। उनके पास एक चर्च है और वो यस्सु मसीह पर ईमान रखते हैं और कहते हैं हम सब बातें मानते हैं, मगर वो इस वक्त का इनकार करते हैं जिसमें हम रहते हैं। इससे वो पुरानी कहावत फिर याद आ जाती है, इंसान हमेशा उन कामों की तारीफ करता है जो खुदा कर चुका है और उनको देख रहा है जो वो करेगा या जो होंगे, मगर वो जो कर रहा है उसको नजरअंदाज कर रहा है और इसकी जानिब से मजम्मत की जा रही है, समझे। वो सोचते हैं कि खुदा कितना अजीम है और कितना अच्छा है, वो क्या करने जा रहा है, वो ले जाने के लिए आ रहा है, किसी दिन उठाए जाने या घर ले जाने के लिए आ रहा है, मगर वो निशानों और अजीब कामों का इनकार कर रहे हैं जो ठीक इस वक्त दिखाए जा रहे हैं, जिनके बारे में कलाम कहता है कि वो ऐसा करेगा। इन सारी बातों को छोड़ रहे हैं। यीशु ने कहा था, अगर अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो वो दोनों घड़े में गिर जाएंगे। बस खुदा से दुआ करें कि इन आखिरी दिनों में वो हमारी आंखें खोल दे, ठीक है। अब आज फिर लोग वैसा ही कर रहे हैं, वो इनकार करते हैं और उसी खुदा को ना जानते हुए आज फिर मसलूब कर रहे हैं। वैसे ही वो आज उसका इनकार कर रहे हैं और जो कुछ वो आज कर रहे हैं इन बातों के जरिए वो इनकार कर रहे हैं। वो दरअसल मसीह को दोबारा मसलूब नहीं कर रहे, मगर वो रूल कुछ के खिलाफ कुफर बक रहे हैं, और ऐसा करने की वजह से वो ये कर रहे हैं। वो कैसे रूल कुछ के खिलाफ कुफर बक रहे हैं, कैसे उन्होंने वहाँ कैसे बेहरमती की थी, क्यों वहाँ तब वो रूल कुछ की बेहरमती नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो अभी तक उतरा ही नहीं था। तब उन्होंने यस्सु को बालजबुल कहा था, उसे ही बालजबुल कहा था क्योंकि वो उनके दिलों के भेद और बातें जान लेता था। वो कहते थे ये शैतान है, दूसरे लफ्जों में ये किस्मत बताने वाला है, ये एक नजूमी होते हुए ऐसा करता है, ये अबलीस के अलावा कुछ नहीं है। देखे, गुजरे 400 सालों में उनके दरमियान कोई नबी नहीं आया था और उन्होंने बिना नबी वाले माहौल में परवरिश पाई थी, समझे। उनके पास उनकी शरीयत थी, उन्होंने कहा ये बालजबुल है, और यीशु ने कहा मैं तुम्हें इसके लिए माफ कर दूंगा, मगर जब रूल कुछ आएगा, अब इस पर गौर करें, तुम उसके खिलाफ एक लफ्ज भी बोलो तो वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। याद रखे, किसी भी तरह से फिर वो माफ नहीं किया जा सकता, कोई रहम नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब आप खुदा के रूह की बेहरमती करते हैं तो वही रूह तो खुदा के कलाम को साबित करता है। देखे, कलाम इस तरह फरमाता है कि रूह कलाम की तस्दीक करता है, और अगर आप उसे एक नापाक चीज कहते हैं तो जान ले कि आपने अदालत और रहम की लकीर को पार कर दिया है, इसलिए आपको कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि मैं इस पीढ़ी को मुजरम ठहराता हूँ और खुदा के बेटे के जहूर के खिलाफ कुफर बकने और मसलूब करने पर फर्द जुर्म लगाता हूँ। सब नबियों के जरिए उसने ये वादा किया था कि मसीह खुद आखिरी दिनों में आएगा, और वैसा ही होगा जैसा नूह के दिनों में था और सदूम के दिनों में था। कुफर बकने के जरिए वो लोगों के दरमियान खुदा के बेटे को दोबारा मसलूब कर रहे हैं, जबकि ये उसका एक साबित शुदा कलाम है, इसके खिलाफ कहा गया एक लफ्ज कभी माफ नहीं हो सकता। अब ऐसा है तो फिर आप क्या करने जा रहे हैं? आप कहाँ खड़े होने जा रहे हैं? वो लोग तो मुजरिम ठहर चुके हैं, फक्त खुदा का कहर नाजल होने का इंतजार किया जा रहा है, वो उन्हें चूर चूर कर डालेगा। खुदा के जाहिर किए गए कलाम से ज्यादा इन्हें इंसानी तालीम और तंजीमों के अकीदे प्यारे और अच्छे लगते हैं। इस नस्ल के लोग कैसे हैं? हो, मैं चाहता हूँ काश उसके लिए मेरे पास ज्यादा वक्त होता, समझे। इस नस्ल के लोग, ये नस्ल तो खुदा के मुकाशवा को ठुकरा रही है, मगर हम तो उसके रास्ते पर चल रहे हैं, जिस रास्ते पर रसूल चले, ये ठीक है। खुदाया, आप कहते हैं भाई, दूसरे भी ऐसा ही कहते हैं, मगर खुदा इसकी तस्दीक करता है। यीशु ने कहा था, अगर मेरे काम मेरी गवाही नहीं देते तो कह दो ये बातें मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मगर काम खुद बता रहे हैं। अच्छा, तो तुम कामों पर फिर ईमान ले आओ, समझे, क्योंकि वक्त आ गया है। और कहा, तुम जानते हो कि कल सूरज चमकने जा रहा है, ये आंधी चलने जा रही है क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है, मगर कल मौसम बेहतर हो जाएगा। उसने कहा था, तुम आसमान की सूरत में तमीज करना जानते हो, मगर जमानों की अलामतों में तमीज नहीं कर सकते। अगर तुमने खुदा को जाना होता तो मेरे दिन को भी जानते। और उन्होंने उससे कहा, तू अपने आप को बहुत कुछ बनाता है, तू अपने आप को खुदा बनाता है। उन्होंने उसे मसलूब कर दिया। और आज रूल कुछ कोई तीसरा कानून नहीं है, ये खुदा खुद है जो यीशु मसीह के लहू के वसीले इंसानी जिस्म में जाहिर हुआ था, ताकि उस पाक जिंदगी में से वो अपने आप को जाहिर कर सके, और उन्होंने उसी आशकारा कलाम को मसलूब कर दिया। क्या आप समझ गए? आज वो लोग मसीह को स्लिप देंगे जो जाहिर शुदा और साबित शुदा खुदा के बेटे का लोगों के सामने इनकार करते हैं, उन बातों का और उन कामों का जो उसने कही थी कि वो बातें अपने कलाम के वसीला से इन दिनों में वो जाहिर करेगा, समझे। आज अगर वो वही खुदा का बेटा है तो फिर वही सबूत जाहिर होंगे, क्योंकि यूहन्ना 14:12 में उसने कहा है कि बस जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। अब्रानियों 13:8, वो कल और आज बल्कि अब तक यक्षा है। अगर तुम मुझ में कायम रहो, यूहन्ना 15, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जी हाँ जनाब, याद रखें, जिन्होंने सलीब दी वो बहुत ही मजहबी लोग थे, वो बाहर वाले लोग नहीं थे, वो उस वक्त के मजहबी लोग थे। और आज जो ऐसा कर रहे हैं वो भी मजहबी लोग हैं, वही मसलूबियत, वही हालत आज भी है। जल्दी करें, वहाँ उन्होंने उसे सलीब दी, तब फिर ऐसा हुआ, यकीनन हुआ, तब ऐसा करने से वो खुदा के अशकारा कलाम का इनकार कर रहे थे, वो अपने अकीदों को कलाम की बजाय कबूल कर रहे थे। क्या ऐसा ही है जो वो आज कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है जो वो आज कर रहे हैं। वो कलाम था और उन्होंने कलाम को रद्द कर दिया था। गौर करें, यही वो बात है जिसको मैं नहीं चाहता कि आप नजरअंदाज करें। वो कलाम था, और जब उन्होंने उसे रद्द किया तो उन्होंने कलाम को रद्द किया, और जब उन्होंने उसे रद्द कर दिया फिर आखिर में उन्होंने उसे मसलूब कर दिया। और ऐसा ही ये आज कर रहे हैं, खुदा के कलाम को रद्द कर दिया है और इन्होंने अपने अकीदों को कबूल कर लिया है, अपनी कलीसिया के सामने सरेआम रूल कुछ के कामों को मसलूब कर रहे हैं, और वो मुजरिम है, और मैं इन पर यीशु मसीह के नाम पर फर्दे जुर्म लगाता हूँ। 15 सालों से मैं यीशु को इस धरती पर चलते फिरते देख रहा हूँ और वो लोग आज भी अपने अकीदों को थामे हुए हैं। वो मुजरिम है। वो कलाम को लेकर चर्च में लाकर और पूरे चर्च को इकट्ठा करके पेंटिकोस्टल और बाकी सब को इकट्ठा करके एक भाईचारे की बड़ी यूनियन बना रहे हैं और ऐसा करने की वजह से उन्होंने कलाम को रद्द कर दिया है और उसको ठुकरा दिया है और उसका मजाक उड़ा रहे हैं और हर तरह से उसकी बेहुरमती कर रहे हैं। और अब एक फेडरेशन ऑफ चर्च के जरिए इबलीस की मनसूबा बंदी के जरिए अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं भाई हम भी तेल खरीदेंगे, मगर वो रद्द कर दिए गए हैं और वो यीशु मसीह मसलूब करने के कसूरवार है। आपको सारी बातें खुदा के हिसाब से माननी चाहिए, वरना आपका अपना हिसाब काम नहीं करेगा, समझे। उन्होंने अपने अकीदों की वजह से खुदा के साबितशुदा कलाम को रद्द कर दिया था और आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। वो कलाम था यूहन्ना, मुकद्दस यूहन्ना पहला बाब, अब्रानियों 13:8, वो कल और आज बल्कि अब तक यक्षा है। अब ये दोबारा उसे मसलूब कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि बाइबल फरमाती है कि हम ऐसा कर सकते हैं? कितने लोग सिर्फ इसको पढ़ना चाहते हैं? क्या आप मुझे मजीद 15 मिनट देंगे? ठीक है, आए अब हम जरा 1 मिनट के लिए निकालते हैं कि दोबारा मसलूब करना क्या है। आए हम अब्रानियों 6 बाब निकालें और थोड़ा सा पढ़ें। अब्रानियों 6 बाब और देखें कि हम खुदा के बेटे को दोबारा मसलूब कर सकते हैं। देखें क्या ऐसा हो सकता है। आप कह सकते हैं कि आप उसे दोबारा मसलूब नहीं कर सकते, लेकिन हम देखते हैं हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं। खुदा का कलाम सच्चा है, क्या ये बात ठीक है? ये अब्रानियों 6:1 है। पसाओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातों को छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अबदी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। और अगर खुदा ने चाहा तो हम यही करेंगे। देखें, पालूस चाहता है कि आप जान जाएं कि ये बातें बिल्कुल वाकई ही बहुत जरूरी हैं। बपतिस्मे, हाथ रखने, जी उठने और दूसरी आमद, ये सारी चीजें अबदी हैं। ये बिल्कुल सच है। अब ध्यान दें, क्योंकि ये नामुमकिन है। मेरे साथ ये एक आयत पढ़ें। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर पढ़ें 4th ayat। क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और आसमानी बख्शीश का मजा चख चुके और रूल कुछ में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और ऐंदा जहान की कुवतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। क्या ये मेरी बात है या उसका कलाम है? एक आदमी को जिसके पास ये इल्म आ जाता है, याद रखें, उन्हें ये कभी नहीं मिला था, वो तो सरहदी ईमानदार थे। एक बार जब हमें खुदा के कलाम का इल्म मिल जाता है, आपको उसे पढ़कर और देखकर ये इल्म मिलता है और फिर आप उसे रद्द कर देते हैं, तो फिर आप कभी भी निजात नहीं पा सकते। क्या आपने इसे अभी नहीं पढ़ा? समझे, सच्चाई की पहचान हासिल हो गई, बस आपको इससे समझ मिली जिसे आपने कभी हासिल नहीं किया था। ये उन ईमानदारों की सी बात है जो बाहर आ गए थे। ये उसी तरह के सफर का नमूना है। ये तीसरा खरूज उन्हीं की तरह का नमूना है। देखें, वहाँ पीछे देखें। अब मैं एक मिनट, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, इस तरह कहने पर माजरत चाहता हूँ। देखें, इसराइल में से 12 आदमी चुने गए, हर कबीले में से एक तंजीमी सरबरा, और उन्हें उस वादा किए गए मुल्क की सरहद पर ले जाया गया और उन्हें वहाँ की सारी अच्छी चीजें दिखाई गई जो उन्हें मिलनी थी, और उन्होंने वापस आकर शिकायत की कि हम इस लायक नहीं कि उस पर कब्जा कर ले। मगर उन 12 में से 2 थे, यशुआ और कालिब, जिन्होंने कलाम को देखा और कहा, खुदा ने कहा है ये देश हमारा है और हम इसे हासिल करने के काबिल है। क्या ये सच है? वो क्या थे? सरहदी ईमानदार, समझे। वो दरअसल चर्च में पैदा हुए थे, वो लोगों के सरबराह थे। आप कह सकते हैं कि वो बिशप थे। वो वहाँ तक गए जहाँ खुदा का कलाम उन्हें सच होता हुआ दिखाई दिया था। वहाँ वो गए उस देश में जहाँ वो कभी नहीं गए थे, और वो ये भी नहीं जानते थे कि ऐसा कोई देश वहाँ है, मगर वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वो देश वहाँ था। वो देश वहाँ था। कालिब और यशुआ वहाँ गए और उनके लिए एक अंगूरों का गुच्छा लाए ताकि उसे खाकर देखे, और उन्होंने उस अच्छे मुल्क के फल को खाया और फिर जाकर कहने लगे, हम उसे नहीं ले सकते, समझे, बस हम उसे नहीं ले सकते। यीशु मसीह के जमाने में भी एक ऐसा गुरु था, रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, समझे सरहदी ईमानदार। हम जानते हैं तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो काम तू करता है कोई नहीं कर सकता। हम मानते हैं कि खुदा का हाथ तुझ पर है। तो फिर उन्होंने उसे कबूल क्यों ना किया? क्यों उन्होंने उसे कबूल नहीं किया? सरहदी ईमानदार थे। अब यहाँ लोग तीसरे खुरूज में हैं, वही ज़हूर और वही निशान, वही मसीह, वही रूल कुछ है, वही काम है, वही खुदा है, वही पैगाम है, और ये इसे कबूल नहीं करते। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने चर्च का रिफाक्ती कार्ड खोना पड़ेगा। ये क्या है? इनके पास सच्चाई का इल्म है, इन्होंने देख लिया है और जान लिया है, ये बिल्कुल सच है, ये इसका इनकार नहीं कर सकते। मैगजीन इसका गवाह है कि इन्होंने देख लिया है, तस्वीरें देखी हैं, अखबारात में पढ़ा है, जो गवाह है कि मुर्दे जिंदा हुए हैं, बीमारों के बारे में डॉक्टरों ने बयान दिए हैं, उनको कहना पड़ा है कि ये खुदा की तरफ से है। और पिछले सारे सालों में की गई एक भी पेशनगोई नाकाम नहीं हुई है, उनमें से हर एक लफ्ज ब लफ्ज पूरी हुई है, और वो कुछ नहीं कह सकते सिवा इसके कि ये खुदा की तरफ से है, मगर वो इसे कबूल नहीं कर सकते। खादमों का वो ग्रो शिकागो में है, 300 से ज्यादा आए और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना चाहा, मगर अब वो कहाँ है? इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या है? बाइबल कहती है जब वो ऐसा करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो अपने आप को रहम और अदालत के दरमियान से अलग कर लेते हैं, क्योंकि जो एक बार रोशन हो चुके हैं उन्हें दोबारा नया बनाना नामुमकिन है। उन्हें कलाम की पूरी सच्चाई सुना दी गई है और उन्हें सच्चाई की पहचान दी जा चुकी है, और उन्होंने खुदा के उम्दा कलाम का जायका ले लिया है। अगर वो बर्गश्ता हो जाए तो उन्हें फिर नया बनाना नामुमकिन है, और अगर वो कहें भाई अब मैं फिर बनूंगा, आप जो प्रेसबिटेरियन, आप जो मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट और लूथरन हैं, और ये जो फुल गॉस्पल बिजनेसमैन से मुंसलिक हैं, कहते हैं हम आ रहे हैं और पैगाम से दूर जा चुके हैं, क्या आपका चर्च आएगा? अगर कोई आप में से शख्सी तौर पर आना चाहे तो यकीनन आ जाएगा, मगर आपका चर्च नहीं आ सकता। इसमें आने के लिए आपको अपने चर्च में से बाहर निकलना पड़ेगा, समझे? ये ठीक है, शख्सी तौर पर ये सब ठीक है, मगर जब आप ऐसा सोचते हैं कि पूरा प्रेसबिटेरियन चर्च रूल कुछ हासिल करने जा रहा है, तो क्या अपने दस्तावेज आप फेंक देंगे? ऐसा आप कभी नहीं सोच सकते। और आप सोचते हैं कि आप मेथोडिस्ट ऐसा करने जा रहे हैं, आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। क्या आप सोच सकते हैं आप जो तसलीसी हैं, क्या कभी यीशु मसीह के नाम को कबूल करेंगे और आप में से हर एक बपतिस्मा लेगा? आप कभी भी नहीं करेंगे, आप कभी ऐसा नहीं करेंगे, मगर आप में से एक एक करके लोग आएंगे और ऐसा करेंगे। ये सच है और यही उसकी आमद का निशान है, मगर उन चर्चिज में जिन्होंने इस सच्चाई को देख लिया है और अपनी कौंसलों में रद्द कर दिया है, उनके लिए ये नामुमकिन है। तब वो मसीह यीशु को मसलूब करने के कसूरवार है, और मैं खुदा के कलाम के वसीला से उन पर फर्दे जुर्म लगाता हूँ कि खुदा ने, आप कहते हैं भाई ब्रहनम, आप उन पर कैसे फर्दे जुर्म लगा सकते हैं? मैं उन पर इसलिए फर्दे जुर्म लगाता हूँ कि खुदा ने इन आखिरी दिनों में अपने कलाम में से साफ साफ अपनी शनाख्त करवा दी है, और उसने दिखा दिया है कि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, और उन्होंने बड़े रूखे ढंग से उसे ठुकरा दिया है। और रुलकुस के खिलाफ कुफर बकने की वजह से आप यीशु मसीह को मसलूब करने के कसूरवार हैं। ये सच है। हम फिर से अब्रानियों 10 को देखते हैं। यहाँ पर वो फिर से हमें कलाम में बता रहा है ना कि सिर्फ नया बनाना नामुमकिन है, बल्कि आप नए बन ही नहीं सकते, बल्कि आप हमेशा के लिए खुदा से जुदा हो जाते हैं। जब आप रुलकुस को ठुकरा देते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, तो आप फिर दोबारा खुदा की हजूरी में नहीं आ सकते। अब देखे, आपने उम्दा कलाम का जायका ले लिया। गौर करें, सरहदी ईमानदार की तरह। ओ, आप कहते हैं क्या वो ईमानदार नहीं थे? वो ईमानदार थे, मगर लफ्जी ईमानदार थे, मगर जब कलाम की बात आई वो इसराइली थे। वो लहू के नीचे नीचे बाहर आए, वो मूसा के निशान के नीचे बाहर आए। उन्होंने उन निशानों को काम करते हुए देखा। खुदा ने कहा था मैं तुम्हें वहाँ उस देश में लेकर जाऊंगा, और जब वादा किए हुए कलाम के पूरे होने का वक्त आया तो उन्होंने क्या किया? ओ, हम उस देश को हासिल नहीं कर सकते, समझे? और यहाँ वो वापस अंगूर लेकर आए थे ताकि साबित करें कि वो देश उम्दा है। खुदा का कलाम सच्चा है। खुदा ने कहा था मैंने तुमको ये देश दे दिया है, मगर हालात कैसे थे? ओ मेरे खुदाया, कहा हम तो उनके सामने टिड्डों की तरह दिखाई देते हैं, हम उसे हासिल नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हालात कैसे हैं? कुछ साल पहले जब यहाँ टेबरनेकल की जगह एक पुराना ढांचा सा खड़ा था, तब किसी ने यहाँ आकर मुझसे कहा, बिली, इस तरह के पैगाम के साथ तुम किसी दिन यहाँ सिर्फ चार सतूनों को ही मुनादी कर सकोगे। मैंने कहा मैं इन चार सतूनों ही को कलाम सुनाऊंगा, क्योंकि खुदा इब्राहिम के लिए सतूनों से औलाद पैदा करने के काबिल है। जी हाँ जनाब, ये सच है। मैंने कहा, अगर आप किसी बात को गलत साबित करना चाहते हैं तो करते रहे, बस अभी तो ये कौवे की काँव काँव लगती है, मगर जब ये अपने मकाम पर आएगी तो फिर मुख्तलिफ लगेगी। जी हाँ, ये मुख्तलिफ लगेगी, ठीक है। जी हाँ, अपने अकीदों से वो इसे दोबारा मसलूब कर रहे हैं। अब इब्रानियों 6 बाब, हम इसे नीचे तक पढ़ना चाहते हैं और हम इसे नीचे नीचे तक पढ़ सकते हैं, हमारे पास काफी वक्त है। मैंने एक हवाला तलाश करके उस पर निशान लगाया था, कहाँ पर है वो? शायद इब्रानियों 6 बाब में है, मेरा ख्याल है। इसे पूरा पढ़ लेते हैं, उन्हें नया बनाना नामुमकिन है जो एक बार रोशन हो चुके हैं और रूल कुछ में शरीक हो चुके हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि मजीद इस पर बोले, क्योंकि मेरे पास एक और हवाला है जो मैं चंद लम्हों में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इस पर ध्यान दें, वो अपनी तरफ से खुदा के बेटे को दोबारा मसलूब कर रहे हैं। उन्होंने ये कैसे किया? कैसे? उन्होंने उसका जायका चखा और ये जानने के बाद कि ये सच है, इससे मुंह फेर लिया और इसका इनकार कर रहे हैं। इस बात ने क्या किया? यही है कि उन्हें नया बनाना नामुमकिन है। बस यही वो बात है जो इस कौम ने की है, यही वो बात है जो इन लोगों ने की है, यही तो है जो इन कलीसियों ने किया है। इन्होंने उसे ठुकरा दिया है और पैगाम को मसलूब कर दिया है। इन्होंने लोगों के लिए सच्चाई को मसलूब कर दिया है। उन्होंने यीशु के साथ क्या किया था? उन्होंने उसका लिबास उतारकर उसे शर्मिंदा किया था। उन्होंने जिंदगी के शहजादे को स्लीप पर चढ़ाकर किलों से जड़ दिया था। यही कुछ आज इन्होंने अपने अकीदों के वसीला से किया है। इन्होंने ऐसा ही किया है। इन्होंने अंजील की उम्दा बातों और अच्छी चीजों के लिबास को उस पर से उतार दिया है और किसी और सूरत में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसे स्लीप पर चढ़ा रहे हैं। ओ मेरे खुदाया, क्यों? वहाँ उन्होंने सलीब दी। अब आखिरी बात पर ध्यान दें, उसे जो सबसे ज्यादा कीमती आदमी था, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो उसे जानते नहीं थे। आज भी ऐसा ही है, वो नहीं जानते हैं कि ये सच्चाई है। ये इसके बारे में गूंगे और अंधे हैं, वो इसे नहीं जानते। यही सबब है इनकी रसूमात और अकीदों ने इन्हें खुदा के कलाम से दूर कर दिया है। अब आप जो यहाँ हैं, अपनी पूरी तवज्जो दें। बस खत्म करने जा रहा हूँ, समझे? मैं जानता हूँ बहुत गर्मी है, मैं भी महसूस कर रहा हूँ, मगर ओ मेरे भाई, ये कलाम जिंदगी है। अगर आप इसे थामे रहें, देखें, ये वही बात नहीं है जिसके बारे में हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं, जो यहाँ होनी चाहिए या बाद में? ये तो ऐसा मामला है जो पहले ही हो चुका है और हमारे साथ अभी हो रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ होगा, बल्कि अब ही हो रहा है। हम इसको परख रहे हैं, हम जानते हैं खुदा ने किया है, हम ये भी जानते हैं कि वो क्या करने जा रहा है, मगर इस वक्त हम वो बता रहे हैं जो वो अभी कर रहा है, समझे? ये हमारा वक्त है। हो सकता है हम उठाए जाने के वक्त तक जिंदा ना रहे। मैं आज मर सकता हूँ, आप आज मर सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, मगर उठाया जाना होने वाला है। लेकिन जब ये होगा, परेशान ना हो, हम वहाँ होंगे। बस इन सब के साथ जो अगले जमानों में यही ईमान रखते और उसके मुंतजिर थे, वो अपने जमाने की रोशनी में चले और आज की रोशनी यहाँ है। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। अपने अकीदों को भूलकर इस कलाम पर ईमान रखे। ये सच्चाई है, कलाम सच्चाई है। यीशु ने कहा, मेरा कलाम रूह है, मेरा कलाम जिंदगी है। आप कैसे जिंदगी हासिल कर सकते हैं जबकि आप जिंदगी को रद्द कर रहे हैं? आप अकीदों में जिंदगी कैसे पा सकते हैं जबकि वो मौत है? और एक जिंदगी के कलाम को ठुकराकर, जिंदगी के कलाम से मुंह फेर कर मौत लेना चाहते हैं? कैसे आप दोनों को एक ही वक्त में ले सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। हर एक आदमी का कलाम झूठा ठहरे, हर एक अकीदा झूठा ठहरे, लेकिन खुदा का कलाम सच्चा ठहरे। मैं हर एक आदमी को चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई दिखाए। मुझे मालूम है ये टेप दुनिया भर में जाते हैं। मैं हर शख्स को, बल्कि बिशप को चैलेंज करता हूँ, वो मेरे मुताले के लिए आए, ये इस जमात के रूबरू आए और कलाम में उंगली रखकर मुझे बताए और दिखाए नए ऐदनामे में किसी को कब बाप बेटे और रूल कुछ के नाम में बपतिस्मा दिया गया है। और मैं आपको दिखाऊंगा जो बपतिस्मा हर एक शख्स को दिया गया है, और अगर किसी ने मुख्तलिफ बपतिस्मा लिया हुआ था तो उसे दोबारा बपतिस्मा दिया गया ताकि रूल कुछ मिल सके। आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? क्या अपने अकीदों में फंसा रहना चाहते हैं? क्या अपने अकीदों में फंसकर मरना चाहते हैं? आप नापाक हाथों वाले हैं और मुजरिम हैं। आपने जिंदगी के शहजादे को, जिंदगी के कलाम को लेकर लोगों के सामने मसलूब कर दिया है। अब देखें, उन्होंने क्या किया था? वो ये नहीं जानते थे। आज आदमी जहालत में चल रहे हैं, वो नहीं जानते कि ये सच्चाई है। वो सोचते हैं ये भी किसी किस्म का इज्म है। वो इसकी गहराई में जाकर मुकाशवा की रूह को नहीं पकड़ पाते। वो काफी दुआ नहीं करते, जितना चाहिए वो उतना खुदा को नहीं पुकारते। वो इस बात को बस हल्का सा लेते हैं। ओ ठीक है, मेरा ईमान है, खुदा है। यकीनन अबलीस भी इस बात पर ईमान रखता है। अबलीस तो उन लोगों से भी कुछ ज्यादा ईमान रखता है जो इन बातों का दावा करते हैं। अबलीस उस पर ईमान रखता है और थरथराता है। लोग बस ईमान रखते हैं और चले जाते हैं, मगर अबलीस थरथराता है क्योंकि वो जानता है अदालत होने वाली है। लोग सिर्फ ईमान रखते हैं और आने वाली अदालत पर कोई ध्यान नहीं देते। ये यकीनन उसे मसलूब करने के कसूरवार हैं। मैं उसी कलाम के वसीले से इस नस्ल पर फर्दे जुर्म लगाता हूँ जिसने शुरू में उन्हें मुजरिम ठहराया था। ये सच है, यीशु ने कहा था, कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। वो कलाम था जो मुजस्सम हुआ था और आज वही कलाम फिर मुजस्सम हुआ है। पत्रस ने रसूलों के ईमान में फर्द जुर्म लगाते हुए कहा, आए इसे पढ़ते हैं। पत्रस जब उसने देखा कि क्या हुआ है और वो रूह के बारे में क्या क्या कह रहे हैं, देखें, पत्रस मसीह की हमायत कर रहा था कि उन्होंने उसके साथ क्या क्या किया था। मैं अंजील की हमायत कर रहा हूँ। मैं पत्रस उन पर एक शख्स यानी मसीह को कत्ल करने का इल्जाम लगा रहा था जो के कलाम था। मैं इस नस्ल पर फर्द जुर्म लगा रहा हूँ जो कलाम को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंसान में मुजस्सम हुआ है। देखे पत्रस ने क्या कहा था, उसका रास्तबाजी का तैश काफी उबर आया था। आए हम उसे इमाल दो बाब में कहते हुए सुनते हैं और 22वीं आयत से शुरू करते हैं। ए इसराइलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजज़ों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए, चुनाचे तुम आप ही जानते हो। चीख चीख कर कहा, तसव्वुर करें उन्हें कैसा लगा होगा। इसे सुनिए, ए इसराइली मर्दो, तुम जो उमरा और पादरी और मुकद्दस आदमी और तुम जो काहिन हो, तुम लोग जिन्हें समझा जाता है कि तुम खुदा के खादिम हो, इन बातों को सुनो। यीशु नासरी जो खुदा की तरफ से तुम्हारे दरमियान साबित किया गया था। अब मैं आप लोगों को और पादरियों को कहता हूँ, यीशु नासरी यानी रूह कुछ वो यहाँ रूह कुछ की सूरत में मौजूद है। यही तो वो जिंदगी थी जो उसमें थी। यहाँ पर वो लोगों में होकर काम कर रहा है, मौजज़ात और निशानों के जरिए अपना ऐलान कर रहा है और वो कहता है। और यहाँ लोग साइंसी मुशाहदे अपनी दीवारों पर लगा रहे हैं और आज वो लोग जिंदा होकर यहाँ बैठे हुए हैं जो मर गए थे और कैंसर के खाए हुए थे आज ठीक ठाक हो चुके हैं। अंधे आज देख रहे हैं और लंगड़े आज चल रहे हैं। ये वही यीशु नासरी है।
जब वो खुदा के मुकर्रर इंतजाम और इल्मे साबक के माफिक पकड़वाया गया तो यीशु के लिए ये पहले से मुकर्रर था। तो तुमने बेशरा लोगों के हाथों से उसे मसलूब करवाया और मार डाला, क्या ये फर्द जुर्म नहीं है? वो किसको मुजरिम ठहरा रहा था? सनहेड्रिन काउंसिल को। और आज सुबह मैं फेडरेशन ऑफ चर्चेस पर फर्द जुर्म लगाता हूँ, मैं पेंटिकोस्टल पर फर्द जुर्म लगाता हूँ, मैं प्रेसबिटेरियन, बैप्टिस्ट और दुनिया की सब तंजीमों पर फर्द जुर्म लगा रहा हूँ। तुमने ये मकारी खुदगर्जी और लालच के जरिए से जिंदगी के कलाम को लिया और लोगों के सामने मसलूब कर दिया है और उसकी बेहुरमती करते हो और उसे पागलपन कहते हो जिसे खुदा ने उठाकर खड़ा किया है और हमारे दरमियान साबित किया है कि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। मैं इस नस्ल पर फर्द जुर्म लगाता हूँ। खुदा ने खुद को जिंदा साबित कर दिया है। खुदा ने साबित कर दिया है कि ये उसका कलाम है। आपके पास जो है वो रसूमात और अकीदों का एक बंडल है। आप किस तरह जिंदा खुदा को जाहिर कर सकते हैं? आपने जिंदगी के कलाम को ठुकरा दिया है जिसके जरिए आपको ये चीजें मिल सकती थी। जी हाँ जनाब, हो कैसा वक्त है जिसमें हम रह रहे हैं। फिर भी हो, मैं कहता हूँ, पत्रस ने कहा, तुमने बेशरम लोगों के हाथ से मसलूब करवाकर मार डाला, लेकिन खुदा ने मौत के बंधन खोलकर उसे जिंदा कर दिया क्योंकि मुमकिन नहीं था कि वो मौत के कब्जे में रहता। ये अपने अकीदों और अपनी तंजीमों और कलीसियाओं के साथ दीनदारी की वजह रखते हैं और बातें कर रहे हैं। तुम दीनदारी की वजह तो रखते हो मगर उसके जी उठने की कुदरत का इनकार करते हो। मगर वो वक्त आ पहुंचा है, आखिरी वक्त आ गया है जो खुदा ने मलाकी 4 के मुताबिक वादा किया था कि वो आखिरी दिनों में खड़ा होगा और लोगों के दिलों को वापस असल बरकत और पेंटिकोस्टल वाल्डो के ईमान की तरफ फेरेगा और तुम उसका इनकार नहीं कर सकते और ना ही तुम उसके साथ खड़े हो सकते हो। अब मैं खुदा के सामने तुम्हें चैलेंज करता हूँ, कसूरवार ठहराता हूँ और तुम पर फर्द जुर्म लगाता हूँ
کیونکہ تم نے اپنے بدکار، خود غرض اور تنظیمی ہاتھوں سے خدا کے کلام کو لوگوں کے سامنے مسلوب کر دیا ہے، اور میں تمہیں کہتا ہوں تم مجرم ہو اور عدالت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آمین۔ جی ہاں جناب، میں وہی کہتا ہوں جو پطرس نے کہا تھا۔ اس نے اس نسل کو توبہ کرنے کو کہا تھا، میں اس نسل کو توبہ کے لیے بلاتا ہوں، خدا کے سامنے توبہ کریں اور واپس خدا کے اصل کلام کی سچائی کی طرف آئیں، اپنے والدوں کے اصل ایمان کی طرف واپس آ جائیں، روح القدس کی طرف واپس آ جائیں، کیونکہ خدا اسے تبدیل نہیں کرتا۔ جب خدا کہتا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، تو خدا ابد تک اس کے ساتھ کھڑا رہے گا، یہ اس کا کلام ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں صرف ہاتھ ملا کر یا پاکشہ لے کر یا اس طرح کا کچھ کر کے یا کسی طرح کا کوئی خیال یا کوئی عقیدہ لے کر کام بن جائے گا، تو پھر کوئی شرابی بھی، کوئی بے ایمان بھی، کوئی آدمی بھی یہ کر سکتا ہے، کوئی بھی نکال اور کوئی بھی کسبی یہ کر سکتی ہے، اشعار بانی لینا اور اس طرح کے اور کام کرنا یہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ مگر یسو نے کہا تھا سچے ایمانداروں کی پہچان یہ ہوگی، ان کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، یہ نہیں کہ ہو سکتے ہیں بلکہ ہوں گے، ساری نسلوں میں یہ معجزے ہوں گے، جو ایمان رکھیں گے میرے نام سے وہ بدروہیں نکالیں گے، طرح طرح کی زبانیں بولیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے اور سانپوں کو اٹھا لیں گے، اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو کوئی ضرر نہ پہنچے گا، بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے، بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، بدروہوں کو نکالنا، تم نے یہ مفت پایا مفت دینا، یہ سب بڑی بڑی پیسہ کمانے والی سکیمیں اور چیزیں آج ایسی ہی چیزوں میں بندی پڑی ہیں۔ کوئی حیرت نہیں کہ وہ مکمل طور پر عدالت کے لیے تیار ہیں۔ جی ہاں جناب، او میرے خدایا، آئیں اب مزید دیکھیں۔ جی ہاں جناب، توبہ کی بلاہٹ ہے اور میں اب فرد جرم لگا رہا ہوں۔ یہ نئی کلوری کلیسیا ہے، نام نہاد پاک ترین مقامات، بڑے بڑے پلپٹ ہیں، کیتھلکزم ممبر، کیتھلک ممبر جسے وہ اپنا پلپٹ کہتے ہیں، یہ سب پینتیکوسٹل، میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ، پریسبیٹیرین اور لوتھرن ہیں۔ ان پاک ترین مقامات میں خداوند گہرے زخم پا رہا ہے، یہ نئی کلوری ہے، یہ صلیب کہاں پائی جاتی ہے؟ پاک مقاموں میں، یعنی چرچ میں۔ کن کی طرف سے وہ مصلوب ہو رہا ہے؟ پادریوں کی طرف سے۔ تم ریاکارو، تم سب اچھی طرح جانتے ہو میں غصے میں نہیں ہوں، مگر میرے اندر یہ جوش اٹھ رہا ہے، آپ کے درمیان پوری طرح خدا ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کی پسلی میں یہ بالے کا نشان کہاں سے آیا؟ اس کے ہاتھ پاؤں کہاں چھے دے گئے؟ سلیپ پر۔ آج یہ سب اس کے ساتھ کہاں کیا جا رہا ہے؟ ممبر پر۔ وہ کہاں سے آئے تھے؟ یروشلم سے۔ یہ آج کہاں سے آ رہے ہیں؟ تنظیموں سے، وہ جو اس سے پیار کرنے کا دعویٰ کرتے تھے انہوں نے یہ کیا، اور وہی آج بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اس کی دوسری سلیب جہاں اس کو کلام کے خلاف زخم دیے گئے ہیں، یہ جو زخم اسے ملے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ کلام ہے، وہ کلام ہے۔ غیر زخم اس کو کہاں سے لگے ہیں؟ پاک مقاموں کے پلپٹ سے، جیسا کہ اس کے ساتھ تب کیا گیا تھا۔ مجھے اس نسل پر فرد جرم لگانے کا حق ہے، یسوع مسیح کی انجیل کا مناد ہونے اور اس کے نشانوں سے ثابت کرنے کے باعث کہ وہی خدا ہے، مجھے حق ہے کہ فرد جرم لگاؤں۔ اس نسل کے خلاف فرد جرم لگانا میرا حق ہے، کیونکہ اسے سب سے زیادہ زخم پلپٹ سے لگے ہیں۔ یہاں پر لوگوں نے اس پر نکتہ چینی کر کے کہا، ان کی ایسی باتیں سننے مت جاؤ، وہ ابلیس کی طرف سے ہیں۔ ایسا ٹھیک اس مقام سے کہا گیا جہاں سے اسے پیار ملنا چاہیے تھا، اور ٹھیک وہی نشان دکھائے گئے ہیں جن کے بارے میں یسو نے کہا تھا دکھائے جائیں گے۔ خدا کا کلام دو داری تلوار سے بھی تیز ہے، کلام دلوں اور خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے، اور اس کو ابلیس کہا گیا۔ کہاں سے؟ پاک مقاموں اور پلپٹ سے۔ ہو خدا کس طرح نیچے ان پر نظر ڈالے، بس رحم ہو، بس یہی سارا فضل ہے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، بس عدالت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم تو پہلے ہی وہاں کھڑے ہیں۔ اس پر سوچے، اس کو غیر زخم پلپٹ سے لگے ہیں، اور یہیں پر اس کے لیے نئی سلیب کھڑی ہے، وہ اسے یعنی کلام کو اپنے پلپٹ سے مصلوب کر رہے ہیں۔ یہ سچ ہے، یہ کیسے انہوں نے کیا ہے؟ اپنی جھوٹی دینداری کی وجہ سے، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھٹھا کرنے والے لوگوں نے اسے کانٹوں کا تاج پہنا دیا ہے، اسے کانٹوں کا ایک نیا تاج پھر سے دیا گیا ہے، ٹھٹھا بازوں نے پلپٹ سے زخم دیے ہیں، اور مذاق اڑانے والوں نے اسے تاج پہنایا ہے۔ کیا اسے دوبارہ صلیب پر چڑھایا گیا ہے؟ انسان کے بنائے گئے عقیدے اور تنظیمی عالم اس کے کلام کے خلاف کوڑے مارتے ہیں، وہ اسے کوڑے مارتے ہیں، اسے شرمندہ کرتے ہیں اور اسے رد کرتے ہیں۔ یسوع نے کہا، یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، بے فائدہ، اس سے کوئی بلا ہونے والا نہیں ہے۔ کس کی پرستش کرتے ہیں؟ یہ اسی خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ پہلی مصلوبیت کے وقت بھی وہ اسی خدا کی پرستش کر رہے تھے اور وہ پرستش بے فائدہ تھی، اور آج بھی وہی بات ہے۔ یہ بے فائدہ تنظیمیں بنا رہے ہیں، یہ بے فائدہ سیمیناریاں بنا رہے ہیں، ان کے عقیدے بے فائدہ ہیں، یہ انسانی حکام کی تعلیم دے رہے ہیں اور خدا کے کلام کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ زندگی کے شہزادے کو مصلوب کرنے کے سروار ہے اور اس کے کلام کی بجائے انسانی حکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، اسے کوڑے مارتے ہیں، تاج پہناتے ہیں اور زخم دے رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جب وہ سڑک سے گزرتے ہیں اور عام میں سے کچھ بہنیں لمبے بالوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو کہتے ہیں یہ پرانے طرز کی عورتیں ہیں، کیا یہ نہیں ہے؟ یاد رکھے، یہ ٹھٹھا باز لوگ ہیں۔ لمبے بال آپ کا تاج ہے جو آپ پہنے ہوئے ہیں، خدا کہتا ہے یہ آپ کی زینت ہے، انہیں فخر کے ساتھ رکھے۔ ہاللویہ، فخر کے ساتھ انہیں رکھے، گویا آپ خداوند کے لیے کانٹوں کا تاج پہن رہی ہیں، اس لیے انہیں فخر کے ساتھ رکھے، شرمائے مت، خدا نے ایسا کہا ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ ایزبل آج کیا کہتی ہے؟ مسیح کو مصلوب کرنے والے جو پلپٹ پر کھڑے ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ اس کی پرواہ مت کرے، آپ فخر سے انہیں رکھے، خدا نے ایسا کہا ہے، آپ کو یہی کرنا چاہیے۔ ٹھٹھا بازوں نے پھر اسے کانٹوں کا تاج پہنا دیا ہے، اسے عقیدوں کے ساتھ پلپٹ پر چھید دیا ہے۔ آج وہ گلگتہ کی نئی پہاڑی پر ہے، وہ اسے کہاں لے کر جاتے ہیں؟ یہ چوگے پہنی کوئر، چھوٹے کپڑے پہننے والی عورتیں، کٹے بال، رنگے چہرے، جو کہ فرشتوں کی طرح گیت گا رہی ہوتی ہیں، یہی اس کا نیا گلگتہ ہے۔ بس آج کے ننگے پن کو قانونی تحفظ مل چکا ہے، جس طرح سدوم اور امورا میں تھا۔ آپ سڑک پر جاتے ہوئے ایک کتیا کو دیکھیں، اور بعض اوقات تو ایک کتا بھی اس کے پیچھے نہیں جائے گا، مگر ذرا سی بات ہونے دیں، ان میں سے ہر ایک لڑکی کے پیچھے دوڑا ہوا چلا جائے گا، کیونکہ اس لڑکی کو کچھ ہو گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ آئے دیکھیں کیوں یہ عورتیں اپنا لباس اتار کر سڑکوں پر جاتی ہیں۔ مجھ سے یہ مت کہنا کہ یہ ایک جیسی بات ہے، یہ تو ایک شناخت ہے۔ مرد کو مت مجرم ٹھہرائے، مگر یہ سدوم کے قانون سے محفوظ ہے، مگر میں کہتا ہوں اس طرح باہر جانا غیر قانونی ہونا چاہیے، اور پلپٹ سے منادی کرنے والوں کو اب بجائے پادری کے لباس کے لہنگا پہن لینا چاہیے، کیونکہ یہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی اجازت دیتے ہیں اور بے حیائی کے خلاف بولنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کی تنظیم انہیں باہر نکال پھینکے گی۔ آپ خدا کے کلام کو اپنی جماعت کے لیے مصلوب کر رہے ہیں۔ کلام کہتا ہے ایک عورت کے لیے ایک مرد کا لباس پہننا مکروہ ہے۔ میں ایسی بات کو مجرم ٹھہراتا ہوں، میں الزام لگاتا ہوں کہ ایسا کرنا گویا خدا کے کلام کو لوگوں کے سامنے مصلوب کرنا ہے۔ کٹے ہوئے بال، چھوٹے کپڑے اور تاج پہنی ہوئی عورتیں کوئر میں کھڑی ہوتی ہیں۔ کسی دن کسی نے مجھ سے پوچھا، بلکہ کسی عورت نے مجھ سے پوچھا، بھائی بتائیں کہاں آپ ایسی عورتیں پائیں گے؟ میں نے کہا اگر خداوند مجھ سے کہے کہ ایک درجن ایسی عورتیں دنیا میں سے تلاش کرو تو میں تو ڈر کر فوتی ہو جاؤں گا۔ جب میں انہیں وہاں کھڑی دیکھتا ہوں تو روح کے وسیلے دل کے بید ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وہ کھڑی رہتی ہیں اور ان پر ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہوں، گندے، گلیز، حقیر اور سگریٹ پینے والے لوگ ہوتے ہیں اور باہر جا کر ایسے ہی کام کرتے رہتے ہیں، اور وہ چوگے پہنے اسی گندی حالت میں کوئر میں گیت گا رہے ہوتے ہیں، اور سامعین انہیں ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہیں گے اچھا اگر یہ لڑکی لبادہ اوڑے یہ کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ ایک مسیح زندگی پاکیزگی، معصومیت اور خلوص سے بری ہوتی ہے۔ میں یسوع مسیح کے نام سے ان کی گندگی اور ناپاکی پر فرد جرم لگاتا ہوں۔ انہوں نے انجیل کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، اور وہ جو اس کو اونچا رکھنا چاہتے ہیں ان کو پاگل کہتے ہیں، انہیں پرانی طرز کا کہتے ہیں، اور یہ حماقت ہے۔ میں یسوع مسیح کے نام میں ان پر فرد جرم لگاتا ہوں۔ بس جدت کے نام پر یہ ننگا پن سڑکوں پر آ گیا ہے، اور کوائر میں یہ شامل ہے، سگریٹ پیتی ہیں، گندے مزاق کرتی ہیں، چھٹے شور کے بعد بھی تین چار اور کر لیتی ہیں اور پھر بھی کوائر میں گیت گاتی ہے، کیونکہ ان کی آواز سریلی ہے۔ تم کم عقل اور روحانیت سے محروم ہو، تم اپنی ہی باتوں سے رد کر دیے گئے ہو، تم بھی وہی بائبل پڑھتے ہو جو کوئی دوسرا پڑھ سکتا ہے، मगर तुमने खुदा की रूह को ठुकरा दिया है, जबकि बाइबल फरमाती है तुम बहुत बड़ी गुमराई में हो, ताकि झूठ पर ईमान लाकर मुजरिम ठहरा जाओ। तुम दरअसल ये ईमान रखते हो कि तुम दुरुस्त हो, और बाइबल फरमाती है कि तुम झूठ पर ईमान लाओगे और मुजरिम ठहराए जाओगे, उसी झूठ पर ईमान लाने की वजह से जिसको तुम सच समझते हो। इसलिए मैं खुदा के कलाम के वसीला से तुम पर फर्द जुर्म लगाता हूँ। आप लोगों को गलत बात सिखा रहे हैं और मसीह की पाकीज़गी के असूलों और आसमानी जिंदगी को मसलूब कर रहे हैं, जबकि एक शख्स बाहर सड़क पर जाकर चल सकता है और एक मुख्तलिफ शख्स बन सकता है। मुनाद मैदानों में खड़े हुए सिगरेट पी रहे हैं जिससे ठोकर लगती है, और बाकी सारी गंदी चीजें दिखाई देती हैं जिनसे वो लिपटे हुए हैं। औरतें बाल कटवाए, छोटे कपड़े पहने और रंगे चेहरों और उल्टी सीधी बातों के साथ क्वायर में गीत गा रही है, और इन चीजों के बारे में कहती है, बहन ऐसा है और वैसा है, मगर बाइबल ऐसी चीजों को रद्द करती है। ये सच है, नाच रंग में जाए तो भी आप चर्च के मेंबर हैं, अपनी गवाही जारी रखें और जैसे चाहें जिंदगी बसर करते रहें। ये मत सोचे कि मैं ये सारी बातें प्रेसबिटेरियन के लिए कह रहा हूँ, मैं आप पेंटिकोस्टल लोगों के बारे में कह रहा हूँ। ये सच है, आपको एक मर्तबा सच्चाई दी गई थी, मगर आपने सोचा आप इसके साथ नहीं चल सकते, आप अपने पास्टर की मदद नहीं कर सकते थे, और ना ही ये हफ्ते में $100 कमाने वाली उसके पास नौकरी होती, और ना ही ये बड़ा खूबसूरत उसके पास ये चर्च होता मुनादी के लिए, अगर उसने आपको ऐसे ही चलने ना दिया होता। अगर वो ये सब कुछ गलत करार देता तो आपकी तंजीम ने उसे बाहर उठाकर फेंक देना था, इसलिए उसने ये सब कुछ जारी रखा और उसे हाँ कहना पड़ा, इसलिए कि उसने इस साउ की तरह अपने पलोटे का हक इस दुनिया की गंदगी के लिए बेच दिया है, और इसे उसके बदले में क्या मिलने जा रहा है। दोनों ही गुनाह के गड़े में गिरकर कसूरवार ठहराए जा चुके हैं। मैं इनको अंजील को फरोख्त करने का मुजरम ठहराता हूँ। ज्यादा अरसा नहीं हुआ, मैं एक बड़ी ही मशहूर जगह पर था, वहाँ एक क्वायर थी और ये वहाँ के आला दर्जे के पेंटिकोस्टल लोग थे, और यूँ हुआ मैं भाई के साथ मुतालिया के लिए बैठ गया, जबकि चार और पाँच क्वायरें वहाँ इकट्ठी हो गयी, और ये वहाँ पर बल्कि ये आला पेंटिकोस्टल तंजीमों की क्वायरें थी, और उन्हें नहीं पता था कि वहाँ ओकलाहोमा में खादमों के मुताला में मैं बैठा हुआ था। मैं वहाँ नीचे बैठा हुआ था जहाँ खादम मुनादी करने से पहले मुताला करते थे, और जब मैंने देखा वहाँ उनमें कुछ रिकी मौजूद थे, और रिकियों जैसे रंगो रोगन लगाए हुए थे, उनमें से एक भी लड़की के बाल लंबे नहीं थे, बल्कि हर एक के बाल कटे हुए थे, उनमें से हर एक ने मेकअप किया हुआ था और हर एक चोगा पहने हुए थी, और एक रिकी की तरह ये सब सजे संवरे थे, और एक आदमी वहाँ चंदा ले रहा था, वो इस तरह का अमल कर रहा था गोया कोई अंधा कशकोल लिए हुए हो, और इधर उधर घूम रहा था और हर किस्म की कुफरिया बातें चंदा लेते हुए कह रहा था, और वहाँ पर उसने मेरे मसीहा वाला गीत गाना शुरू किया। ओ मेरे खुदाया, काफी अच्छे तरीके से गीत गाया जा रहा था, मगर गीत में जान नहीं थी, नहीं बल्कि मुर्दापन था, समझे। ओ मेरे खुदाया, यही उसका नया गुलगत्ता है, यहाँ पर है। आप क्या सोचते हैं, अगर ये लड़कियाँ या ये औरतें ठीक होकर वहाँ जाएं तो क्या हो, क्या हो अगर ये वैसे ही कपड़े पहने जैसे इन्हें पहनने चाहिए, लंबे बाल हों और चेहरे रंगे हुए ना हों, और ना ही इस तरह की बाकी बातें हों, तो वो लोग इनका मजाक उड़ाएंगे। अगर कोई लड़की वहाँ खड़ी हो और जब वो इस तरह का बना रहे थे तो वहाँ क्या करना है, तो वो 30 या 40 नौजवान लोगों का झुंड था जो कि 35 कोसलों का चुना हुआ था, फिर भी इस तरह के काम कर रहे थे। अगर वो लड़की वहाँ उन्हें कुछ कहेगी तो वो उसे अपनी क्वायर से बाहर निकाल देंगे। जरा अंजील के मुनाद को पुलपट से ऐसी बातें कहने दें, वो उठकर अपनी तंजीम से बाहर फेंक देंगे। आप खुदा के बेटे को दोबारा मसलूब करके सबके सामने उसे शर्मिंदा करते हैं, उसकी अंजील की मुनादी का आप दावा करते हैं, आपने तो उसे सलीब पर चढ़ा दिया है। मैं मसीह को रद्द करने वाली इस नस्ल के खिलाफ खुदा के कलाम से फर्द जुर्म लगाता हूँ, और इस कुदरत के वसीला जो इन आखिरी दिनों में साबित कर रही है कि वो आज भी जिंदा है, जी हाँ, ये खुदा के साफ साफ साबित शुदा कलाम के खिलाफ है। इनकी तंजीमें कलाम के साथ खड़ी नहीं हो सकती। मैं इस बात को दोबारा कहता हूँ, बड़े बड़े चर्चिस और तंजीमें उसके लिए नई सलीब है, और ये जो उनकी क्वेरे हैं, उनका ये जदीद नंगापन है। ये एक तंजीम का सरदार कहिन उस वक्त के सरदार कहिन की तरह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, अब तू नीचे उतरा और हमें कोई मौजजा दिखा। ऐसा पहली मसलूबियत पर हुआ था और आज भी ऐसा ही हो रहा है। मैंने उन्हें ये कहते सुना है, भाई अब तुम मुर्दे जिंदा करते हो, क्या तुम करते हो, तुम फिर कब्रिस्तान क्यों नहीं जाते, वहाँ तुम्हारी बीवी है, वहाँ तुम्हारी बच्ची है। उन्होंने यस्सू को भी यही कहा था, भाई हमने सुना है कि मुर्दों को जिंदा करता है, हमारे पास एक मुर्दों से भरा हुआ कब्रिस्तान है हाँ, और उन्हें जिंदा कर। ओ जहालत, जहालत ही जहालत को जन्म देती है, समझे। आज के ये बड़े बड़े चर्चेज, बड़ी बड़ी कोयरे और सरदार कहिन कहते हैं आ और हमें कोई मौजदा दिखा जो हमारी तंजीम ना कर सकती हो। ज्यादा अरसा नहीं हुआ जब जोन्सबोरो अरकनसास में मैंने एक छोटा सा पैगाम दिया था तो एक आदमी से मुलाकात हुई जिसने ये राय दी और किसी औरत के बारे में बता रहा था जिसने शिफा पाई थी। वो साथी किसी तंजीमी चर्च का रुकन था और वो वहाँ पीछे आकर खड़ा हो गया और कहा मैं चैलेंज करता हूँ मुझे कोई शख्स एक भी मौजदा करके दिखाए। मैं गया और डॉक्टर को बुला लाया क्योंकि एक शख्स को कैंसर से शिफा मिली थी और मैंने उस औरत को भी बुला लिया जो 20 साल से व्हीलचेयर पर जोड़ों के दर्द के बाद बैठी हुई थी मगर अब ठीक हो गई थी। मैंने ये दिखाया और कहा अब इसके बदले में तुझसे $1,000 मांगता हूँ। उसने कहा भाई ओ ये यह नहीं है, ये तो हमारे हेडक्वार्टर वोको टेक्सास से मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है हम वहाँ जाकर लेंगे। कहा मैंने कहा तुम इंतजार कर लो और हम कल चलेंगे, समझे। मैंने कहा हम मेल करेंगे। मैंने कहा यहाँ डॉक्टर मौजूद है जो तस्दीक कर रहा है कि इन लोगों को कैंसर से शिफा मिली है। ये उसके एक्सरे हैं जिनमें बीमारी साफ दिखाई दे रही है और यहाँ एक औरत है जिसे उसके सब पड़ोसी जानते हैं कि वो 20 सालों से व्हीलचेयर पर थी और अब ठीक ठाक चल फिर रही है और डॉक्टरों की लंबी कतार है, एक डॉक्टर के बाद फिर डॉक्टर, एक डॉक्टर के बाद फिर डॉक्टर, फिर डॉक्टर, फिर डॉक्टर और सब कुछ तस्दीक किया जा चुका है मगर वो औरत यहाँ आज तक जिंदा है। अब तुमने कहा था तुम $1,000 दोगे, मुझे वो रकम चाहिए, मैं उसे चंदे में डालना चाहता हूँ और मुझे वो रकम चाहिए, समझे समझे। उसने कहा भाई पैसे तो वाको टेक्सास से मिलेंगे। मैंने कहा हम कल चलेंगे। उसने कहा एक मिनट रुकिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने कहा एक छोटी लड़की को लूंगा और एक ब्लेड से उसका हाथ काटूंगा और फिर आप उसे हमारे भाइयों के सामने ठीक करना और वो पैसे आपको मिल जाएंगे। मैंने कहा तुम अबलीस हो, वही बात, अगर तू खुदा का बेटा है तो स्लीप से उतरा। उन्होंने उसकी आंखों पर कपड़ा लपेट दिया और कहा हमें बता तुझे किसने थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारा गया। कहा अब अगर तू नबी है तो नबूवत कर और बता किसने मारा, अगर तू खुदा का बेटा है तो स्लीप से उतरा। अंधों के अंधे रहनुमा, इनको ज़हनी शिफा की जरूरत है। एक आदमी जो ऐसी बातें करे और ऐसी राय दे उसे वाकई इलाज की जरूरत है यकीनन। अगरचे ये एक जानी पहचानी पुरानी पुकार है कि हमें तू कोई मौजजा दिखा, मालिक हम तुझसे मौजजा देखना चाहते हैं, जबकि हर वक्त हर रोज ये हो रहे थे और खुदा की रहनुमाई से होते रहेंगे मगर ये वहाँ मौजूद नहीं थे और अगर ये वहाँ होते तो इन्होंने उसे बाल जबूल और शैतान ही कहना था, समझे। उस्ताद हमें ये उस तरह करके दिखा जिस तरह हम चाहते हैं कि आप ये करें, ये बात है, वहाँ जाएं जहाँ हम चाहते हैं, आप वहाँ जाएं और वही करें जो हम चाहते हैं। हो जी हाँ, उनका यस्सु पर कोई बस न चला। नहीं जनाब, यही सबब था कि उन्होंने यस्सु को अपने दरमियान से निकाल दिया। जी हाँ जनाब, ये लोग आज भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं और फेडरेशन ऑफ चर्चेस के जरिए ये अपने इस मकसद को हासिल कर लेंगे। देखें, सभी लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं, ये वही पुरानी जानी पहचानी पुकार है। यहाँ हम देखते हैं फिर वही सबसे ज्यादा मजहबी जगह है, बेहतरीन मजहबी उल्मा है और यस्सु के खिलाफ दोबारा चिल्ला रहे हैं, वही चिल्ला रहे हैं इल्मे इलाहियात के माहिर जो दूसरों से ज्यादा जानते हैं। बड़े बड़े चर्चेज और तरबियत याफ्ता आलमों ने उसे अपने दरमियान से निकाल दिया है, ये उसे नहीं चाहते। आप कहते हैं भाई ब्रैनम ये गलत बात है, तब आप यहाँ नहीं थे जब कलीसिया जमानों पर बताया गया था या इस पर मुनादी की गई थी, आप यहाँ नहीं थे जब हमने देखा था कि लौदीकिया के जमाने की कलीसिया ने फक्त यही किया है जिन्होंने यस्सु को बाहर निकाल दिया है और वो बाहर खड़ा हुआ खटखटा रहा है और वापस अंदर आने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्होंने उसे कबूल नहीं किया कि उसके लिए काम करे, उन्होंने उसे फिर से मसलूब कर दिया है। आमीन, और इससे बढ़कर हम क्या कह सकते हैं। याद रखें, दूसरे तिमोथियस 3 में नबी ने पहले ही से हमें बता दिया है, आप यह हवाला लिख लें, हमारे पास पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। लिखा है आखिर जमाने में ठट्ठा करने वाले आएंगे, लोग डीठ घुमंड करने वाले और खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे, संग दिल तोमत लगाने वाले बेजब्त और नेकी के दुश्मन होंगे, दगाबाज डीठ शेखीबाज और घुमंडी होंगे, दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल नहीं करेंगे, ऐसो से किनारा करना क्योंकि ये पागलपन की किस्म है कि बाल कटी हुई औरतें हैं और छोटे कपड़े पहने हुए हैं और चेहरों पर रंग और रोगन किया हुआ है और हर जगह मौजूद है ताकि लोगों को गुलामी में ले जाए। ठीक ऐसा ही है, उसने कहा इन आखिरी दिनों में ऐसो से किनारा करना, आए नबी की बात माने, आखिरी दिनों में ऐसी बातों से किनारा करें। वो लोग इस मकाम पर पहुंच चुके हैं, अब मैं कलीसिया से कह रहा हूं, जी हाँ जनाब, इससे किनारा करें। इनको आज के मुनादों को ये बातें जानना चाहिए। उनको अपने वक्त में यीशु को जानना चाहिए था, उन्हें उस वक्त को जानना चाहिए था और इन्हें अब जानना चाहिए, मगर ये जानते नहीं है। ठीक उन यहूदी उस्तादों को उसके वक्त और उसके दिनों में उसे जान लेना चाहिए था, इसी तरह आज खुदा के साफ तस्दीक शुदा कलाम को जान लेना चाहिए। वो कलाम था और उसने साबित किया था कि वो कलाम था, उसने साबित किया था कि वो उस वक्त का कलाम था। खुदा ने आज भी ये साबित कर दिखाया है कि वही आज भी कलाम है, आज की रोशनी है, और उन लोगों को तब जान लेना चाहिए था और इन लोगों को आज जान लेना चाहिए। तब उन्होंने उसे मसलूब किया था और अब ये उसे मसलूब कर रहे हैं। मैं इन पर फर्दे जुर्म लगाता हूँ। ठीक है, ये बात मेरे अंदर से उबरती चली आ रही है। इन पर ये फर्दे जुर्म है, यही सबब है कि खुदा इनसे हिसाब लेगा। यहूदियों के उन दिनों में खुदा ने एक बार कहा था, जब वो जमीन पर था, यीशु ने कहा था, ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि तुझे एक बड़ी अजीम कलीसिया की तरह इकट्ठा कर लूं, मगर तूने ना चाहा। किस तरह इन आखिरी दिनों में खुदा ने अपने लोगों को जमा करना चाहा, मगर लोग नहीं चाहते। तुमने अपने अकीदों की तमन्ना की, इसलिए तुम्हें तबाही के हवाले कर दिया गया है। ऐसा ही यरूशलेम के साथ हुआ था, उसे जला दिया गया था और बर्बाद कर दिया गया था और बाकी कुछ नहीं बचा था। और बिल्कुल ऐसा ही हाल इन बड़ी हस्तियों का इन दिनों में होगा। आपकी बड़ी तंजीमें और अकीदे तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, मगर खुदा का कलाम हमेशा तक जिंदा रहेगा। समझे? उसके गहरे गांव उसके नाम नहाद दोस्तों से लगे। इसके बारे में सोचे, इस पर गौर करें। रुके, मैं एक मिनट यहाँ रुक जाता हूँ। खादमों, इस पर सोचे, उसके ये गांव कहाँ से आए? उसके नाम नहाद दोस्तों से। जैसा तब हुआ था वैसा ही आज है। इसके बारे में सोचे कि कलूरी पर उसे वैशी दरिंदों और बदमाशों ने नहीं घेरा था, लेकिन उसकी चारों तरफ उसके खादम थे जिनका ये दावा था कि उससे प्यार करते हैं। और आज जबकि अंजील पूरी तरह से साबित हो चुकी है, जबकि उसके जी उठने के अजीम निशान हमारे दरमियान साबित हो चुके हैं, इस पर भी लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। क्या ये नाम नहाद खादम नहीं है? आज भी वैसे ही लोग उसको घेरे हुए हैं, जिन पर उम्मीद की जाती है कि उससे मोहब्बत करेंगे, मगर वो कहते हैं, हमें इस तरह की अंजील नहीं चाहिए। हम नहीं चाहेंगे कि ये आदमी हम पर हुकूमत करे। हम उसकी हमायत नहीं करेंगे। अगर इस शहर में इस तरह से मुनादी की जाएगी तो हम उसके साथ ताउन नहीं करेंगे। ये कुछ नहीं बल्कि रवा प्रस्ती से ताल्लुक है और ये सिर्फ शैतान है। इसलिए ये खुदा के कलाम को नहीं जानते, बल्कि अंधा अंधे को राह दिखा रहा है। जैसा तब था, सोचे, अब भी वैसा ही है। जैसा तब था वैसा ही आज है। सोचे, उसकी कुदरत का इनकार करते हैं जो मर्दों और औरतों को शिफा देती है और मौजूदा जमाने की मोहब्बत से आजाद करती है और बाल कटे और रंगे चेहरे वाली एजबलों से बचाती है, जो अपने आप को मसीह कहती है और इस तरह की जिंदगी गुजार रही है कि सिगरेट पीती है और गंदे मजाक करती है, और जो मिशनरी सोसाइटी बनाती है और टांके जोड़ती है और बातें करती है और स्कैंडल बनाती है और सड़कों पर निकलती है और छोटे कपड़े पहनती है और ऐसे काम करती है, और फिर भी अपने आप को दूसरी खवातीन के दरमियान मसीह कहती है। आपको वो कहानी याद होगी जो मैंने एक गुलाम के बारे में बताई थी, जो एक बादशाह का बेटा था। उसका किरदार वैसा ही था। हमें कैसा होना चाहिए? मर्दों और औरतों को क्या करना चाहिए? और ये इन पादरियों और इन मंबरों ही से यीशु को उसके गांव मिले हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो किस किस्म की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, किस तरह से ये उसको छेद रहे हैं। ये उस कुदरत का इनकार करते हैं जो लोगों को आजाद करती है और अपनी बात की तायद करते हैं, जबकि एक औरत के लिए बाल कटवाना, छोटे कपड़े पहनना और चेहरे पर मेकअप करना, ये खुदा के कलाम के खिलाफ है। ये खुदा के कलाम के मुतजाद है, मगर ये लोग इन बातों की ताईद करते हैं। इस तरह एक और कलूरी बना डालते हैं। कहाँ से? क्या सड़कों से? क्या शराबखानों से? नहीं, बल्कि पुलपट से और मेंबर से। और अब फिर क्या पुकारा जा रहा है? यही कि वो अपने आप को खुदा बनाता है। ये उसकी अलूहियत का इनकार करते हैं। ये उसे तकसीम करने की कोशिश करते हैं और तीन या चार खुदा उसमें बना डालते हैं, जबकि वो खुदा है, वो खुदा था, वो हमेशा खुदा ही रहेगा, जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। जब आप उनसे एक खुदा की बात करते हैं तो वो आप पर हंसते हैं और कहते हैं, हम तो पाक तसलीस पर ईमान रखते हैं, मगर मैं वाहिद पाक खुदा पर ईमान रखता हूँ। जी हाँ जनाब, उसी के पास शिफा देने, लोगों को आजाद करने और दुनियावी मोहब्बत से निकालने की कुदरत है। उन्हें आजाद करने की, जैसे उसने मरियम मगदलीनी को आजाद किया था। याद रखें, वो भी मेकअप करने वाली एक एजबल थी और उसके अंदर 7 बदरूहें थी, वो भी बरहना लबास पहनती थी। जिस तरह आज सड़कों पर जदीद औरतें हैं, आप कहीं पर भी जाकर ऐसा देख सकते हैं। अगर आप नहीं मानते कि लोग आज नंगी औरतों के मंदिर के सामने सर झुकाते हैं, तो आज सड़कों पर देखें, जैसा सदूम के दिनों में था वैसा ही है। अगर आप नहीं मानते तो कहीं भी जाकर सड़कों पर देख लें, कोई भी मैगजीन उठाकर देख लें, कोई भी अखबार, बड़े बड़े बिलबोर्ड देख लें, आप वहाँ क्या पाते हैं? याद करें क्या कहा गया था, जब खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको चाहा उनसे शादी कर ली। इंग्लैंड के स्कैंडल को देखें, यहाँ के स्कैंडल को देखें, देखें सभी कुछ कस्बी का घर बन गया है। ऐसा क्यों है? क्यों रूस डहरिया बन गया? सिर्फ कैथोलिक चर्च की निजासत और गंदगी के असर की वजह से। और बिल्कुल ठीक, ये कौम आज क्यूमेनिज्म और फेडरेशन ऑफ चर्चेज में शामिल हो चुकी है और ये कैथोलिक चर्च में खुद को शामिल कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, जैसा कि कैथोलिकिज्म और कम्युनिज्म एक हो जाएंगे, और ये ऐसा ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस अंजील को रद्द कर दिया है जो उनको मुख्तलिफ लोग बना सकती थी। ठीक यही है, और खादम उसकी मुनादी मंबर से कर रहे हैं, सिर्फ रोटी की खातिर या माशरे के किसी अकीदे की खातिर। बस यही कहते हैं, मैं फला फला के साथ ताल्लुक रखता हूँ। ये खुदा की कुदरत को तालीम से बदलते हैं, उस कुदरत को जो मरियम मगदलीनी की तरह इस पागल नस्ल को आजाद कर सके, उस कुदरत को जो एक बरहना को सड़क से लेकर कपड़े पहनाती और अच्छी खातून बनाती है और एक मसीह खतून बना देती है। मगर लोगों ने उस कुदरत को रद्द करके उस शख्स को जिसमें ये कुदरत थी कलवरी पर मसलूब कर दिया है, और आज वही अंजील और रूहुल कुछ इनको नंगेपन से छुड़ा सकता है और एक अच्छी खातून की तरह कपड़े पहनना और एक मसीही खातून की तरह अमल करना सिखा सकता है। मगर ये उसे पागलपन कहते हैं, ये उसे अपनाना नहीं चाहते कि ये उनकी कलीसिया में उनके दरमियान आए, क्योंकि दूसरी औरतें ऐसा करती हैं। ये क्या करते हैं? ये उसे बाहर निकाल देते हैं, जिस तरह उन्होंने तब किया था, और अब ये कलाम को मसलूब कर रहे हैं और कहते हैं ये तो किसी और जमाने के लिए था, मैं फिर इन पर फर्दे जुर्म लगाता हूँ। जी हाँ जनाब, ठीक वैसे ही जैसे ये मुजरिम है। ये एक निशान था कि जब लश्कर निकल गया तो उस नंगे शख्स ने कपड़े पहन लिए। याद रखें, अगर एक शख्स कपड़े ना पहने तो उसे पागल कहा जाता है, समझे? तो फिर एक औरत के बारे में क्या ख्याल है? लश्कर वाला शख्स पागल था, उसने अपने कपड़े उतार फेंके थे, खुदा ने अपनी कुदरत के वसीले उसे ठीक कर दिया और कपड़े पहना दिए। वो अपने कपड़े पहने दुरुस्त ज़ेन के साथ यस्सू के कदम में बैठा हुआ था। उस कुदरत को देखें जिसने बूढ़े अंधे बर्तमाई को बिनाई दी, ठीक उनके अकीदों के दरमियान। जब वो जमीन पर था तो तब वहाँ बहुत बेएतकादी थी, जैसे आज है, मगर यस्सू रुका नहीं बल्कि आगे ही बढ़ता गया। उसने उनकी खेंचातानी पर कोई तवज्जो ना दी, उसने उनसे कहा तुम अपने बाप अब्लीस से हो, उसने उनकी सब बातों को मुजरिम ठहराया। उस कुदरत ने लाजर को कब्र से उठा खड़ा किया और नाइन के बेवा के बेटे को वापस लौटा दिया। ऐ खुदा, वो कुदरत जो सब कुछ कर सकती थी और पहले ही बता देती थी जो बातें होने वाली होती थी, जिसने कहा था वहाँ दो लादू बंधे हुए होंगे, और ऐसी बहुत सी बातें यस्सू ने पहले ही बता दी। ठीक उसी शख्स को जिसमें ये कुदरत थी कहा इसे दूर कर दो, हमारे लोग इसे नहीं चाहते, ये हमारी तालीम को खराब करता है, और उन्होंने उसे मसलूब कर दिया। आज भी ठीक वही बात है, पाकरू को दूर कर दो, ये लोग इससे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहते, ये ऐसे ऐसे काम करता और हमको मुजरिम ठहराता है और हमारे लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताता है, हम इसे अपनी तंजीम में शामिल नहीं कर सकते, ये हमारे अकीदों के खिलाफ है, ये उसे दोबारा मसलूब कर रहे हैं। ओ मेरे खुदाया, अब ध्यान दे, हम खत्म कर रहे हैं, इख्तिताम हो चुका है, और ये उसे फिर से दीवाना पुकार रहे हैं, और उन्होंने यस्सू को भी दीवाना ही कहा था। वो कहते थे वो पागल है, हर कोई ये बात जानता है कि बाइबल फरमाती है उन फरीसियों ने यस्सू के बारे में क्या कहा था, ये आदमी सामरी है और पागल है। अब देखें लफ्ज पागल का क्या मतलब है, यानी दीवाना, ये पागल आदमी है और वो लोग भी पागल है जो इसकी पैरवी करते हैं, ये तो बालजबुल है। और आज फिर वो ऐसा ही कर रहे हैं, ये किसी किस्म का जादू टूना है, ये किस्मत का हाल बताने वाला है। ऐसी बातें कर उसे फिर से शर्मिंदगी की सलीब पर चढ़ा रहे हैं। कैसी सलीब पर, कैसी शर्मिंदगी है? उस साबित शुदा कलाम का मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों से कहते हैं ये शैतानी ताकत से किया जा रहा है और कुछ बनाया जा रहा है, और कहा उसने कहा था लोग खुदा के पाक कामों को कहते हैं नापाक रूप से किए जा रहे हैं, ये नाकाबले माफी है, उसके कलाम को शर्मिंदा कर रहे हैं और साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और कलाम को धोखा या पागलपन कहते हैं। ऐसी इबादतों में मत जाओ, ऐसी बातों पर ध्यान मत दो। ऐसा करने से वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी तंजीमी अकीदों के कील लगा रहे हैं। ये सच है, ये लुभाने वाले उस्ताद हैं, दुनियावी बेदीन और तंजीमी पागल लोग हैं। ये तंजीमी कीलों से खुदा के बेटे को अपने पुलपट पर दोबारा मसलूब कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इंसानी शोहरत से मोहब्बत करते हैं और डिग्रियों के भूखे हैं, और कलीसिया उन्हें ये दे सकती है। खुदा के कलाम से ज्यादा वो ऐसी चीजों से मोहब्बत करते हैं। मैं इन पर फर्द जुर्म लगाता हूँ। ये कलाम के साथ नहीं चल सकते क्योंकि ये दुनिया के साथ चल रहे हैं, क्योंकि ये दुनियावी रस्म और रवाज पर चल रहे हैं। ये पहले ही ये कर चुके हैं। ये रयाकारी के दिन है जिनमें हम रह रहे हैं। क्या ये ऐसा नहीं? क्या मेरे खुदावंद के लिए एक ही मर्तबा मसलूबियत काफी नहीं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपसे तो मोहब्बत की तवक्को की जा रही थी। आपको पता है कि ये उसी का कलाम है। आप मुकाशवा 22वें बाब में पढ़ सकते हैं, लिखा है जो कोई भी इस कलाम में से एक लफ्ज बढ़ाएगा या घटाएगा। मगर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या यस्सु के लिए एक कलवरी काफी नहीं? और मैं उसकी हमायत में खड़ा हूँ इसलिए कि मैं उसका वकील हूँ, और मैं खुदा के कलाम से आप पर फर्द जुर्म लगाता हूँ कि या तो अपने आप को ठीक कर लें या दोजख के लिए तैयार हो जाएं। तुम्हारी तंजीमें चूर चूर हो जाएंगी। ठीक इस वक्त मैं जज की हजूरी में तुम पर फर्द जुर्म लगाता हूँ इसलिए कि तुम दीनदारी की वजह तो रखते हो और रयाकार हो। और इसके मुतल्लिक क्या कहूँ? क्या एक मर्तबा मसलूबियत काफी नहीं? जैसा पत्रस ने कहा था, तुम्हारे तंजीमी बाप दादा ने यही किया था। पत्रस ने उन पर फर्द जुर्म लगाकर पूछा कि तुम्हारे बाप दादा में से किसने ऐसा नहीं किया था। स्तिफनस ने भी उन पर फर्द जुर्म लगाई, तुमने बदकार हाथों से जिंदगी के शहजादे को मसलूब किया है। क्या यीशु ने खुद उनसे नहीं कहा था कि तुम्हारे किस बाप दादा ने नबियों को मारकर उनके मकबरे नहीं बनाए और तुम उन कब्रों पर सफेदी फेरते हो? बस सब जमानों में सब रास्तबाजों के साथ ऐसा ही होता आया है। इसलिए आज चमकते दमकते चर्च जाने वाले लोगों पर जो मसीह को रद्द कर रहे हैं, मैं उन पर फर्द जुर्म लगाता हूँ। तुम दीनदारी की वजह तो रखते हो, मेरे मसीह को दूसरी बार मसलूब कर रहे हो क्योंकि तुम लोगों से कहते हो कि ये कलाम आज के लिए नहीं है, ये किसी और जमाने के लिए है। मैं तुम पर फर्द जुर्म लगाता हूँ कि तुम उसी गुनाह के मुजरिम हो जो उस वक्त मसलूबियत के वक्त किया गया था। तोबा करो और खुदा की तरफ रुजू लाओ या बर्बाद हो जाओ। और मैं फिर से कहता हूँ, यहाँ कलीसियाएं उन्होंने यानी आलमों ने मसलूब कर रहे हैं और उसके खिलाफ यानी कलाम के खिलाफ कुफर बक रहे हैं। खुदा इन पर रहम करे। मुझे ये बात फिर से कहने दे ताकि ये बात पूरी टेप में गूंजे। यहाँ कलीसियाएं इन्होंने यानी पादरियों ने मसलूब कर रहे हैं और फिर उसके खिलाफ यानी कलाम के खिलाफ कुफर बक रहे हैं। हैरत नहीं कि वैसे ही हो रहा है? चिकनी चट्टानों और काले आसमान तले मेरे निजात दहिंदा ने सर झुकाया और जान दे दी, मगर पर्दे के फटने से आसमानी खुशी और अब्दियत के रास्ते जाहिर हो गए। मैं ये सब इस टेप में इस जमात के रूबरू कहता हूँ। मैं ये पाक रू की तहरीक से कह रहा हूँ, जो खुदा की तरफ खड़ा होना चाहता है वो इस कलाम के नीचे आ जाए। खुदा अपने साबित शुदा कलाम की बेहुरमती करने और उसे मसलूब करने की वजह से आज इस नस्ल को जो मसीह का इनकार कर रही है, मसीह को रद्द कर रही है, अदालत में लाएगा। मैं फर्द जुर्म लगाता हूँ, आप अदालत में आने वाले हैं। मूसा ने पूछा था, खुदा के साथ जो आना चाहता है वो मेरे साथ आ जाए, जबकि आग कस्तून वहाँ गवाह बन के खड़ा था। खुदावंद की तरफ कौन है? वो अपने अकीदों का इनकार करे और कलाम को थामे और हर रोज यीशु मसीह के पीछे चले। और मैं कल सुबह आपको मिलूंगा। आए अब हम अपने सरों को झुकाते हैं।
ओ लॉर्ड गॉड, द गिवर ऑफ इटर्नल लाइफ,
ऐ खुदावंद खुदा, अब्दी जिंदगी देने वाले और इस कलाम के बानी, तूने खुदावंद यीशु को मुर्दों में से जिलाया। तूने एक बेइत्काद नस्ल के लोगों के सामने ये साबित कर दिखाया। अब सुबह से काफी वक्त गुजर चुका है और बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। चर्च भरा हुआ है, चारों अतराफ लोग खड़े हैं और इस पैगाम के टेप तैयार किए जा रहे हैं ताकि इन्हें दुनिया में बहुत सारे मुकामों पर भेजा जाए। खादम हजरात अपने मुतालिया के कमरे में इसको सुनेंगे। मैं खादमों के लिए दुआ गो हूँ। खुदावन होने दे कि ये कलाम उनके दिलों की गहराई में उतर कर चोट लगाए, उनके अंदर से सारी दुनियावी बातों को काट दे। वो इस तरह कहे उस मेथोडिस्ट पादरी की तरह जो केंटकी में किसी रोज मेरे पास आया था और कहा था कि जब मैं सात कलीसिया जमानों को सुन रहा था तो मेरे अंदर से एक पुकार उठी, बाबल में से निकल आओ। उसने कहा मैंने तंजीम को तरक कर दिया और छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है और कहाँ जाना है, पर मैंने तंजीम छोड़ दी। उस नौजवान भाई की हिम्मत को खुदा बरकत दे। उसकी एक बीवी और दो या तीन बच्चे हैं। ऐ खुदा, काश बहुत सारे लोग तेरे कलाम के रास्ते को पा सके, क्योंकि वही एक जिंदगी की राह है और वो कलाम है। ऐ बाप, मैं सभी के लिए दुआ करता हूँ। कभी कभी ये बातें जो कही जाती हैं, ये बड़ी सख्त लगती है, मगर इनमें मोहब्बत है क्योंकि मोहब्बत दुरुस्त करती है। ऐ खुदा, मैं दुआ करता हूँ कि लोग इन बातों को इस तरह समझ जाए जिनका मकसद इन्हें दुरुस्त करना है। तूने खुदावंद उन्हें दुरुस्त करने के लिए सलीब पर एक मर्तबा दुआ की थी और कहा था ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये अंधे हैं और ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं आज इन खादमों के लिए ऐसी ही दुआ कर रहा हूँ जो अपने अकीदों और तंजीमों की रसूमात को जिंदगी के कलाम के इवज ले रहे हैं और कलाम को मसलूब कर रहे हैं और फिर से लोगों के सामने वो उस सच्चाई पर जिसको खुदा ने साबित कर दिया है नुकता चीनी कर रहे हैं। ऐ बाप, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि तू उन्हें फिर से शादी की ज़ियाफ़त में बुला और ऐसा हो कि इस मर्तबा कोई बहाना ना बनाए और आ जाए, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ आखिरी पुकार कहीं लौट ना जाए, कहीं बहुत देर ना हो जाए, मगर मुझे यकीन है अब भी वक्त है। इस छोटी सी कलीसिया को बरकत दे, इन्हें जो आज सुबह कुछ सौ लोग यहाँ बैठे हुए हैं बरकत दे। इन्होंने सुबह से इस गर्मी में इस इबादत में दो घंटे से ज्यादा वक्त गुजारा है ताकि कलाम सुने। ये उठकर नहीं गए बल्कि बैठे रहे और सुनते रहे। बहुत से लोगों ने खाना भी नहीं खाया है। यहाँ बच्चों को अपनी गोद में लिए औरतें खड़ी इंतजार कर रही हैं। ये कलाम के हर लफ्ज पर कायम हो गए हैं। खुदावन मैं समझता हूँ अगर मैं इन लोगों की गलत रहनुमाई करूँ तो अदालत के दिन मुझे हिसाब देना होगा। खुदावन मैं होशमंद हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि मैं होश में हूँ और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि इन्हें वापस कलाम में ले आऊँ ताकि वो कलाम में जी सके। मैं इनको बता रहा हूँ कि तू कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। वही अजीम पाक रूह यीशु मसीह है जो फक्त अब यहाँ रूल कुछ की शक्ल में मौजूद है। बिल्कुल वही शख्स जिसने कहा था थोड़ी देर बाकी है फिर दुनिया मुझे ना देखेगी मगर तुम मुझे देखोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ फिर मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा। और मैं ईमान रखता हूँ कि ये तू ही है खुदावंद, और हम तुझ पर ईमान रखते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि वही काम हमारे दरमियान हो रहे हैं। आज हम बड़ी संजीदगी के साथ आए हैं, हम सब जो इस वक्त इस जमायत में मौजूद हैं और खुदावंद जो इस टेप को सुन रहे हैं, काश हर मर्द और औरत और लड़का और लड़की जो यहाँ खड़े हुए हैं और जो बाहर खड़े हुए हैं और जो टेप सुन रहे हैं, काश हम इस घड़ी गहरे तौर पर अपने आप को मुकम्मल तेरी इबादत के लिए मखसूस कर सके। खुदावंद अपनी कुदरत में पूरी जमायत पर जुम्बश कर और बीमारों को शिफा दे। उन्होंने बताया है कि यहाँ एक छोटा बच्चा है जो लंगड़ा है, होने दे कि अजीम पाक रूह से छू ले। हम जानते हैं कि इस तरह उसकी हजूरी में बैठने से वो ठीक हो जाएगा। तू तो अपना कलाम रेडियो और टीवी के जरिए दूसरे मुल्कों में बेचकर लोगों को शिफा देता है। तू सिर्फ अपना कलाम भेजता है और लोग शिफा पा जाते हैं, वैसे ही तू इस वक्त कर सकता है। मैं दुआ करता हूँ कि ऐ खुदा तू हर बीमार को, हर एक लंगड़े को, बल्कि हर एक बीमार को जो यहाँ कलाम को सुनता है शिफा दे। ऐ खुदा इस दुआ को कबूल कर, मेरी दुआ इन सब के लिए है। मसीह की मोहब्बत जो मेरे दिल में है इस जरूरत को महसूस कर रही है। इस पुलपट पर खुदावन मैं इन्हें तेरे हजूर पेश करता हूँ जहाँ लहू लहान भरा पड़ा है जो हमारे गुनाहों और बीमारियों के लिए कुर्बान किया गया था। मैं इन लोगों के लिए रहम की दुआ करता हूँ। खुदावन मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ जैसा मूसा ने किया था जब वो तेरे और लोगों के दरमियान खड़ा हो गया था और कहा था ऐ खुदा इन पर रहम कर और इन्हें थोड़ा और वक्त दे दे और इन्हें एक और मौका फराहम कर दे। खुदावन अभी ऐसा मत होने दे, अंजील को थोड़ा और फैलने दे। खुदावन ये लोग मुजरम पाए गए हैं। मैं दुआ करता हूँ कि तेरा रहम और फजल थोड़ा और बढ़ जाए, जब तक कि वो आखिरी शख्स भी ना आ जाए जिसका नाम किताबे हयात में लिखा है। और मुझे पता है लोग आएंगे। ये दुआ तेरे इलाही कलाम के खिलाफ नहीं है, ये मुखालफत में नहीं है, बल्कि खुदावन मेरा कहने का मतलब है कि ये इलाही कलाम के मुखालफत में नहीं है। उसी मौजूदा कलाम की खातिर जिसको साबित किया गया था, उस कलाम के वसीले जो लोगों के लिए दुनिया की बुनियाद रखने से पहले मुकरर किया गया था। ये मुश्किल नहीं है कि जब तुझसे दुआ की जाएगी तो तू उन्हें बचा लेगा जिनके नाम किताबे हयात में है, क्योंकि मैं जानता हूँ तू दुआ को सुनेगा। यीशु ने कहा था, वो सब जो बाप ने मुझे दिए हैं मेरे पास आ जाएंगे, और तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक बाप खींच न ले। ऐ खुदा, अब मैं दुआ करता हूँ जहाँ कहीं भी ये कलाम सुना जा रहा है, यहाँ या दूर टेप में, तेरा पाक रूह पहले से मुकरर शख्स को अब बुलाए, उन सब को जिनके नाम बरा की किताबे हयात में बनाए आलम से पेशतर लिखे गए हैं। काश वो खुदा की आज बोलती आवाज को सुन सके और उनके दिल में ये धीमी आवाज उनसे कहे, यही राह है, इस पर चलो, ऐ बाप ये बख्श दे। मैं ये दुआ यीशु के नाम में मांगता हूँ, और जबकि हम अपने सर इस जमात में झुकाए हुए हैं, अगर आप ईमान रखते हैं कि ये सच्चाई है, और आप, बल्कि मैं अपने हाथ इन रुमालों पर रख रहा हूँ जो बीमारों और मुसीबत ज़दा के लिए बंधे पड़े हैं, मैं अब आपसे संजीदगी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं आता कि लोग मुझे सुने। मैं तो थक गया हूँ, मैं टूट चुका हूँ, मैं अब इतना जवान नहीं रह गया जितना हुआ करता था, और मुझे मालूम है हमारे दिन गिने जा चुके हैं, और मुझे मालूम है मुझे अपनी सारी ताकत लगानी है जो मैं खुदा की बादशाही के लिए लगा सकता हूँ। मुझे जब भी मौका मिले मुझे मुनादी करनी है, मुझे जाना है, चाहे मुझे जाना अच्छा लगे या ना लगे। मैं यहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं यहाँ आना चाहता हूँ, मैं मुनादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, और मैं इतनी सख्त और करख्त बातें इसलिए नहीं कहता कि मैं कहना चाहता हूँ, बल्कि मेरे अंदर जुम्बश होती है, एक ऐसी चीज है जो जाहिर कर दी गई है कि मुझे ये बातें करनी है, और मैं मजबूर होता हूँ, और मैं ये बात मोहब्बत और शफकत के साथ कहता हूँ। मेरा मतलब ये नहीं होता कि मैं अपने भाइयों और बहनों को झिड़कूं। भाइयों और बहनों, मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं आपको ऐसी जगह पर खड़ा कर दूं जहां से आपकी सलाह हो सके और आप खुदा के कोड़े लगते हुए देख सके। अब आपको जरूर कलाम में आ जाना चाहिए, इन बातों को मत टालें। आप पहले ही बहुत इंतजार करवा चुके हैं, और आप में से जो इस जमात में बैठे हुए हैं, कौन है जो अपने पूरे दिल से खुदा की तरफ आना चाहते हैं, और जो किसी भी जगह इस टेप को सुने वो भी ऐसा ही करें, अपने सरों को झुकाएं। क्या आप ऐसा करेंगे? अपने हाथ दिखावे के लिए ना खड़े करें। अब अगर वाकई आप दिल से चाहते हैं कि खुदावंद के साथ एक मखसूस जिंदगी बसर करें, तो क्या आप अब अपने हाथ उठाएंगे? आपको खुदावंद बरकत दे। मलामत की बर्दाश्त करके आप मसीह के लिए नए सिरे से मखसूस होने की कोशिश करें। आप कहें, मैं आज मलामत कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद भी अपने दोनों हाथ उठाता हूँ। मैं भी यीशु मसीह की जिल्लत अपने ऊपर लेना चाहता हूँ। मुझे जुनूनी या जो कुछ भी आप कहना चाहें, आप जैसे भी दाग मुझे देना चाहें, मैं खुशी से लेना चाहता हूँ। मैं ऐसे नामों को फखर से लूंगा क्योंकि ये खुदावंद की खातिर है। मैं खुशी से ये लेता हूँ। क्या आप सब ऐसा नहीं करना चाहते? अपने हाथ उठाकर कहें, खुदा के फजल से मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ। उसके शागिर्द फिर जब लौट कर आए, उन्होंने सोचा उसके नाम पर बेइज्जत होना बड़ी अजमत की बात है। या फिर आप किसी हॉलीवुड स्टार या टेलीविजन के स्टार के लिए बेइज्जत होना पसंद करेंगे, या चर्च मेंबर या किसी और के लिए ऐसा करेंगे, या फिर आप यीशु मसीह के कलाम की खातिर बेइज्जत होना पसंद करेंगे? खुदावन मुझे अपने कलाम की खातिर बेइज्जत होने की तौफीक दे। मुझे मालूम है यीशु ने खुदा के कलाम की खातिर रुसवाई बर्दाश्त की थी। खुदावन मुझे भी ऐसा करने की तौफीक दे, और ये पाक स्लीब मैं उठाऊंगा जब तक मौत मुझे जुदा ना कर दे। तब अपने घर जाकर ताज पहनूंगा। एक दिन हमको ये ताज मिलेगा जो अब तैयार किया जा रहा है। हमें मालूम है जब ये जमीनी जिंदगी खत्म हो जाएगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखे, यहाँ मजबा पर जगह नहीं है कि लोगों को बुलाया जा सके। जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं उसी जगह मजबा बना लें। कलाम कहता है, जितनों ने ईमान रखा आए, अब हम दुआ करें। आसमानी बाप, मुझे ऐसा लगा जैसे सब जवानों और बूढ़ों के हाथ इस समाध खाना में उठे हुए हैं। और मैं दुआ करता हूँ जब भी ये टेप सुनी जाए तो लोग अपने हाथ उठाकर अपने घरों में घुटनों के बल हो जाए, फिर माँ और बाप एक दूसरे के हाथों को पकड़ कर कहें, प्यारी हम बड़ी देर से चर्च मेंबर रहे हैं, आओ अब हम मसीह के पास चले। तो खुदावन ये दुआ कबूल कर लेना, इन लोगों को बरकत दे। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि तू इन्हें एक मुकद्दस जिंदगी दे। खुदावन इनमें से बहुत से लोग अच्छे हैं, ये आपके लोग हैं, बस ये सच्चाई नहीं जानते थे। और खुदावन मेरी दुआ है तू इन्हें अपनी सच्चाई दिखा, क्योंकि तेरा कलाम सच्चाई है। जैसे तूने यूहन्ना में कहा था, मेरा ख्याल है 17 बाब है, तूने कहा ए बाप इन्हें सच्चाई के वसीला से पाक कर, क्योंकि तेरा कलाम सच्चाई है। और एक बार फिर तेरा कलाम आज भी सच्चाई है, ये हमेशा ही सच्चा है क्योंकि ये खुदा है। और ए खुदा मैं दुआ करता हूँ कि तू इन्हें सच्चाई के वसीला से पाक कर, तमाम तंजीमी अकीदों से निकाल कर इन्हें पाक कर और साफ कर, सारी दुनियावी बातों से इन्हें निकाल कर पाक और साफ कर, कलाम की पाक जिंदगी दे दे। खुदावन ये बख्श दे, ये लोग अब तेरे हैं और तूने ऐसा करने का वादा किया था। और तेरा एक खादम होने के नाते मैं इनके लिए ये दुआ मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जबकि हम दुआ कर रहे हैं तो आए अब अपने झुके हुए सरों के साथ इस गीत को गाते हैं। यीशु ने सारा मूल चुकाया, सब कुछ उसका है। जरा सोचे, गुनाह, कल मैं एक जगह था और अपने एक सूट का नाप दे रहा था जो हमारे चर्च के एक भाई ने खरीदा था। उसने कहा आपका सूट गर्म लग रहा है, जबकि मैंने आपके लिए ठंडा सूट खरीदा था। और जब मैं नाप देने गया तो उसने कहा क्या बात है कि आपका सीधा कंधा नीचे झुका हुआ है, यकीनन इस पर आपने कभी कोई भारी वजन उठाया होगा। मैंने सोचा हाँ गुनाहों का बोझ था, मगर यीशु ने सारा मूल चुका दिया है। हम ये गीत गाते हैं, सुनिए। यीशु ने सारा मूल चुका दिया है, अब सब कुछ मेरी सारी जिंदगी और मैं उसका हूँ। गुनाह ने क्या क्या किया था? गुनाह ने किरमजी धब्बे बना दिए थे, उसने बर्फ की मानिद उन्हें सफेद बना दिया।
God be merciful to us.
ए खुदा इस गहरे गौरव फिक्र के वक्त हम पर रहम कर। खुदावन कलाम गहरे तौर पर दिल में जज्ब हो जाए, और जबकि लोगों को उनके खाने के लिए भी देर हो चुकी है, मगर खुदावन ये खाने से बढ़कर है, ये जिंदगी है। मेरा कलाम खाने की चीज है, तूने ऐसा ही कहा था, और हमारी भूखी रूहें इसी को खा रही है। अब खुदावन हमें ले और हमें ढाल। खुदावन मुझे भी इनके साथ ले ले, मैं भी इनके साथ जाना चाहता हूँ। खुदावन ईमान के वसीले मैं कलवरी पर जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरी कलीसिया भी है। खुदावन मुझे ढाल, मैंने गलती की थी, बहुत मरतबा मैंने की। अभी कुछ अरसा पहले मैं मुनादी करना बंद करने जा रहा था, लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे, वो वही सब कुछ किए जा रहे थे और मेरी हौसला शिकनी की गई। मैं उलझन का शिकार हो गया था। ए खुदा कुछ इतवार पहले मुझे तूने एक निशान दिया था, और जब मैं बाइबल पढ़ रहा था और रोया में तूने दिखाया था, तूने मूसा को बताया था वहाँ एक पहाड़ उसके लिए निशान था, और इसके आखिर में मुझे दिखाया गया था कि मैं बीमार लोगों को छोड़कर चला गया था, जबकि ये खिदमत सिर्फ इलाही शिफा के लिए नहीं थी बल्कि इसमें कलाम की तालीम देना और बीमारों को शिफा देना भी था। फिर एक दिन तूने इस फर्श पर ठीक मुर्दा इंसान को लाने दिया, फिर तूने उसे जिंदा कर दिया ताकि साबित हो कि तेरा कलाम सच्चा है और तू हमेशा अपने कलाम की तस्दीक करता है। अब खुदावन जब मैं ठीक तेरे तख्त के सामने हूँ तो इसकी तस्दीक कर। खुदावन इन लोगों में से तू हर एक को ले ले, हमारे अंदर से सारी दुनियादारी को निकाल दे, जबकि हम तेरी हजूरी में हैं, तो खुदावन मुझे भी ले। ए खुदा ठीक अभी ही हमारे दिलों से दुनियादारी को निकाल दे। दुनियादारी और दुनिया की फिक्रें हमारे अंदर से खींच ले, हमें पाक मसीह होने दे। ऐ खुदा, हम प्यार और मोहब्बत और रूह के फलों से भर जाएं। खुदावंद, क्या तू ऐसा नहीं करेगा? हम तेरे तख्त के सामने खड़े हैं। हम में से हर एक पर किरमिजी गुनाह के धब्बे लगे हैं, मगर खुदावन, तेरा लहू इन्हें बर्फ की मानिंद सफेद बना सकता है। ये बख्श दे, हम तुझ पर आस लगाए हुए हैं। हमें अपना ले, हम तेरे हैं, हम अपनी जिंदगी तेरे लिए मखसूस करते हैं। ऐ खुदा, यीशु मसीह के नाम में हम में से हर एक के लिए इस दुआ को कबूल कर। मेरा दिल टूटा हुआ है खुदावन, मैं अपनी गलतियाँ देख रहा हूँ, मैं अपनी कोताहियों को भी देख रहा हूँ। ऐ खुदा, इस वक्त मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी खिदमत कर सकूँ। आज सुबह फिर से मैं अपना जीवन तेरे लिए नया और पाक बनाना चाहता हूँ। अपने पादरी दोस्तों के खिलाफ मैंने फर्दे जुर्म लगाई है और मुझे ये सख्त अल्फाज कहने पड़े हैं, मगर खुदावंद, मैंने ये तेरी तहरीक से किया है। मैं महसूस करता हूँ कि तू ही ने मुझे ये सब कुछ कहने के लिए कहा है। खुदावन, अब ये बोझ मेरे कंधों से उतर गया है। मैं खुश हूँ कि ये बोझ उतर गया है। ऐ बाप, अब ये इन लोगों की मर्जी है, चाहे जैसे भी करे। मैं तो दुआ करता हूँ कि वो इसे कबूल कर ले। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू इन सबको बचा ले। काश यहाँ एक बेदारी आ जाए और एक अजीम कुदरत इस कलीसिया में उठाए जाने से पहले आ जाए। ऐसी दुआ करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि तूने इसका वादा किया है। और खुदावन, हम उस तीसरे खिंचाव को देख रहे हैं जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो हमारे दरमियान बड़े काम करेगा। खुदावन, मैं तेरा हूँ, मैं अपने आप को इस मजबा पर लाता हूँ और जितना मैं जानता हूँ उतना अपने आप को पाक बनाता हूँ। खुदावन, सारी दुनिया मुझसे निकाल दे, मेरे अंदर से सारी फानी चीजें निकाल दे, मुझे लाफानी चीजें दे जो कि खुदा का कलाम है। होने दे कि मैं कलाम के साथ इस कदर जी सकूँ कि कलाम मुझ में और मैं कलाम में मिलकर एक हो जाऊं। खुदावन, ये बख्श दे, मैं कलाम से दूर कभी ना जा सकूं। काश उस बादशाह की तलवार को मैं मजबूती से और बहुत जोर से थामे रहूं। खुदावन, ये बख्श दे, हम तेरे खादम हैं, हमें बरकत दे। हम आज सुबह फिर अपने आप को तेरे लिए मखसूस करते हैं और अपने दिलों को हम तेरी खिदमत के लिए दोबारा पेश करते हैं। यीशु मसीह के नाम में तेरी खिदमत के लिए हम तेरे हैं। Yesu. Jesus. God bless you, Brother Neville. Bye, Neville. Khuda aapko barkat de.